I say unto thee, guard over thine heart this day. Search thine heart, O man, and let thy maker search thy thoughts too. And thou be this day that I will reveal unto thee things that thou hast never dreamed before. So search thine heart and trim thy lamp and be sure that thou hast oil in thy vessel. For thou be that if thou hast no oil, thine ox shall be in vain. But this day I give unto thee another opportunity that thou mayest get oil into thy vessel.
हमारे स्वर्गीय पिता, हम वास्तव में इस समय के लिए बहुत आभारी हैं कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के चारों ओर परमेश्वर की उपस्थिति में संगति कर सकते हैं। हम आपके बहुत ही धन्यवादित हैं कि आप हमारे साथ हैं इस प्रातः में, कि हमारी सहायता और हमें आशीषित करें। हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं कि हमारे चिरागदान तेल से भर सकें और छांटे जाएं और जलें, ताकि हमें अपने सम्मान और अपने बड़े नाम के लिए प्रयोग कर सकें, क्योंकि हम आपके प्रिय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं अंदर आ रहा था जब मैंने संदेश को आगे बढ़ते देखा, इसलिए ये सच है कि हमें आवश्यकता है कि हम अपने चिराग दानों को भरे रहें। अपने आप जानते हैं कि जब वो जैसा आप जलते हैं, आप उसी पर आगे बढ़ते नहीं रह सकते जो आपने कर दिया है, आप समझे, क्योंकि आग तेल को जलाती है और कार्बन बनाती है। इसलिए यही कारण है कि छटाई अपनी बत्तियों को छांट लिया है, क्योंकि उसके ऊपर कार्बन बत्ती के ऊपर। आप में से बहुत से लोग मेरी आयु के होंगे जब हम मिट्टी के तेल की डिबिया प्रयोग किया करते थे। देखिए, वे इसके ऊपर कार्बन आ जाता है जहां से ये जलता है, और इसलिए ये उजाले में विघ्न पैदा करता है। आपको कार्बन को छांट देना चाहिए ताकि हम आगे को बढ़ सकें मसीह में ऊंची बुलाहट की ओर। अब ये एक महान सुंदर सुबह बाहर और अंदर है, जैसा कि अब ये ईस्टर की ऋतु आ रही है और हम अब आज रात्रि अंतिम मोहर पर आ रहे हैं, प्रभु ने चाहा तो। और ये एक बहुत ही भेद भरी मोहर है, यदि ये यहाँ तक कि इसका उल्लेख वचनों में भी कहीं नहीं है, कोई प्रतीक जो इसे अपने में रखे। इसे तो सीधे स्वर्ग से ही आना है, और ये मेरे लिए एक प्रकार से तनाव की घड़ी है। ये सारे सप्ताह रहा, अब ये मेरा कमरे में आठवां दिन है, और मैंने ध्यान दिया यहाँ बहुत सारे निवेदन हैं, उनमें बहुत सों को लेना है। इनमें से बहुत से हैं जो साक्षात्कार चाहते हैं, और मुझे ये अच्छा लगता है। मैं चाहूँगा कि अब उन्हें दूं, देखिए, परंतु मैं इस समय नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझते हैं कि हम कुल मिलाकर अब यत्न कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा का प्रकाशन ढूंढें। आप देखिए, तब हम साक्षात्कार लेंगे, तब ये खींच कर दूसरी ओर किसी चीज में कर देगा, देखिए। और फिर और ऐसे ही बीमारों की प्रार्थना में ये कुल मिलाकर भिन्न है। आप ये दर्शन और चीजें आप अलग अध्ययन करते हैं, और आपका अभिषेक भिन्न होता है। ये इस प्रकार, जैसा कि बाइबल ने कहा, वहाँ एक वृक्ष जो नदियों के पानी के किनारे लगाया गया, जल की नदियाँ। देखिए, वही जल परंतु यहाँ से निकलता इस मार्ग से एक इधर और एक इधर से निर्भर करता है कहाँ से निकलता। ये एक ही आत्मा है। पौलुस पहला कुरिन्थियों 12 उसी चीज के विषय में बातें की हैं। बहुत से वरदान हैं, परंतु ये एक ही आत्मा है। इसलिए आप देखिए, यदि आप कार्य कर रहे हैं जैसे एक चीज के साथ, तब बदलकर इस दूसरी चीज पर यहाँ आ जाएं। आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है। आप इस लीग पर अध्ययन करते हैं, आपको लोग मिलते हैं और अब उनके हृदय सब व्यवस्थित हैं। ये मोहरें क्या हैं? उनका ध्यान ये क्या है? रात्रि के बाद रात्रि जब मैं यहाँ भीतर आता हूँ, ऐसा तनाव होता है, तब तक मैं किसी और चीज के विषय में बातें करता हूँ, बस एक प्रकार से कि इसे शांत कर दूँ। आप देखिए, तब जब तक पवित्र आत्मा मोहर तोड़ता है, और तब मुझे हर रात्रि इस प्रकार होना पड़ता है। तब जब हम इसे बदल कर चंगाई या किसी चीज पर लाते हैं, देखिए आप लोग कुल मिलाकर एक चीज पर व्यवस्थित होते हैं। आप कठिनता से दूसरी चीज पर वापस सीधे नहीं बदल सकते। और फिर ये भी जानते हुए ठीक आपके बीच चीजें घटित हो रही हैं, देखिए कि मैं बस हूँ, मैं जानता हूँ आप ये नहीं देखते। देखिए, मैं बस आश्वस्त हूँ कि आप इसे नहीं देख पाते हैं। देखिए, और आप कहते हैं भाई बर्नम, आपके लिए ये कहना कठिन बात है, मैं जानता हूँ ये है, परंतु देखिए मुझे बस अब ये कहने दें, मैं समझता हूँ कि बस हमारे लिए ये टेप पर है और आदि आदि, परंतु मैं ये कह दूँ, देखिए आप नहीं, आप इसे नहीं समझते। देखिए, और आपको इसे समझना भी नहीं है, इसलिए किसी चीज को अनुवाद करने का यत्न ना करें। देखिए, इसमें अपना अनुवाद डालने का यत्न ना करें। आप बस इससे दूर हो जाएंगे। बस मेरी सलाह मान लें, यदि अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि परमेश्वर ने आपकी दृष्टि में मेरा समर्थन किया है, और आप जानते हैं कि वे प्रकाशन और बातें, मैं आपके साथ लंबे समय से हूँ, देखिए ये सदा से सही रहा है, और अब ये दोबारा से इसका प्रमाण है, ठीक है, ये ठीक वचन के साथ सही बैठता है, समझे। इसलिए आप जानते हैं, ये यहोवा यूं कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, यदि ये आप पर प्रमाणित हुआ है। अब एक भाई के समान मेरी सलाह मान लें, किसी भी चीज में अपना अनुवाद ना डालें, आप बस बढ़ते जाएं और अच्छा मसीही जीवन जिए, क्योंकि आप अपने आप को वास्तविक चीज से दूर उड़ा ले जाएंगे जब आप ये करते हैं, समझे। आप केवल अपने आप को इस चीज से फिर से अलग कर लेंगे, और आप सब सचेत हैं और जानते हैं कि कुछ भेदपूर्ण घटित हो रहा है, और ये हो रहा है, मैं जानता हूँ कि ये क्या है। अब मैं इसे यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं जान पा रहा हूँ कि ये क्या है, ये कुछ है जो जबरदस्त है, और अब ये चला गया, और संसार में आपके लिए ऐसी कोई विधि नहीं है कि आप इसे देख सकें, और ये मैं, परंतु इसलिए मेरी सहायता करें इस बाइबल के साथ जो मेरे हाथ में है, मैं जानता हूँ कि ये क्या है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है, इसलिए बस कोई भी अनुवाद करने का यत्न ना करें, बस मुझ पर अपने भाई के समान विश्वास करें, समझे। हम एक महान समय में जी रहे हैं, हम एक समय में रह रहे हैं जहां भाई लोग, अब आप वास्तव में नम्र बने, एक मसीही हो जाएं और परमेश्वर के लिए जीने का यत्न करें, और अपने साथी पुरुष के साथ ईमानदार रहें, और उनसे प्रेम रखें जो आपसे प्रेम नहीं करते। कुछ भी बनाने का यत्न ना करें। आप देखिए, आप करते हैं, आप केवल कुछ भेद भरा बनाते हैं, और वास्तविक योजना जो परमेश्वर की है गड़बड़ कर देते हैं, समझे। बीते कल दोपहर बाद मेरे कमरे में कुछ घटित हुआ जिसे कि मैं कभी भी छोड़ने योग्य नहीं हूँ कि छोड़ दूँ। आप देखिए, और इस प्रकार आप, और लगभग 2 सप्ताहों पहले कुछ घटित हुआ, ये कभी योग्य ना होगा। जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ, मैं कभी भी इससे अलग होने के योग्य नहीं हूँ, देखिए। और इस प्रकार, परंतु, और ये कलीसिया, आपको इन बातों को जानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी भी चीज में अपना अनुवाद ना डालें, समझे। आप बस आगे बढ़ते रहें और बस स्मरण रखें कि आपको क्या बताया गया है। एक मसीही जीवन व्यतीत करें, अपनी कलीसिया में जाएं, आप जहां कहीं भी हैं एक वास्तविक ज्योति बने, और बस मसीह के लिए जलें, और लोगों को बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, और आपकी गवाही प्रेम के साथ हो सारे समय लोगों के साथ, समझे। क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को किसी चीज में घुमा लेंगे, और फिर आप मार्ग से हट जाएंगे। देखिए, हर बार आपने ये करने का यत्न किया है, समझे, इसलिए बस ना करें, कोई अनुवाद बनाने का यत्न ना करें, और विशेषकर आज रात्रि जब वो मोहर आपके सामने हो जाती है, देखिए, बस इसके अनुवाद का यत्न ना करें। आप बस आगे बढ़ते रहें और बस नम्र हो जाएं, और इस स्पष्ट संदेश के साथ चलते रहें। अब आप कहते हैं, भाई ब्रणम, क्या ऐसा हम परमेश्वर की जीवित कलीसिया होने के नाते हमें नहीं करना चाहिए? भाई जैसा कि मैं यत्न कर रहा था, इधर देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे चाहिए कि नहीं, अब नहीं करें। स्मरण रहे, मैं ये आपके भले के लिए कह रहा हूँ। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे यदि आप मेरा विश्वास करते हैं। अब सुनिए, मैं जो आपको बताता हूँ, समझे समझे। अब यहाँ एक खम्बा है और ये हम इसे सुनने वाला खम्बा कहते हैं, देखिए, और इसमें एक रेडियो है, देखिए, और वहाँ एक चेतावनी है और चीजें की जा सकती हैं, जैसा कि एक तलवार आपके हाथ में, देखिए, ये बुराई से लिया जा सकता है या इसे केवल जैसा ये है, इसमें एक संदेश है, देखिए। अब परंतु अब उदाहरण के लिए, साधारण मनुष्य के लिए बहुत सारी उपासनाएं और कुल गोत्र पवित्र आत्मा की वर्षा के नाम पर उठ खड़ी होती हैं, जब तक कि लोग किसी चीज पर कार्य नहीं कर लेते और निकलकर एक छोटा अभियान आरंभ करते हैं, और आप जानते हैं चीजें, समझे। अब आप उन चीजों को नहीं करना चाहते, समझे। अब बस स्मरण रखें कि बस वही रहें जैसे आप हैं, और अब आप कहते हैं ठीक है, प्रभु दिखाता है, नहीं, अब चौकन्ने रहें, देखिए। इधर देखिए, मैं आपको कुछ दिखाऊं, देखिए, क्या आप जानते हैं कि इस समय कमरे में हजारों आवाजें हैं, वास्तव में लोगों की आवाजें जो कि रेडियो की बिजली तरंगों से आ रही हैं? आप क्यों नहीं उनको सुनते हैं? वे आवाजें हैं, ये ठीक बात है, वे ठीक यहाँ हवा में तैर रही हैं, यहाँ लोगों के रूप और देहें इस कमरे में हैं, अब हैं, क्या ये ठीक बात है? भाई आप उन्हें क्यों नहीं देखते? समझे, वे यहाँ हैं, वास्तविक आवाजें, जैसे मेरी आवाज है, भाई आप उन्हें क्यों नहीं सुनते? समझे, इसे प्रकट होने के लिए पहले किसी चीज से टकराना है, समझे। अब आप समझे, अब बस किसी का अनुवाद ना करें। यदि परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ जाने, तो वो इसे आपके पास भेजेगा, समझे। इसलिए बस वास्तविकता में रहें, वास्तव में ठोस थामे रहें, कुछ घटित हुआ है, और अब बस वास्तविक रहें। आप समझ गए मेरा क्या अर्थ है? क्या आप नहीं समझे? और सिर्फ अपने आप को अलग बनाने का यत्न ना करें, मसीही बने, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर से अलग ले जाते हैं, और आप यदि आप इस बात को समझ सकते हैं, यही वो तीसरा खिंचाव है, समझे। आपको ये पकड़ लेना चाहिए उसी दिन, समझे। इसलिए तब बस ध्यान रखें, इसकी कोई नकल ना होगी, जैसे उन दूसरे दो की हुई, समझे। इसलिए ये जहाँ तक आप अब आपको जानना चाहिए, सिर्फ ये याद रखें। अब आप देखिए, यहाँ इस कमरे में कुछ घटित हो रहा है, और यहाँ पर कुछ है, यहाँ वास्तव में इस कमरे में स्वर्गदूत, परमेश्वर की आवाज, समझे। परंतु आप कैसे, आप नहीं सकते, यदि आप स्वाभाविक आवाज को नहीं सुन सकते बिना किसी ऐसी चीज के भेजे, तो आप कैसे आत्मिक आवाज को सुनने जा रहे हैं? अब आप बनावटी विश्वास कर सकते हैं कि कोई ये विशेष गीत गा रहा है, हो सकता है वो वहाँ हो भी नहीं, देखिए, परंतु जब ये वास्तव में उस बिल्लौर या क्रिस्टल से टकराएगा जिससे इसे टकराना चाहिए, तब ये सच्चा अनुवाद देगा और चित्र के द्वारा दर्शाएगा। देखा मेरा क्या अर्थ है? अब परमेश्वर का आत्मा जब ये सच्चे वचन में होकर बोलता है, तो ये स्वयं को प्रमाणित करता है कि ये सही है। अब आप समझ गए, ठीक है, अब आइए फिर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम लोग इस पुस्तक के पहले पन्ने को खोलते हैं, और जैसा कि ये भौतिक भाग वापस देने का यत्न कर रहे हैं जो आपने हमारे लिए आत्मिक क्षेत्र में खोला है, और अब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की मेरी सहायता करेंगे कि इन प्रश्नों का सही अनुवाद दूं, ताकि ये कहा जा सके कि वे लोगों की सहायता के लिए है, वे उनको समझ देने के लिए हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे समझ देंगे कि ये आपके लोगों को दे सकूं, कि उनके पास समझ हो सके कि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा और सम्मान के लिए जी सकें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि, और मैंने सोचा कि इस चीज ने यहाँ उन टेपों को नियंत्रित कर लिया है, परंतु ये नहीं करता, देखिए, ये एक डेस्क की रोशनी है और मैंने सोचा कि टेप को नियंत्रित करने वाला यहीं कहीं है और मुझे बताया गया कि बस उन भाइयों को संकेत दें जो वहां कमरे में हैं, रिकॉर्डिंग के कमरे में, और वे जान जाएंगे कि टेपों को कब बंद करना है और कब नहीं। देखिए, टेपों की सेवकाई सारे विश्व में सब जगह है। देखिए, हर जगह ये हर प्रकार की भाषा में और हर जगह जाता है, इसलिए वे बातें जो हम ठीक यहाँ कहेंगे उसे हम कहीं और नहीं कहेंगे। आप देखिए, और यही कारण है कि हम इसे रोकते हैं। अब प्रश्नों का उत्तर देना एक विशेष चीज है, इसलिए मैं अब इनका उत्तर देने में इनमें से अधिकांश प्रश्न बाहर से, अब हर कोई इनमें से कुछ संदेश से संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं, परंतु मैं फिर भी करने जा रहा हूं, या फिर बिल्कुल मोहरों पर, परंतु मैं उनका उत्तर देने जा रहा हूं। और ये मुझे दिए गए थे, और जैसा उन्हें बताया गया है, उनमें से अधिकतर मुझे बता दिए गए थे, या उनमें से अधिकांश प्रार्थना के निवेदन के विषय में है, और बीमार और अपाहिज और इस प्रकार की विभिन्न चीजें, ये चलता है, और इसलिए इनका संबंध किसी चीज से नहीं, किसी प्रश्न से कि उत्तर दिया जाए। और तब वे मुझे गट्ठर दिया गया कि वे थे, ये विभिन्न चीजों के लिए थे, वचन और चीजों के, परंतु हो सकता है यदि हमारे पास समय हुआ हम इनका उत्तर देने का यत्न करेंगे जितना अच्छा हम दे सकते हैं। और अब यदि मैं कोई गलती करता हूँ, क्यों, स्मरण रखें, ये गलती करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए क्या हर कोई अच्छा अनुभव कर रहा है? आमीन। क्या ये ऐसा है? मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों के विषय में बातें करना क्या ही शानदार स्थान है, क्या ही शानदार समय है। सारे समयों से कि मैं आराधनालय के प्रचार मंच के पीछे रहा हूँ, मैं कभी नहीं अपनी सेवकाई के किसी भी समय मैंने कभी परमेश्वर के कार्य क्षेत्र में कार्य किया और आत्मिक कार्य क्षेत्र में जैसा इस समय में, किसी भी चीज से परे मैंने कभी किसी समय अपनी सेवकाई में, किसी सभा में, कहीं भी इस प्रकार से, अधिकतर ये चंगाई पर, ये सच्चाइयों को प्रकट करना उसी आत्मा के द्वारा, वही आत्मा। और मैं अपने आप कुल मिलाकर एक और स्थान पर रहा था, या जाकर एक स्थान में खाना खाया, और मैं बस अकेला रहा, इसलिए ये वास्तव में महान समय रहा। और अब सीधे सीधे या तो इस सुबह में या आने वाली सुबह, मैं संभवतः यदि हम समय में होकर कर पाए, इस सुबह मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा, यदि ये प्रश्न देर तक नहीं चले। इसलिए मुझे थोड़ा समय अपने लिए चाहिए, थोड़ी देर के लिए। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क केवल इतना ही कर सकता है, समझे? और जब आप ऐसे बिंदु पर आ जाते हैं जहां आप घंटे भर परमेश्वर की उपस्थिति में सुन्न होकर बैठते हैं और उजियाले का स्तंभ वहां आपके सामने लटका है, आप अधिक देर तक नहीं टिक सकते। आप देखिए, मनुष्य जाति नहीं सकती, सामने नहीं खड़े रह सकते। इसलिए अब ये प्रश्न वास्तव में अच्छे हैं। मैं सराहना करता हूं कि बुद्धि और चीजें जो लोग प्रयोग करते हैं, अब पहले के लिए, और मैं इसका उत्तर देने का यत्न करूंगा, और फिर यदि मैं इसे ठीक से ना ले पाऊं, ठीक है, तो आप फिर मुझे क्षमा करना। और यदि आपके पास भिन्न अनुवाद हो, मैं विश्वास करता हूं कि आपका विचार ठीक है, भाई बस आगे बढ़ते रहें, ये नुकसान नहीं देगा, क्योंकि इनमें से एक या दो से अधिक नहीं है जो उद्धार की किसी चीज से संबंधित है, ये केवल अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं उस दूसरे ओर त्री या कलीसिया के रैप्चर पर। इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर हैं जो कि आना है और दूसरे भागों में घटित होगा, क्योंकि अब हम लोग कलीसिया युग से आए हैं, पुस्तक से, अपनी शिक्षा में हम 144,000 की बुलाहट के समय से आगे हैं। अब पहला वाला यहाँ है, क्या मती 25 की बुद्धिमान कुंवारियां दुल्हन की सेवादार हैं या वे दुल्हन हैं? समझे, यदि ये बुद्धिमान कुंवारियां दुल्हन की सेवक हैं, तो दुल्हन कहाँ है? देखिए, अब मेरी सबसे अच्छी समझ से ये 5 कुंवारियां, वहाँ ये 10 थी, आप जानते हैं, जो गईं। देखिए, और ये यहाँ केवल एक प्रतीक या दृष्टांत है, देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, वहाँ वे 10 थी, निसंदेह वहाँ 10 से अधिक थी, वे एक बस गिनती दी गई है, परंतु तब बुद्धिमान कुंवारियों के पास उनके चिरागदानों में तेल था, मूर्खों के पास उनके चिरागदानों में तेल नहीं था। इसलिए यदि ये 10 वहाँ मती की, यदि ये व्यक्ति का प्रश्न है, यदि वे 10 वहाँ, क्या इसका अर्थ नहीं होगा कि, या बल्कि ये 5, ये बस 5 होंगी, देखिए बस पांच लोग नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है, ये बस कुंवारियां का एक प्रतीक है। अब देखिए उन कुंवारियों का जो अपने चिरागदानों में तेल लेकर गई, वे दुल्हन का एक भाग है। और मेरी समझ में, और तब आप ध्यान दें, अब कि वे अंतिम पहर की कुंवारियां थी, उन पहरों में से होते हुए आती हैं, वहां सात पहर थे, और सातवें पहर में आधी रात में, जैसा कि हम इस पर होने जा रहे हैं, देखिए, अब इस आधी रात के पहर में ये कुंवारियां जागी और अपने चिरागदान को छांटने लगी और भीतर चली गईं, जबकि सोने वाली कुंवारी, अब ये भाग यहाँ, ये पांच, यदि प्रश्न का ये अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या वहाँ केवल पांच थी, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं, 7,000 के विषय में और आदि आदि। अब ये केवल एक प्रतीक है उनके भाग का, और ये सारे अंतिम युग में यहाँ जाग उठे सातवें पहर में कि यदि वहाँ नहीं थे, परंतु पांच जो उस समय जाग उठे वे बदल गए, दुल्हन के साथ अंदर चले गए, आदि आदि, दूल्हे के। अब यदि वे स्वयं ही, कि इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल पांच ही होने जा रहे हैं, क्योंकि वे सो रहे थे इन सारे युगों में से होते हुए, जैसा कि हम इस सप्ताह पर आ गए हैं। देखिए पौलुस के दिनों में इफिसुस में कलीसिया का दूत, पौलुस इस कलीसिया की स्थापना संदेशवाहक होने के नाते कर रहा है, स्मरण रखें, पौलुस इफिसुस में कलीसिया की स्थापना कर रहा है, उस कलीसिया का संदेशवाहक बन गया, और आत्मा उस समय उस देश में था, एक सिंह का आत्मा था, और सिंह यहूदा के गोत्र का एक सिंह था, जो कि मसीह है, और मसीह वचन है। पौलुस उस युग के वचन के साथ, उस युग में हजारों सो गए, क्या ये ठीक है? तब अगला युग आता है, और समय कलीसिया स्थापित हो गई है, अंधकार के युग में बैल का आत्मा आगे बढ़ा, कार्य, परिश्रम और बलिदान, और अपने जीवन देते हैं, हजारों हजार उस शहीद नामे में सो गए, और सारी चीजें वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए तब अगला युग आता है, लूथरन का सुधार का युग, वहाँ बुद्धिमान मनुष्य की चतुराई में होकर आगे बढ़ा। यदि आप ध्यान दें, मनुष्य इसके साथ आगे बढ़ा, और जब वो बढ़ा उसने अपनी चालाकी इसमें मिला ली, इसी जिसने इसका विवाह दूसरे भाग में कर दिया। देखिए समझे, यदि वो बस परमेश्वर की बुद्धि के साथ ही टिका रहता, केवल सुधार करना और बाहर खींचना, परंतु उसने क्या किया, उस मनुष्य के बाद जिसके पास संदेश था, लूथर की मृत्यु के पश्चात उनके पास एक लूथर संस्था थी, वेस्ली की मृत्यु के पश्चात उनके पास मेथोडिस्ट संस्था थी, समझे? वहाँ आप इस प्रकार से आगे बढ़ते रह सकते हैं, ये बस ये करता रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। देखिए, अब कोई पेंतिकोस्तल के विषय में पूछ सकता है कि जो कि तीसरा युग था, आप देखिए इन युगों में से प्रत्येक ने केवल पवित्र आत्मा में एक डुबकी मारी। न्यायोचित पवित्र आत्मा का एक कार्य है, पवित्रकरण पवित्र आत्मा का एक कार्य है, परंतु बपतिस्मा पवित्र आत्मा है। यही कारण है इसने भविष्यद्वक्ताई का भविष्यद्वक्ता लिया कि आए इस युग के लिए कोई संदेशवाहक नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं ही अपने बपतिस्मे की परिपूर्णता में आ गया। परंतु युग के अंत में, जैसा कि ये सदा दूसरों पर अंत होता है, हम ये वहाँ पाते हैं, तब संदेशवाहक भेजा जाता है और ये सारे धर्म संकोच और चीजें अपने स्थानों पर रखी जानी है, इस प्रकार से तब कलीसिया के लिए उठाया जाना होता है। परंतु जितनों के भाग में ये सारी भिन्न चीजें हैं, सूर्य अंधियारा हो रहा है, चांद, वे यहाँ पीछे इन मसीही युग में रखे गए, वे इन तीन प्रश्नों को देखने में असफल रहे जो वहाँ हमारे प्रभु से पूछे गए थे। देखिए जब उसने इनका उत्तर दिया, अब पिछली रात्रि मैं सोचता हूँ कि वहाँ कोई प्रश्न नहीं था, हमने उन प्रति एक प्रश्नों को लिया और उन्हें ठीक मोहरों के नीचे रखा, और मोहरें कुल मिलाकर एक पुस्तक अपने में हैं। क्या आप इसका विश्वास करते हैं डॉक्टर? देखिए सारी बात एक साथ लिपटी हुई है, और हमने यहाँ वो लिया जो यीशु ने यहाँ कहा, उन्होंने तीन प्रश्न पूछे। देखिए ये बातें कब होंगी, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, और संसार का अंत क्या होगा, और वो सीधे नीचे को आया और हमने उन्हें लिया प्रति एक उसके नीचे, परंतु एक वो क्या था, सातवीं मोहर, क्यों? देखिए ये नहीं मालूम, यही है हर कोई उनमें से बाहर आया, मैंने उन्हें समानांतर किया ठीक सही आगे पीछे। और मुझे जब मैंने इसे बीती रात्रि लिखा और उसमें गया और पाने को और मैं अपनी पुरानी टिप्पणियां देखने को पीछे गया, मैंने निकाला वहाँ पीछे से, भाई मैंने देखा कि मैंने कहाँ दूसरे स्थान पर रखा है। इस प्रकार से मैंने आगे पीछे काट दिया। यही जो मैंने किया, मैं समझता हूँ आपने ये पकड़ा है, समझे। मैंने इसे यहाँ लिख लिया था जो मैं दूसरी ओर लिखना चाहता था, और इधर लिख लिया, दोनों ही लिख लिए, 9-11 या 9-6 या जो, या 6-11 और 9-11, जो कि ये ऐसा नहीं था, ये उल्टा था, अगला पद इसके नीचे, समझे। और वो ये था, वो उत्तर, पीड़ा और युद्ध के बीच में। अब देखिए, यही जहाँ पर ये था, इसलिए मैं बहुत ही आनंदित था। मैं बस ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, मैं प्रकाशन की उत्तेजना में आनंद ले रहा था, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। वहाँ पेन या पेंसिल के साथ बैठा हुआ था, मैंने दोनों ओर 11 लिख दिया, और जबकि ये नहीं होना चाहिए, मैं सोचता हूँ ये 9 था बजाय 11 के दूसरी ओर के लिए। परंतु क्या आपने देखा ये कितनी सिद्धता में समानांतर है? अब इसे ना भूलें, ये 6वें तक समानांतर है और रुक गया। देखिए और ध्यान दें, मोहरों के खुलने पर ध्यान दें, ये 6वें तक आता है और रुक जाता है, बस स्वर्ग में सन्नाटा। कुल इतना ही कहा गया आधी घड़ी के लिए। अब इसमें देखिए, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और इसका उत्तर देना, क्योंकि देखिए हर एक इसमें एक उपदेश है 4 सप्ताह लंबा। अब देखिए हर एक पर, और आप किसी और चीज पर चले जाते हैं, परंतु मेरा ऐसा करने का अर्थ नहीं होता, क्योंकि मैं हर एक के प्रश्न को लेना चाहता हूँ जहाँ तक मैं ले सकता हूँ। ये कुंवारियाँ देखिए, वे बनी हुई थी, ये बस उस युग का एक भाग है, हर युग की कुंवारियाँ हैं, समझे। एक मोहर दूत कलीसिया के पास आता है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, समझे, तब यहाँ आता है, तब इफिसुस की कलीसिया को लिखने के बाद पीछे तुलना करता है, एक मोहर खुली। इसी प्रकार से हम इसे ला रहे हैं, आपको सारा का सारा देने का यत्न कर रहे हैं। देखा मेरा क्या अर्थ है, यदि प्रभु ने चाहा, उनके पास पहले क्या होगा, कलीसियाई युग, ये ठीक बात है। अगली चीज, कलीसियाई युगों के लिए संदेश, अब हर किसी को स्पष्ट हो गया। देखिए, पहले हमने कलीसियाई युगों को लिया और इतिहास को लिया, निशियन सभाओं के पहले वाले को रखा, और हर चीज जो हम इतिहास में पा सकते थे, और इसका सही अनुवाद वचन का जो ठीक इतिहास के साथ था, और इस दिन तक लेकर आए इस लुदिकिया में, और अब आपको इसका इतिहास नहीं लेना है, ये अब इतिहास बना रहा है। देखिए यही है, और फिर ये दिखाया कि इस युग में क्या होगा। अब हम मोहरों के साथ वापस आते हैं और उस मोहर को खोलते हैं। परमेश्वर उस मोहर को हमारे लिए खोलता है कि वो क्या है। पहला वहाँ एक संदेशवाहक है, कलीसिया युग, अगला 7 मोहरें हैं। अब हम पाते हैं भ्रष्टाचार जो 7वीं कलीसिया युग पर प्रहार करता है, परंतु 7वीं मोहर कुछ भी प्रकट नहीं करती कि इसका क्या होने जा रहा है, समझे, क्योंकि उस कलीसिया युग के अंत में एक भविष्यद्वक्ताई वरदान को आना है कि इन बातों को प्रकट करे, समझे, कि आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दें कैसे उनमें से हर एक मोहरे, तब मैं यहाँ आता हूँ, और वे 3 प्रश्न यीशु मसीह से पूछे गए, क्या ये बातें कब होंगी कि पत्थर पर पत्थर भी न बाकी बचेगा, संसार का ये धार्मिक केंद्र कब ले लिया जाएगा और दूसरा स्थापित किया जाएगा, देखिए ये कब होगा, मसीह विरोधी की सवारी, समझे, और इसके मुकाबले के लिए क्या निकला, वचन, वो वचन, वचन के विरोध में, तब ये राजनीति में स्थापित हो गया और सारी बातें, और वहाँ बैल का परिश्रम गया, समझे, ये ठीक यहाँ दूसरा है, और यीशु ने ऐसा कहा, मत्ती 24 में देखिए। तब हम यहाँ इससे नीचे आते हैं, सुधारकों की चतुराई, मनुष्य पशु इसे मुकाबले पर जाता है, यही जो घटित हुआ। तब हम अगले पर आते हैं, 4वीं मोहर पर, जब मसीह विरोधी एक बिल्कुल मिला जुला हो जाता है, और एक नाम था मृत्यु। अब ध्यान दें यीशु ने क्या कहा, और वो इसे आग में फेंक देगा और उसके बालकों को भी मार डालेगा। ये मृत्यु है, सवारी कर रही है, ये दोनों प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिक में है, इनमें से प्रत्येक पर मृत्यु का चिन्ह। देखिए, वो और उसके बालक नष्ट हो गए, इसलिए यदि आप अपने नामधारी पर निर्भर कर रहे हैं तो अच्छा है, आप ठीक अभी इससे अलग हो जाएं। और तब ये 7वीं मोहर पर आता है, तो यीशु ठीक वहीं पर रुक जाता है। वो छठवीं मोहर को ये कहते हुए खोलता है, चंद्रमा लहू हो जाएगा और अंधकार और ये सारी चीजें आदि आदि ये बातें घटित होंगी। हम ठीक यहाँ पर आते हैं और छठवीं मोहर को खोलते हैं। छठवीं मोहर के खुलने के बाद तब फिर वापस पलटकर और वही बात दिखाता है। आप वहीं पर हैं। वचन में तीन भिन्न स्थानों पर उन्हें प्रकाशन से एक साथ बांध दिया, समझे? ध्यान दें, वो स्थान जहां यीशु ने ऐसा कहा, वो स्थान जब उसने पुस्तक को खोला, ये पृथ्वी के रचने से पहले छिपा था, और तब यहां आज का प्रकाशन ठीक इसको वहां रखता है, तीनों को एक साथ बांधता है, और तीन एक गवाही हैं, इसलिए ये सत्य है, ये पूरी रीति से सत्य है। अब ये कुंवारियां जो यहां पर आईं, ये वे हैं जो सो गईं, और फिर सारी देह इस झुंड को मिलाकर बनी है जो बनाने जा रहा है। देखिए, बुद्धिमान कुंवारियां बनाने जा रहा है और मूर्ख कुंवारियां वे हैं जिन्होंने उसी समय आरंभ किया जब बुद्धिमान कुंवारियों ने आरंभ किया, मसीह विरोधी, और वे जिन्होंने तेल खरीदने का यत्न किया। अब जरा यहाँ देखें और देखें कितना सिद्ध है। हर कहीं जहाँ आप जाते हैं, यदि मैं यहाँ खड़ा रह सकूँ और उन चीजों के लिए बात करूँ जो उस कमरे में प्रकट की गई, मैं आपको बताता हूँ ये आपके सर को घुमा देगा। परंतु आप ये कैसे करने जा रहे हैं जब आपके पास यहाँ सारी चीजें हैं, और तब आप कैसे भी एक दूसरा, जब आप लोगों से अलग हो जाते हैं तब ये भेदों को खोलना आरंभ करता है, तब आप उन चीजों को देखते हैं जिन्हें आप लोगों से कहने का साहस भी नहीं करते, क्योंकि आप देखते हैं यदि ये होगा वे एक नया वाद आरंभ कर देंगे। और फिर आइए इस छोटे चंगाई के वरदान को देखें, क्या हुआ, कैसे इसने कलीसिया को भ्रमित किया। हर किसी को संवेदना हो रही थी, हर एक के पास ये था, और ठीक मेरे हृदय में परमेश्वर जानता है कि ये सच है। मैं जानता था कि ये सही नहीं था क्योंकि उसने मुझे ऐसा बताया था, समझे? परंतु ये एक झूठी नकल थी केवल लोगों को भटकाने को। अब ये ठीक बात है, परंतु आप देखिए, आप उन बातों को नहीं कह सकते। सबसे अच्छा है कि इसे रहने दें। और आपको तीसरा खिंचाव याद है, उसने कहा किसी को ये नहीं बताना। मैंने जो कहा वो ये था, कितनों को ये याद है? निश्चय ही याद रखें, वहाँ खड़े हुए उस छोटे से जूते के छेद में फीता डालने का यत्न कर रहा था दर्शन में। उसने कहा तुम पेंतिकौस्तल के बालकों को अलौकिक चीजें नहीं सिखा सकते। मैंने कहा ये वाला तीसरा खिंचाव होगा और ये मालूम नहीं पड़ पाएगा, इसलिए मेरी सहायता करें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। अब हम ठीक समय के अंत पर हैं। ये अधिक समय नहीं जब तक अनुग्रह का सिंहासन न्याय का सिंहासन न होगा। जबकि आप इन चीजों को अंदर आते हुए देख रहे हैं और ये लोग अंदर आ रहे हैं, अच्छा हो कि आप भी अंदर आ जाएं, यदि आप पहले ही अंदर नहीं हैं, समझे? अब स्वर्गीय स्थानों में एकत्र हैं। देखिए, ये आनंद करने से भी अधिक इसका अर्थ है। स्वर्गीय स्थानों में यदि आप वास्तव में मसीह में एकत्र हैं, ये भयानक बात है। प्रभु के स्वर्गदूत के बराबर में खड़ा होना, आप सोचते हैं आप बस चिल्लाएंगे और चीखेंगे, ये नहीं है, ये मृत्यु से डरावना है लगभग, समझे? इसलिए आप देखिए वहाँ आनंद करने, उछलने, नाचने से अंतर है जो कि ठीक है, और फिर वास्तविक चीज पर आ रहे हैं, समझे? समझे, वहाँ जहाँ भय है ये भयानक बात है। वो भय नहीं कि आप नष्ट हो गए, परंतु वास्तव में दूत जीव के सामने और स्वयं पवित्र आत्मा वहाँ खड़ा हुआ है। अब ये दुल्हन का भाग होगा, यही जो इसे बनाएगा। देखिए, वे सारे जो सोए हुए हैं, और क्या हम इसे नहीं देख सकते? अब प्रार्थना करें कि आप लोगों की चंगाई प्रदान करेंगे इन ऊपर रखे रुमालों के द्वारा, यीशु के नाम में, आमीन। अब ये बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। किसी का किसी चीज पर पांव पड़ गया, बहुत सारे रिकॉर्डरों से अधिक जोर पड़ता है, समझे? ठीक है, बस अदला बदली करके एक टेप लें और टेप अदल बदल कर दें और इससे इसे अलग कर दें। अब ध्यान दें, अब अगला प्रश्न, क्या प्रचारकों को कार्य क्षेत्र में बने रहना चाहिए? इस घड़ी में निस्संदेह उनका क्या अर्थ है? निश्चय ही हर प्रकार से किसी चीज को ना बदलें। यदि यीशु सुबह आ रहा है तो आज ऐसे प्रचार करें जैसे कि ये आज से 10 वर्षों के बाद हो, परंतु इस प्रकार से जिएं जैसे कि इसी घड़ी में होने जा रहा है। अब जरा भी न झिझकें। मैं इसी विषय में चेतावनी देने का यत्न कर रहा हूँ। देखिए, अजीब या विचित्र ना बने, कुछ भी ना बदलें, परंतु यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं या दुष्टता कर रहे हैं, प्रायश्चित करें। देखिए, वापस परमेश्वर के पास आए, अपने प्रचार के कार्य को जारी रखें, जैसा आपने सदा से किया है। यदि आप घर बना रहे हैं तो उसे बनाते रहें। यीशु आने वाले कल में आता है, आप अपने कर्तव्य पर ईमानदार पाए जाएं। यदि आप आराधनालय बना रहे हैं तो बढ़ते जाएं, बनाएं। मैं बल्कि अपना पैसा इस प्रकार की चीजों में लगाऊं बजाय कि मैं अपनी जेब में रखूं, समझे? इसलिए निरंतर बढ़ते रहें जैसे आप हैं। अब हर कोई समझ गया? निरंतर बढ़ते रहें और बस आगे बढ़ते रहें जैसे आप हैं। बस बस रुके नहीं, कुछ नहीं करें, जैसे आप हैं बस आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की सेवा करते रहें। अब उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे थे और आप छोड़ने के समय से 15 मिनट पहले जान गए, अच्छा, आप कहेंगे ओ 15 मिनट और हैं, इसलिए मैं जाकर वहां बैठ सकता हूं। आप उस 15 मिनट के लिए कटघरे में होंगे। यदि आप गेहूं बो रहे हैं, आपने गेहूं बोए, आप आलू खोद रहे हैं, तो करते जाएं, उन्हें खोदते रहें। कहें भाई इन्हें कहीं कोई नहीं खाएगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, जो भी है इन्हें खोदें, समझे? जी हाँ, बस चलते रहें जैसे आप हैं। उस दिन मुझे किसी का पत्र मिला, किसी ने उन्हें बताया, कहा भाई समय निकट है, फार्म बेच दो। अब आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है कि जिस पर आप जीवन बिताएं। इस फार्म पर कहा कि क्योंकि ये सर्व शताब्दी आरंभ होने जा रहा है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आप आगे बढ़ते जाएं। और जबकि संकट का समय चल रहा है, आपके बालक बच्चे नहीं हैं, इसलिए उन्हें होने दें, इन बालकों को खेती बाड़ी ले लेने दो जहाँ से वे खा सके, परंतु आप अपनी सारी खेती बाड़ी बेच दो। और कुछ इस प्रकार से, और ओह उनके पास था। मैंने कहा ओ प्रभु, यदि मुझे मालूम हो कि वो कल आ रहा है और मैं एक किसान था तो मैं आज अपनी फसल बोता, निश्चय ही यदि वो मुझे किसान बनाता मैं ठीक अपनी जिम्मेदारी पे टिका रहता, ये ठीक बात है। यदि वो मुझे मैकेनिक बनाता, कहा जो किसी ने कहा, उस दिन वो बोला, एक व्यक्ति आया और कहा, कहता है भाई आप जानते हैं क्या, उसने कहा मैं आपको चाबियों का दूसरा गुच्छा देता हूँ, मैंने नई कार खरीदी है। उसने कहा मैं चाबियों का दूसरा गुच्छा तुम्हें देने जा रहा हूँ। अपने पास्टर को बताया, कहा मैं अपनी चाबियों का दूसरा गुच्छा देने जा रहा हूं क्योंकि हो सकता है रैप्चर आ जाए, अब जानते हैं, और कहा मुझे इसकी अब और आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, पास्टर इसमें चूकने जा रहा है, ओ ये तैयारी कर रहा है, क्या नहीं ठीक है, परंतु ये इसी प्रकार से है। देखिए, हमें इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, हमें एक समझदार ठोस मसीही होना चाहिए। देखिए कि मुझे यहाँ अपने कार्य पर अंतिम मिनट तक कार्य करते रहना है, मेरे पास करने के लिए कार्य है और मैं अपने कर्तव्य स्थल पर ईमानदारी से पाया जाऊंगा। यदि वो इस प्रातः आता है, मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक यहाँ प्रचार मंच पर खड़ा रहूँ। आप कहते हैं भाई बर्नम, यदि इसे इस प्रातः आना था तो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं श्रीमान, ये मेरा कार्य स्थल है, मैं ठीक यही खड़ा हूँगा प्रचार करते हुए जब वो आता है, वही बात कहते हुए जो मैं हूँ, तब जब वो आता है मैं बस ठीक उसके साथ आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, यदि मैं आलू खोद रहा हूँ, मैं उसी प्रकार से खोदता रहूंगा जितनी मेहनत से मैं खोद सकता हूँ। जब वो आता है मैं बस कुदाली छोड़ दूंगा और उठ जाऊंगा। याद रखें, जुबली वर्ष में यदि वे कुदाली से कुछ खोद रहे थे, वे बस खोदते रहते, वे जान गए कि जुबली वर्ष में हो सकता है 10 मिनट और हैं और जुबली वर्ष पर तुरही बजेगी, वे बस सूखी घास फेंकते रहे, वे जो भी कर रहे थे, परंतु जब तुरही बजी उन्होंने हेंगा छोड़ दिया और चले गए। देखिए, यही है, बस सूखी घास को फेंकते रहो जब तक तुरही नहीं बचती। ठीक है, प्रश्न, खुलने के अनुसार किया वो कुछ हुआ? ओ इसने यहाँ शोर किया, एक प्रश्न। पांचवी मोहर के खुलने के अनुसार मूसा और एलिया को मरना ही है, हनोक के विषय में क्या है? मैं नहीं जानता। देखिए, मैं नहीं जानता तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता, समझे? मैं सारे उत्तर नहीं जानता हूँ लोगों, मैं नहीं जानता, और यदि मैं नहीं जानता हूँ तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता। यदि मैं जानता हूँ मैं तब तक नहीं बताऊंगा कि मैं जानता हूँ। देखिए, परंतु मैं नहीं जानता, मैं स्वयं अक्सर इस विषय पर आश्चर्यचकित हूँ। वहाँ हनोक था, मैं मूसा को आते देखता हूँ और एलिया वापस आता है, वे मार डाले गए। देखिए, परंतु अब हनोक समय से पहले रूपांतरित हो गया था। मैंने अक्सर सोचा और अपने में आश्चर्य किया, उसके विषय में क्या है, परंतु फिर यहाँ केवल एक ही सांत्वना है जो मैं कह सकता हूँ, ये है, अब ध्यान दें, मूसा ने परमेश्वर की सेवा 40 वर्षों की, समझे, वो 120 का था, परंतु 20 वर्ष पहले 40 वर्ष, मेरा अर्थ वो अपनी शिक्षा पा रहा था, ये ठीक बात है। दूसरे 40 वर्ष परमेश्वर उसमें से निकाल रहा था और तीसरे 40 वर्ष में उसने परमेश्वर की सेवा की, समझे, ये ठीक है। परंतु हनोक परमेश्वर के सामने 500 वर्ष चला और निर्दोष था, समझे समझे। इसलिए मूसा वापस आया कि कुछ और समय उसकी सेवा करे और वो एलिया। अब ये मैं नहीं कहता कि ये ठीक है, देखिए मैंने ये आपको एक विचार के लिए दिया है, देखिए बस ये कहने को कौन सा भाग मैं नहीं जानता, वास्तव में मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ या परमेश्वर क्या करेगा। नाम क्या है उसका? ये प्रकाशित वाक्य 3:12 के लोगों के ऊपर होगा, मैं नहीं जानता। जी हाँ, उसने कहा उन्हें एक नया नाम दिया गया, मैं नहीं जानता कि वो क्या है। देखिए ये संभवतः तभी जाना जाएगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे, परंतु इस समय मैं नहीं जानता कि वो क्या है। देखिए वो इसे करने जा रहा है, समझे, वो उन्हें नया नाम देता है जिसे केवल वे अपने में जानते हैं, समझे। अब भाई ब्रैनम, क्या कोई वचन है जो तलाक के बाद विवाह की अनुमति देता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहता है महत्वपूर्ण है, ठीक यही कारण है। ये इससे संबंधित नहीं था जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, मेरे भाई या बहन ये जो भी हो सकता है वहाँ नहीं है, जब तक कि आपका साथी मर ना जाए, क्योंकि बाइबल ने कहा जब तक वे जीवित हैं हमने उन्हें बांध दिया है, समझे। इसलिए जैसे जहाँ तक कोई वचन, यही जो यहाँ पर पूछा गया, क्या कोई वचन है, समझे, क्या कोई वचन है, नहीं, जैसा कि मैं पा सकता हूँ, देखिए, जैसा कि मैं नहीं पा सकता, क्योंकि पौलुस ने कहा कि वो विवाहित जोड़ा यदि साथी मर गया है तब वो स्वतंत्र है, तब वो प्रभु में जिससे चाहे विवाह करे, परंतु ध्यान दें, आप इसे लें, जब तक हमें मृत्यु अलग ना करे, यही है, आपने इसके लिए शपथ ली है, आप देखिए। इसलिए मैं नहीं सोचता कि कोई है। अब यदि आपको कुछ मिला है ये सही है, क्यों, ठीक है ठीक है, परंतु जहाँ तक मेरा अपना, मुझे कोई नहीं मिला। देखिए, तू तेल और दाखरस की हानि ना करना, इसका क्या अर्थ है? प्रकाशित वाक्य 6:6 में, ये पवित्र आत्मा है, समझे, हमने इसे अभी लिया है, संभवतः कोई आप जानते हैं संदेश के लिए थोड़ी देर से आया है, वे अच्छा दूसरे टेपों के लिए, आप देखिए, तेल और दाखरस की हानि ना करना, तेल और दाखरस का क्या अर्थ है? तेल, जैसा कि हम इसे प्रतीक में लेते हैं, इसका अर्थ पवित्र आत्मा, समझे, दाखरस और तेल जैसा कि हम रखते हैं, यही जहाँ से मुझे विचार मिला, उत्तेजना, दाखरस उत्तेजित करता है और दाखरस अपने स्वाभाविक के प्रतिरूप में उत्तेजना से प्रकाशन है। अब जरा सोचें, कलीसिया को क्या उत्तेजित करता है? प्रकाशन, समझे, इसलिए दाखरस वो नया दाखरस होगा। अब ध्यान दें, तेल और दाखरस बलिदान में एक साथ गए, कलीसियाई आराधना में एक साथ गए, अब ध्यान दें, एक साथ जमा होकर मिलकर जुड़ गए। यदि आपके पास शब्द अनुक्रमणिका है, आप देखिए और देखिए कि सारा सिलसिला जहां दाखरस और तेल एक साथ आराधना में एक साथ मिलते हैं, यदि आपके पास क्रूडेंस का है, क्यों, ये वहां ये कहता है, अब इस पर ध्यान दें। परंतु अब आप देखिए, तेल सदा एक पवित्र आत्मा है, ये हम हिजकेल में पाते हैं और हम ये पुराने नियम में पाते हैं, हम इसे सारे नए नियम में पाते हैं। क्यों हम रोगी पर तेल से अभिषेक करते हैं? हम रोगी का तेल से अभिषेक करते हैं क्योंकि ये उन पर पवित्र आत्मा उंडेलने का प्रतीक है, समझे। और बुद्धिमान कुंवारियों के पास भी तेल था, मूर्खों के पास तेल नहीं था, आत्मा, देखिए अब ये तेल है। और तब दाखरस, ये तेल परमेश्वर को दर्शाता है, परमेश्वर आत्मा है, समझे, परमेश्वर वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ था और वो परमेश्वर था। अब तब यदि वचन अब यहाँ अंदर स्वाभाविक रूप में अब दाखरस पानी जैसा कि या प्रकाशन बिना अनुवाद के वचन को प्रकट करता है जो कि विश्वासी को उत्तेजित करता है। आप देखिए, ओह वे बस कहते हैं मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। ओ महिमा हो, यही है जो देखिए उत्तेजना प्रकाशन का। उस दिन तक मुझे नहीं मालूम था या वहाँ बैठे हुए दोनों, समझे। अब ये तेल और दाखरस क्या करते हैं? ये था, देखिए इसकी हानि ना करना, ये काला घुड़ सवार था और ये अंधकार युग चलते हुए समय में था, कलीसिया का तीसरा युग, ध्यान दें। और उसमें और वहाँ बस थोड़ा सा बचा था, बस थोड़ा सा, परंतु इसकी हानि ना करना। और मैं विश्वास करता हूँ यदि आप इसे लेते हैं टेप के ऊपर तीसरी मोहर, आप इसे वहाँ पाएंगे जहाँ हमने इसकी विस्तार में व्याख्या की है, या बल्कि विस्तार में। भाई ब्रणम, क्या मेमने की जीवन की पुस्तक और जीवन की पुस्तक एक ही पुस्तक है? निश्चय ही, देखिए यही जहाँ सारा छुटकारा लिखा हुआ है इस पुस्तक में, समझे। उनके नाम इसके अंदर हैं। आप कहते हैं भाई हमारा नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है। भाई ब्रणम, मैंने उस रात्रि उसमें लिखा है। नहीं आपने नहीं, नहीं आपने नहीं, आपने बस उस दिन वहाँ पाया था उस रात्रि, देखिए, क्योंकि उसके नाम संसार की सृष्टि से पहले वहाँ लिखे थे, समझे। ये कुल मिलाकर ये एक ही पुस्तक है, देखिए। अब भाई ब्रणम, क्या ये सच है कि हर यहूदी जब से यीशु आया बचा लिया जाएगा? और 144,000 कौन हैं? क्या वे पवित्र आत्मा से मोहर बंद होने के लिए ठहराए हुए हैं? और उनका उद्देश्य क्या है? यहाँ एक प्रश्न में लगभग तीन प्रश्न हैं, परंतु यहाँ पहला वाला, क्या ये सच है कि हर यहूदी जब से यीशु वो संसार में आया बचाया जाना है? नहीं, कुछ भी नहीं बचाया जाएगा, केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में संसार की सृष्टि से पहले लिखे हुए हैं, यहूदी या अन्य जाति, समझे। बस कुल मिलाकर यही है, उस पुस्तक में ये भेद है। और केवल वो पुस्तक खुल रही है, ना कि प्रत्येक नाम, परंतु पुस्तक का भेद क्या है, जबकि वो उन नामों को पुकार रही है। अब अंततः आप इसे समझते हैं, समझे। पुस्तक ये नहीं कहती अब ली वॉयल इस कलीसिया युग में बचाया जाए, या ऑर्मन नेविल, या जो भी हो, नहीं, ये नहीं कहती। ये बस भेद को दिखाती है, भेद को खोलती है कि चीज क्या है। परंतु हम अपने में विश्वास के द्वारा इसका विश्वास करते हैं, यही जो मैंने उस रात्रि कहा। किसी ने कहा ठीक है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं इसके लिए यत्न करूं। भाई ब्रणम ने कहा है कि जेफरसन विले में से केवल एक बचा है, समझे। अब देखिए, ये एक दृष्टांत दर्शा रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, वहाँ हजारों बच सकते हैं, मैं नहीं जानता, मैं आशा करता हूँ उनमें से प्रत्येक बच गया, देखिए, परंतु मैं नहीं जानता। परंतु यहाँ एक मार्ग है, मैं ये विश्वास करना चाहता हूँ कि मैं ही वो हूँ। आप अपने लिए वैसा ही विश्वास करते हैं, यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आपके विश्वास में कुछ गलत है, आप जो कर रहे हैं उसमें निश्चित नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं, आप मृत्यु के सामने कैसे चल सकते हैं, जब आप इस बात में सुनिश्चित नहीं है कि आप बचे हैं या नहीं, समझे। कैसे आप जाकर किसी विकलांग से जो यहाँ पड़ा हुआ है अंधा और मुड़ा थोड़ा, यहोवा यूं कहता है उठ, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, आप कैसे खड़े हो सकते हैं कि वो ठंडी अकड़ी हुई देह वहाँ मरी पड़ी हुई है और घंटे घंटे से मरी हुई है और वहाँ ठंडी अकड़ी पड़ी हुई है और कहते हैं यहोवा यूं कहता है अपने पैरों पर खड़ा हो जा। अच्छा हो कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस विषय में कह रहे हैं, समझे। अच्छा, कहते हैं मृत्यु हर चीज को ले लेती है, ये सब चला गया, जी हाँ, परंतु जब परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ, और आप जानते हैं ये परमेश्वर है जो चीजों को बदलता है, ये ठीक बात है। अब हाँ, ये यहूदी नहीं है, सारे यहूदी नहीं बचेंगे, नहीं श्रीमान, वे नहीं बचेंगे, केवल वे जो, जब वो बोल रहा है यहूदियों के लिए, यहूदी एक नाम की तरह जो उनको उनके छोड़ने के बाद दिया गया। मैं विश्वास करता हूँ नबूकदनज़र ने पहले पहल उन्हें यहूदी कहना आरंभ किया, क्योंकि यहूदा का गोत्र वहाँ ले जाया गया था और उन्हें यहूदी नाम दिया गया। अब क्योंकि वे यहूदिया से आए थे और उन्हें यहूदी नाम मिला, परंतु अब इसराइल अलग है, इसराइल और यहूदी कुल मिलाकर भिन्न है। हर यहूदी इसराइली नहीं है, देखिए, नहीं, वो बस यहूदी है, परंतु तब इसराइल, पौलुस ने कभी नहीं कहा सारे यहूदी बच जाएंगे, उसने कहा सारा इसराइल बचा लिया जाएगा। क्यों? इसराइल का नाम ये पीछे की ओर छुटकारे का नाम है, समझे, और सारा इसराइल बचा लिया जाएगा, परंतु सारा यहूदिया नहीं, यहूदी मत बचा लिया जाएगा, समझे। जैसे कि अन्य जाति वहाँ होंगे, वहाँ हजारों हजार लोग हैं, जी हाँ, अक्षर अक्षर इन संस्थाओं में लाखों और वे मसीही कहलाते हैं, मसीह की कलीसिया और सारे इस प्रकार के नामों से इसका कोई अर्थ नहीं। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं कि वे सब बच जाएंगे। लोग कहते हैं अब आपको इससे या उससे एक संस्था से, एक निश्चित संस्था से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपका नाम हमारी पुस्तक में नहीं है तो आप नष्ट हैं। अब ये एक पंथ है, समझे? ये पंथ है, समझे? केवल एक ही मार्ग है कि आप बच सकते हैं, और वो ना कि वो जो चाहता है या वो जो दौड़ता है, वो जो तब ये परमेश्वर जो अनुग्रह दर्शाता है। और परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा पहले से एक कलीसिया अपनी महिमा के लिए ठहराई है, और वही वाले जो बचे हुए हैं। ठीक है, अब आपका विश्वास जो उसमें लंगर डाले हुए है, आप कहते हैं भाई मेरा विश्वास वहाँ लंगर डाले हुए है, और देखिए आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आप देखिए, आप तो वहाँ के लिए योग्य भी नहीं है, आपका लंगर गलत है, आप तो रेत पर हैं बजाय चट्टान के, पहली छोटी सी लहर इसे गिरा देगी। ओ, वचन को किसी चीज में प्रकट हो जाए, मेरी कलीसिया मुझे ये नहीं सिखाती, ये दर्शाता है तो फिर आपका लंगर किसी चट्टान पर नहीं, आप रेत पर थे। ओ, ये ठीक बात है। इसलिए अब आप देखिए, अब और वे 144,000 क्या वे पहले से ठहराए हुए हैं? जी हाँ श्रीमान, ये इजराइल, आत्मिक इजराइल है। जरा सोचिए, वहाँ पर लाखों, वे जो वहाँ होंगे मैं नहीं जानता अब वहाँ पर कितने हैं। मैं समझता हूँ एक समस्त झुंड, परंतु वे सारे नहीं बचेंगे क्योंकि वे यहूदिया में हैं, समझे? क्या आपके पास कोई अनुमान है अब वहाँ कितने हैं? मैं नहीं जानता, परंतु संभवतः वे अब इन विपत्तियों के आरंभ होने के बाद वे जमा हो रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरे पास उन पर टेप है। अब अपने साथ पश्चिम को ले जा रहा हूँ, उस कोवेनेंट कलीसिया में जो कि वहाँ पर है। ये बस पुरानी है। ओ, अब मैं भूल गया, ये आरंभ हुई, वे वहाँ नीचे अफ्रीका में थे, डच रिफॉर्म, ये डच रिफॉर्म कोवेनेंट कलीसिया वहाँ पर। अब यदि आप में से कोई यहाँ बैठा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। आप अब भी उस पुराने हेडलबर्ग के प्रश्नोत्तरी को पकड़े हुए हैं, और ठीक यही कारण है कि आप अब भी डच रिफॉर्म में हैं, ताकि आप अमेरिकन नाम के द्वारा चमकाए जाएं। इसके पीछे यही बात है, क्योंकि आप उसी प्रश्नोत्तरी से सिखा रहे हैं, वो पुरानी हेडलबर्ग। आप अपने पास्टर से पूछें यदि ये सही नहीं है, समझे? इसलिए अब इस पर ध्यान दें, 144,000 वे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद होने के लिए ठहराए गए हैं। जी हाँ श्रीमान, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब यदि वहाँ कोई, अब यदि मैंने आपके अनुसार उत्तर नहीं दिया, क्यों? हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, देखिए, परंतु ये मेरी पूरी समझ के साथ है। आप देखिए, ये मेरी सबसे अच्छी समझ से है। भाई ब्रैनम, जैसा कि आपने कड़ा परिश्रम किया है या सर्प वंश पर, ओ, मैंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये वाला मुझसे छूट गया। इस सप्ताह सर्प का वंश, क्या ये प्रश्न पूछना उपयुक्त होगा? मेरे मित्रों ने मुझसे उत्पत्ति 4:1 की व्याख्या करने को कहा है, और मैं नहीं कर सकता। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? ये विषय से हटकर है, परंतु जो भी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा परमेश्वर की सहायता के द्वारा। अब आइए देखें, मैं इसे थोड़ा सा उजागर करूं। मैं सोचता हूं कि यही जहां उसने कहा मैंने प्रभु से एक पुत्र पाया, मैं विश्वास करता हूं यही है। मैं सोचता हूं हवा ने वहां पर कहा, मैं इसे जांचने जा रहा हूं निश्चित होने को, क्योंकि मैंने उस रात्रि कहा 7 बजाय 700 बजाय 7,000 के, इसलिए उसने मुझे बहुत अधीर कर दिया। देखिए, और आपको बस ध्यान देना है, और शत्रु हर ओर, आप इसके लिए विवेकशील हैं। आप देखिए, जी हाँ, यही है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। अब मैं आपको प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ, मेरे भाई या बहन, और आप याद रखें, ना कि आपको टाल रहा हूँ, नहीं, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, जो कि इस पर आलोचक हो सकता है, परंतु मैं नहीं सोचता कि ये व्यक्ति आलोचक है। उन्होंने कहा कि हमारी सहायता करें, देखिए, क्योंकि लोग इसका विश्वास करते हैं, परंतु ये आत्मा के द्वारा पूरी रीति से नहीं ले पाए कि जाने व्यक्ति से जिसने इससे पूछा है कि क्या कहे। अब वो यहाँ कह रही है कि प्रश्न क्या है, कोई संदेह नहीं कि वे कह रहे हैं हवा ने कहा, उसने ये पुरुष प्रभु से पाया है। आप कैसा सोचते हैं कि जीवन कभी आ सकता है यदि ये प्रभु की ओर से नहीं आ सकता? ये सही या गलत है? किसने भेजा यहूदा स्कृति को संसार में? किसने भेजा, मुझे ये बताएं। बाइबल ने कहा वो विनाश का पुत्र जन्मा था। उनसे बस ये पूछें, नींबू में एक कीड़े के समान, देखिए, समझे? अब आप देखिए, वे नहीं सकते, ये ध्यान दें। तब यदि आप उन्हें और थोड़ी अधिक तकनीक से लेना चाहते हैं, देखिए हवा ने यहाँ बात की, यदि आप उस भाषा में जो यहाँ है लेना चाहते हैं जो कि लिखा हुआ है, इसलिए ये बुद्धिमान और समझदारों की आंखों से छिपा है। यहाँ पर हवा जिस प्रकार से सिखाया गया है कि परमेश्वर ही है जिसके द्वारा उसे ये पुत्र मिला है और वो एक आत्मा है और ये नहीं कर सकता, समझे। अब यहाँ पर ध्यान दें, यदि आप इस पर ध्यान देना चाहते हैं कि मुझे प्रभु की ओर से एक पुरुष मिला है, देखिए आप इसे किसी और प्रकार से नहीं बोल सकते, परंतु इसका सही अनुवाद होना ही है। देखिए, जी हाँ श्रीमान, नहीं श्रीमान, यदि वो तब आत्मा और हम सदा अपने अभिभावकों के स्वभाव का अनुकरण करते हैं, आप ये जानते हैं, बालक को देखिए, स्वभाव ठीक है, तब आदम परमेश्वर का पुत्र था, हवा परमेश्वर की पुत्री थी, ठीक है, परमेश्वर की सृष्टि की पहली चीज जिसके अंदर दुष्टता का जरा सा भी अंश नहीं था, इस विषय में कहीं भी नहीं, दुष्टता जानकारी में भी नहीं थी, तब फिर केन क्यों एक झूठा था, एक हत्यारा और सब कुछ क्यों था, ये कहां से आया, अपने आप से ये प्रश्न पूछें, वो सर्प का वंश था, समझे, क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती। ध्यान दें, उसका वंश नीचे तक, इसमें वो हो गया, संसार किससे संबंधित है, शैतान, अब इस पर किसका नियंत्रण है, शैतान का, बिल्कुल ठीक, शैतान संसार का नियंत्रण रखता है, उसने यीशु को बताया, कहा देखिए ये कितना सुंदर है, सारी शान मैं ये तुझे दे दूंगा यदि तू मेरी आराधना करेगा, देखिए वो इस पर नियंत्रण रखता है, अब ये उसका है। अब ध्यान दें, उसके बालक बुद्धिमान है, शैतान के बालक या केन के बालकों को लें यदि आप चाहते हैं, और इसे नीचे वंशावली में से होते हुए लें, और आप पाएंगे कि वे चतुर लोग थे उनमें से प्रत्येक, परंतु जब उसने हाबिल को मार डाला और परमेश्वर ने उसे वापसी में शेद दिया, धर्मी का एक प्रतीक था, मरा हुआ होते हुए भी छुड़ाना और फिर से जीवित किया, और वहाँ से, अब ध्यान दें, न कि पहले बीच से स्वाभाविक के वे मर गए, अब आपके मस्तिष्क खुले हैं, समझे, शारीरिक बीज का पहला बीज साधारणतः अच्छा है, यह आधुनिक कलीसिया का एक प्रतीक है, हाबिल उस वंश को जो आगे बढ़ रहा था उसे सुरक्षित रखने के लिए कि एक मरा ताकि दूसरा वाला उठ सके, आप देखिए, इसलिए ये फिर से जन्म लेना होना है, आप समझे, ठीक है, बस ये आप समझ गए, देखिए, समझे, आप यही हैं, सिद्ध प्रतीक, ऐसे ही मनुष्य भी जो आदम से जन्मा उसका पिता स्वाभाविक प्रवृत्ति दर्शाता है, ये काम नहीं करेगा, स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को अनुभव नहीं करता, इसलिए एक मनुष्य स्वाभाविक आया था और मर गया, उसे फिर से छुड़ाने के लिए और हाबिल की मृत्यु में प्रतिनिधित्व किया शेद के द्वारा बदलने से। अब ध्यान दें, वे किस प्रकार के लोग थे जब वो आत्मा उसके द्वारा लाए गए, नम्र, किसान, चरवाहे, ध्यान दें, यहाँ इस संसार की बुद्धि से क्या आया, चतुर लोग, भवन निर्माण करने वाले, और धातु से और सब प्रकार के तेज बुद्धिमान और चीजें, देखिए उन्होंने ये कहाँ से लिया, वे वहाँ थे और परमेश्वर ने उनमें से प्रत्येक को नष्ट कर दिया, उनमें से प्रत्येक को और नम्रों को बचा लिया, क्या यीशु ने नहीं कहा मत्ती 5 में नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, इसलिए हाँ चिंता ना करें, उनके पास खड़े होने को एक पांव की भी जगह नहीं है, समझे, वे विश्वास नहीं करते कि वे केन के पुत्र हों, परंतु इस पर हमारे पास टेप है, यदि आप इसे सुनना चाहते हैं इसकी विस्तार में व्याख्या है, समझे, नहीं श्रीमान, और मैंने देखा कि अखबार में उनके पास एक टुकड़ा है जहां अब विज्ञान ये प्रमाणित करने जा रहा है कि हवा ने कभी भी सेब नहीं खाया था, उसने आड़ू खाया, समझे, मेरे पास यहां घर पर अखबार है कि ये आड़ू था, लोग कितनी दूर हो सकते हैं, ये शारीरिक बुद्धि है, देखिए, तब वास्तव में मूसा ने कभी भी जल को पार नहीं किया, वो पटेरों के सागर में से होकर पार हुआ, इसराइल को मृत सागर की ऊपरी वाले भाग के अंत से पार करा लाया, वहाँ पर पटेरों का झुंड था, पटेरों का पूरा सागर जहाँ पर एक समय पानी होता था वहाँ से निकले, और मूसा ने छोटा रास्ता लिया और घूम कर उस रास्ते से गया, और रूढ़ीवादी कलीसियाओं ने इसे मान लिया, आपने ये देखा है, रूढ़ीवादी कलीसियाओं ने इसे स्वीकार कर लिया है कि ये ऐसा ही था, ओ मनुष्य क्या आप सर्प के बीज को नहीं देख सकते, वो मसीह विरोधी और सारी चीज ठीक वहीं पर रखी है, निश्चय ही, जी हाँ श्रीमान, भाई ब्रणम मेरे छोटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, अच्छा ये प्रार्थना निवेदन है, मैं ये देखता हूँ, मेरे छोटे पोते के लिए प्रार्थना कर दें, फ्लू से बहुत ही बीमार है, वो रिवर व्यू होटल में है, प्रभु यीशु ये बेचारा व्यक्ति यहाँ इसे कभी भी बेकार में नहीं लिखता। उसने आपको वात ज्वर को भी जानबूझकर जबरदस्ती हटाते हुए देखा होगा। उस रात उस छोटे से लड़के पर से वो जानती है कि आप महान परमेश्वर हैं और हम अपनी प्रार्थनाएं उस छोटे लड़के के लिए करते हैं। यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए, आमीन। जब कोई किसी चीज को लिखता है तो वो ये बेकार में नहीं, वे उनको है कोई मतलब नहीं। हमें ये कितना साधारण सुन पड़ता है और ये कितना है, परंतु इसके पीछे कुछ है। आप देखिए, वो महिला, वो छोटा लड़का, कुछ
क्या एलिया जो यहूदियों को प्रचार करने आता है वही वास्तविक मनुष्य जो पृथ्वी पर रहा, या वो एलिया का आत्मा किसी और मनुष्य में होगा? अब मैं कहने से डरता हूँ, मैं नहीं जानता।
समझे, मैं इसे फिर से पढ़ दूँ। क्या एलिया जो यहूदियों को प्रचार करने को आता है, ओ हाँ, यही वास्तविक मनुष्य जो पृथ्वी पर रहा था, या वो एलिया का आत्मा होगा किसी और मनुष्य में? अब यदि मैं इसका उत्तर सही दे सकूं, मैं आपको हनोक के विषय में बता सकता हूं। देखिए, परंतु मैं ये नहीं कर सकता। देखिए, केवल एक ही बात है जो मैं जानता हूं, बस वचन कहता है जो ये होगा। और अब ये हो सकता है कि अब मेरा एक प्रकार से झुकाव है, अब मैं इसको इस प्रकार से कहूं, और मैं आशा करता हूं कि ये टेप भाई लोग टेप पर हैं, इसको समझेंगे। मेरा झुकाव इस विश्वास पर है कि ये एक अभिषिक्त हुआ मनुष्य होगा उसकी आत्मा से, क्योंकि देखिए वो कहता है क्या नहीं एलिशा पर, क्या एलिया का आत्मा एलिशा पर नहीं ठहर गया? देखिए, एलिया का आत्मा, और उसने ठीक वैसे ही किया जो एलिया ने किया। इसलिए यदि परंतु मैं नहीं कह सकता कि ये ही सत्य है, मैं नहीं जानता। मैं आपको आपके साथ ईमानदार हूँ, मैं नहीं जानता। भाई ब्रनम, क्या आप मेरे लिए इसका उत्तर देंगे? बपतिस्मे के विषय में मत्ती 28:19 सिखाता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और पतरस प्रेरित 2:38 प्रभु यीशु के नाम में। ये बदलाव कब आया प्रेरितों के कार्यों में? अब मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। अच्छा भाई या बहन, जिसने भी ये लिखा है, वहाँ कोई बदलाव नहीं था इस विषय में। देखिए ये, और पतरस ने ठीक वही किया जो यीशु ने करने को कहा। यदि कोई आकर और ये कहता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के उपनामों का प्रयोग करो, उन्होंने वही किया जो पतरस ने नहीं करने को कहा, परंतु जो परमेश्वर ने नहीं करने को कहा, समझे। अब यीशु ने कहा कि हम इसे थोड़ा सा लेंगे, मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान दें। अब ध्यान दें, यदि वो व्यक्ति यहाँ पर है, मैं किसी चीज के 3 टुकड़े रखने जा रहा हूँ। अब देखिए, ये पिता है, ये पुत्र है, ये पवित्र आत्मा है, जैसा कि त्रिएकता वाले लोग इसका विश्वास करते हैं कि ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, वे ये विश्वास करते हैं, समझे। अच्छा, फिर अब मैं, और फिर मत्ती 28:19 में यीशु ने कहा, सारे संसार में जाओ और प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। वो नहीं, मुझे क्षमा करना, अब मैं प्रेरितों का उल्लेख कर रहा हूँ, या प्रेरित 2 में, मैं विश्वास करता हूँ, नहीं, लूका 24:49 का उल्लेख दे रहा हूँ। उसने कहा, मैं इसे पढ़ दूँ तब ये मिलेगा। देखिए, और तब मैं निश्चित होना चाहता हूँ कि इसे सही लूँ। मैं जानता हूँ कि उपाधि जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, परंतु मैं वो लेना चाहता हूँ जो उसने कहा, 29:16 पद आरंभ करें। तब जैसा कि 11 खाने पर बैठे, तब वे 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब परमेश्वर का अधिकार कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? यदि स्वर्ग का सारा अधिकार और सारा अधिकार जो पृथ्वी का है दिया गया है, तो अब परमेश्वर कहाँ है? वो वहीं पर है, देखिए, वही जो आपसे बातें कर रहा है, ठीक है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब त्रिएकतावाद वाले इस गोले में घूमते हैं, मैं तुझे पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूँ। ये तो पवित्र आदेश में लिखा भी नहीं है, समझे? उसने कहा उन्हें पिता के नाम और पुत्र के और न कि इसमें, और हरेक के पहले नाम रखो, एक नाम। ध्यान दें, मत कहें उन्हें नामों में बपतिस्मा दो, नाम, एक नाम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, समझे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पिता नाम है, पुत्र एक नाम? यहाँ पर कितने पिता हैं? आप में से किसका नाम पिता है? यहाँ पर कितने पुत्र हैं? यहाँ पर कितने मनुष्य हैं? समझे? आप में से किसका नाम पिता, पुत्र या मनुष्य है? समझे? जैसे कि एक महिला ने एक बार कहा, वो बोली, भाई ब्रणम, पवित्र आत्मा एक नाम है, ये एक व्यक्ति है। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैं एक व्यक्ति हूँ, परंतु मेरा नाम व्यक्ति नहीं है, मैं एक व्यक्ति हूँ। देखिए, मेरा नाम विलियम ब्रणम है, परंतु मैं एक व्यक्ति हूँ। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, यही जो वो है, ये नाम नहीं है, ये व्यक्ति परमेश्वर की उपाधि है, समझे? ये परमेश्वर के व्यक्तित्व की एक उपाधि है जो वो है।
अब यदि उसने कहा, इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों को सिखाओ उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, ना कि पिता के नाम, पुत्र के नाम, पवित्र आत्मा के नाम में, या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों में नहीं, परंतु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। और यदि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम नहीं है, तो फिर इस विषय में क्या है?
कहते हैं यदि ये नाम है तो भाई कौन सा? आप इनमें से एक को नाम कहना चाहते हैं, इनमें से कौन सा नाम है? यदि आप उपाधि को नाम कहना चाहते हैं, तो कौन सी उपाधि से आप बपतिस्मा देना चाहते हैं, पिता या पुत्र? देखिए, ये एक वचन है। अब हम यहाँ निकालते हैं, और ये मत्ती की पुस्तक का अंत है, जैसे कि मैंने सदा से स्पष्ट किया है। यदि आप एक प्रेम कहानी पढ़ते हैं और कहा इसके बाद जॉन और मेरी सदा आनंद से रहे, देखिए, ये क्योंकि आप नहीं जानते कि जॉन और मेरी कौन थे। अपनी कहानी के आरंभ में जाएं और ढूंढें जॉन और मेरी कौन थे, समझे? अब यही जो आप यहाँ मती में कर रहे हैं, आप केवल इसका अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। आप मती के आरंभ की ओर जाएं और पढ़ें कि कहानी क्या थी। ये मती का अंतिम अध्याय है और अंत के पद, जैसा कि आपने एक पुस्तक ली और कहते हैं जॉन और मेरी उसके बाद सदा आनंदित रहे थे। जॉन जोन्स और मेरी अमुक अमुक, ये था नहीं, ये जॉन था, वो जॉन हेनरी था, वो अमुक अमुक था, ये जॉन कोई है, और आदि आदि नहीं, अभी आप नहीं जानते। आप देखिए, निश्चित होने के लिए केवल एक ही चीज करनी है कि पुस्तक में वापस जाएं और इसे पढ़ें। आप यहाँ एक टुकड़ा नहीं ले सकते, आपको सारी चीज एक साथ लेकर डालना है कि एक चित्र बने। अब मती में वापस जाएं, पहले अध्याय में ये जाता है और वंशावली देता है, और पहले अध्याय में नीचे आते हुए तब ये नीचे 18वें पद तक जाता है और कहा, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। क्या ये ठीक बात है? अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अब फिर से सुने। आप इसे पुकारते हैं, ये कौन है? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। अब ये क्या है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? पुत्र, ठीक है, अब हमें ये मिल गया। अब आपने इसे क्या कहा था? परमेश्वर, कौन? पवित्र आत्मा, ठीक है, अब ठीक है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो गर्भवती पाई गई। अब मैंने सोचा, आपने कहा परमेश्वर उसका पिता था, अब यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसके दो पिता नहीं हो सकते, आप ये जानते हैं, समझे? यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब इन पुरुषों में से कौन सा है? यदि वे तीन व्यक्ति हैं, इनमें से कौन सा उसका पिता है? यहाँ बाइबल स्पष्ट करती है कि वो पवित्र आत्मा के बालक के साथ पाई गई। परमेश्वर पिता का इससे कोई मतलब नहीं, और यीशु ने कहा परमेश्वर उसका पिता था, और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसका पिता था, तो उसके दो पिता थे। अब वो अवैध है, निश्चय ही। अब देखिए, आप अपने को कहाँ ले आए? अब तब यूसुफ उसका पति जो धर्मी पुरुष था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच ही में था, अब स्मरण रखें, वो एक अच्छा मनुष्य था और प्रभु का हाथ, हाथ जैसा अब वो जो पहले से ठहराए हुए, इसे समझ जाएंगे, समझे? परंतु जब वो इन बातों की सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। क्या आप अपनी बाइबल में देख रहे हैं? ठीक है, कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है परमेश्वर पिता। क्या मैंने इसे गलत पढ़ा? निश्चय ही, वो जो उसके गर्भ में है, उसका परमेश्वर पिता से कोई मतलब नहीं, ये पवित्र आत्मा। और अब हम जानते हैं कि परमेश्वर उसका पिता था, क्या ठीक बात है? इसलिए ये क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, निसंदेह। अब आप समझ गए, समझे? परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति है, या उसके दो पिता थे? और तब क्या, आप किस प्रकार के व्यक्ति की आराधना करते हैं? आपके पास किस प्रकार का परमेश्वर है अब? समझे, समझे? परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता स्वयं में एक ही आत्मा है, और वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम रखना, क्या उसका नाम, अब स्मरण रखें, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से। अब ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। किसके पास वचन आता है? कह रहा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का क्या नाम है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का क्या नाम है? बाइबल ने कहा उसका नाम यीशु था। एक व्यक्ति यहाँ है जिसने इस पर एक बार विवाद करने का यत्न किया, यहाँ आराधनालय में बोला, भाई ब्रैनम ने इन सबको हिला डुला दिया है, पर वो इसको नहीं हिलाएगा। कहा यहाँ ये तीन विभिन्न व्यक्तियों को दर्शाता है, बिल्कुल सही सिद्धता में। कहा मती का तीसरा अध्याय, यहाँ यहुन्ना खड़ा हुआ प्रचार कर रहा है, यहाँ पुत्र आता है बपतिस्मे के लिए आ रहा है, वो पानी में गया, यहुन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया था, वापस पानी से बाहर आ गया, और देखो, कहा और उसके लिए आकाश खुल गया, और कहा स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा, कह रहा है जैसे पंडुकी उतर रही है, और स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें तीन अलग अलग व्यक्ति ठीक एक ही समय में। ओह प्रभु, जी हाँ, ये दिखाने जा रहा है कि लोग बिना बपतिस्मे के हैं और सेवकाई के कार्यस्थल के लिए बुलाए नहीं गए, इनका प्रचार मंच पर कोई काम नहीं है। ये ठीक बात है। मैं उस व्यक्ति को ले सकता हूँ अब परमेश्वर की सहायता से, और इस प्रकार से बांध दूंगा कि ये उनके सर को घुमा देगा, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। क्या नहीं, मेरा अर्थ ये नहीं है, मैं ये ठीक सुन नहीं पड़ता, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मेरा ऐसा अर्थ नहीं था, अब मैं नहीं हूँ, मैंने अनुभव किया, मुझे इस पर रोका गया, देखिए, इसलिए मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है, इस प्रकार से मुझे खेद है। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पर ये प्रकट कर सकता है किसी भेद को, ये अधिक अच्छा है। ये ऐसा जैसे किसी औजार को घुमाना है, जब आप कुछ गलत करते हैं और आप ये बता सकते हैं कि एक मसीह के समान आपने कुछ गलत कहा, ये उसे अच्छा नहीं लगा, देखिए ये मुझे यहाँ ले आया था, समझे, मैं दृश्य में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपने आप को भी नहीं चाहता या कुछ भी नहीं, बस उसे कार्य करने दें। वही बोलता है, तुरही तो गूंगी है, आवाज इसके पीछे से है, वो जो आवाज करता है। अब देखिए, व्यक्ति ने वचन का गलत अनुवाद किया है, देखिए ये स्मरण रखें, ये समझदारों और बुद्धिमानों की आंखों से छिपा हुआ है, बालकों पे प्रकट हुआ। अब यहाँ वो व्यक्ति है, यीशु मसीह पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। अब स्वर्ग क्रम में ऊपर वातावरण है, अब ध्यान दें, और यूहन्ना ने गवाही दी। अब वो मनुष्य कहना चाहता था, यहाँ परमेश्वर पिता और यहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा एक पंडुकी के समान, और यहाँ परमेश्वर पुत्र है, तीनों व्यक्तियों को बनाता है, ये गलत है। यूहन्ना यहाँ पीछे खड़ा है, ये मालूम है कि वो मेमना था। यूहन्ना ने कहा, मेरे पास गवाही है, परमेश्वर के आत्मा को मेमने के समान देख रहा हूँ। मेरा अर्थ वहाँ परमेश्वर का आत्मा पंडुकी के समान है, मैंने उस रात्रि कहा था। अब वहाँ वही बात है, अब देखिए, बजाय 700 के, समझे, परमेश्वर का आत्मा ये यहाँ मेमना था, और परमेश्वर का आत्मा पंडुकी परमेश्वर था। परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से उतर रहा है, और एक आवाज स्वर्ग से कह रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ मेरे हाथ में दी गई है, समझे, 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 ये वो है। अब उसका क्या नाम था? निश्चय ही, समझे, जहाँ तक त्रिएकता वालों का मत है, तीन विभिन्न परमेश्वर होने के नाते ये मूर्ति पूजावाद है। ये बाइबल में कभी नहीं सिखाया गया था, ये सिंह के संदेश में कभी नहीं सिखाया गया था, परंतु इसे अगले वाले में अपनाया गया, जो कि मसीह विरोधी था। आप चाहें तो किसी से पूछें, किसी धर्म विज्ञानी से, ये कभी नहीं आया, केवल निकोलाइयों की शिक्षा के द्वारा। ये क्योंकि मार्टिन लूथर के साथ आया, इसी कारण ये जॉन वेस्ली के साथ बना रहा और पेंटिकॉस्टलों में उंडेला गया। उस दिन जिसमें पेंतिकोस्तल बाहर निकल कर आए उनके पास जीसस ओनली का झुंड था। अब ये फिर गलत है, कैसे यीशु अपना पिता हो सकता है, समझे? इसलिए ये इसे निरस्तर कर देता है। परंतु वहाँ एक उकाब का समय आना था, समझे? ये समय, ये उन सारे भेदों को सुधारना था, समझे? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये प्रभु यीशु मसीह की उपाधियाँ हैं। उन तीनों पर ध्यान दें। मती ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पत्रस ने कहा प्रभु यीशु मसीह। पिता कौन है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठ। क्या ये ठीक है? पिता, पुत्र, यीशु, पवित्र आत्मा, शब्द जो परमेश्वर से आया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पूरी रीति से व्यक्ति परमेश्वर की तीन उपाधियां हैं, जो तीन विभिन्न रीतियों से प्रकट हुई या उसके स्वयं के तीन गुण। अब इसे किसी को स्पष्ट करने के लिए जो नहीं समझेगा, ये एक ही परमेश्वर की तीन कार्यस्थल हैं। वास्तव में ये एक ही परमेश्वर के तीन गुण हैं। परमेश्वर तीन विभिन्न में व्यवहार कर रहा है, पितृत्व की अधीनता में, पुत्रत्व की अधीनता में, पवित्र आत्मा के प्रबंध में। परमेश्वर तीन में सिद्ध है। आपको याद है मसीह विरोधी नंबर चार में, समझे? परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह। जब आप केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, ये गलत है। केवल आपको यीशु नाम में बपतिस्मा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत से यीशुओं को जानता हूँ। क्यों? ग्रीक राष्ट्र में इन सब से भरे पड़े हैं यीशुओं से, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह है। ठीक ठीक बताएं, वो कौन है? बहुत सारे ब्रणम हैं यदि आप मेरे विषय में बात करना चाहते हैं, परंतु मैं एक विलियम मेरियन ब्रणम हूँ, ये मैं हूँ। परंतु और दूसरे बहुत विलियम ब्रणम और आदि आदि आसपास हैं, परंतु ये विशेष एक व्यक्ति को पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह। देखिए, अभिषिक्त किया हुआ उनमें से एक, अब ये ठीक बात है। इसलिए यदि वहाँ कोई इसका पिता है, आप एक पत्र या कुछ लिखते हैं, या कभी कभी जब मैं दूसरे प्रश्नों पर होता हूँ, मैं इसको लेने का प्रयत्न करता हूँ, इसलिए मैं देख सकता हूँ यदि हम इसमें से कुछ ले सकें, इन बीमार लोगों को जो पीड़ित हैं प्रार्थना के लिए। भाई ब्रणम, यदि ये प्रश्न उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं बैठता है, तो उत्तर ना दें। ये अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। कौन से बालक रैप्चर में जाते हैं? यदि कोई छोटा वाला, धन्यवाद, वे अपने नाम का हस्ताक्षर कभी नहीं करते। अब यदि आप नहीं करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है, परंतु देखिए, जब परमेश्वर ने एक नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में संसार के रचने से पहले लिखा, तो संसार में ऐसा कुछ नहीं था कि उसे मिटा सके, क्योंकि ये मसीह के लहू की स्याही से लिखा था। वो चाहे इतना बड़ा हो या उतना बड़ा हो, या ये जो भी हो सकता है, ये ठीक वैसे ही रहता है, समझे? सारे बालक, सारी कलीसिया, हर चीज वहाँ पर है, परमेश्वर है उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा। अब हम नहीं जानते, आप कहते हैं भाई ब्रणम, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि आप वहाँ हैं? नहीं श्रीमान, मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरा उपयोग किसी औजार के लिए कर सका, कि चीज के लिए, और आपका वैसे ही उपयोग किया, परंतु मैं विश्वास करता हूँ, और विश्वास के द्वारा मैं बचा लिया गया, ना कि मैं ज्ञान के द्वारा बचाया गया, विश्वास के द्वारा। इस प्रकार से आप बचाए गए, इस प्रकार से हम सब बचाए गए। परंतु स्मरण रखें, परमेश्वर अनंत है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? अनंत, अनंत होने के नाते वो उसे बनाता है, और फिर वो सर्वज्ञ है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ओमनी सेंस का अर्थ है वो सारी बातों को जानता है। बिना अनंत हुए वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। देखिए, उसके जाने बिना वहाँ कभी कुछ नहीं था। उसे हर कीट का मालूम था, वो जो कभी पृथ्वी पर होगा, और वो कितनी बार पलक झपकेगा, और वो कितनी चर्बी बनाएगा, एक साथ मिलकर वो कितने होंगे। वो आपकी हर सांस को जो आप लेंगे जानता है, और ये आपके फेफड़ों की कितनी गहराई में जाएगी, ये अनंत है। अब यदि वो अनंत है, ये उसे सर्वज्ञ बनाता है। क्या ये ठीक बात है? और यदि वो सर्वज्ञ है तो वो उसे सर्वव्यापी बनाता है, क्योंकि वो ठीक मिनट, घंटा, समय जानता है। वो क्षण के 55,000वें सेकंड के भाग को जानता है कि कब ये घटित होने जा रहा है, समझे? अब विचार को समझें, तब वो सारी बातें जानता है, और यही कारण है कि उसके पास सारी सामर्थ है, सारी चीजें जानता है, और सारी चीजें कर सकता है। अब आइए हम देखें, अब और सारे बालक जो परमेश्वर, हर कोई जो परमेश्वर, जब वे, अब स्मरण रखें, जब यीशु था, बाइबल ने कहा, अब हम जानते हैं कि यीशु 30 ईस्वी में मारा गया था, क्या ठीक बात है? ये लगभग, ये वर्ष के लगभग मध्य में था, मैं समझता हूँ 30 ईस्वी। अब परंतु बाइबल ने कहा कि इसके पहले कभी संसार की सृष्टि हुई थी वो घात किया गया था, और आपका नाम जब मेमने की पुस्तक जब मेमना घात किया गया था कि इस पुस्तक को छुड़ा ले। अब यहाँ एक महान बात है, ये उत्तेजना का कारण हो सकती है। देखिए जब मेमना, अब स्मरण रखें, बाइबल ने कहा जब मेमने के जीवन की पुस्तक संसार की सृष्टि से पहले लिखी गई और आपका नाम उसमें लिखा गया था, उस पुस्तक में था, जब मेमना संसार के रचने से पहले मारा गया, कि हर नाम को जो उसमें लिखा है छुड़ा ले। समझे? अब आप ये समझे? देखिए, कुछ भी क्रम से बाहर नहीं है, ये ठीक वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे परमेश्वर की बड़ी घड़ी। देखिए, जैसे घड़ी घूम रही है, आपका नाम वहाँ संसार के रचने से पहले डाला गया, जब मेमना मारा गया कि उन्हें छुड़ा ले जो इस पुस्तक में थे, और अब वो पुस्तक लेने के लिए सामने आता है कि अपने छुड़ाए हुओं का दावा करे। मैं इसे आरम्भ नहीं करना चाहता, नहीं तो दूसरे प्रश्नों का उत्तर आज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, प्रश्न, क्या नरक और वो झील जो आग और गंधक से जलती है एक ही चीज है? नहीं, नरक बाइबल का अनुवाद, मैं विश्वास करता हूँ अब यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं और मैं इसका सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे भाई इवर्सन यहाँ पर बैठे हैं और भाई वाइल, और इनमें से बहुत से भाई जो कि वास्तव में धर्म विज्ञानी हैं। हेल्ड शब्द का अनुवाद जिसका अर्थ कब्र है, क्या ये ठीक बात है? कब्र के लिए यूनानी शब्द, परंतु आग की झील कुछ और है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में दोनों कब्र और सब आग की झील में डाले गए। समझे? ठीक है, अब आइए हम देखें, यदि नहीं, क्या आग की झील और नरक अनंत है? नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान, कोई भी चीज जिसकी सृष्टि की गई थी अनंत नहीं है। नहीं, कोई भी चीज जिसकी सृष्टि की गई है, यही कारण है कि अनंत नरक नहीं हो सकता। यदि कोई कभी आपको ये बताता है कि आप अनंत नरक में जलने जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए वचन चाहता हूँ। समझे? वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। नरक शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए सृजा गया है, मसीह विरोधी और उसके लोग, ये शैतान था, अवतरित शैतान, ये इसके लिए सृजा गया कि नष्ट कर दे। और कोई चीज जो थी, कोई भी चीज, केवल एक ही चीज है कुल मिलाकर हर चीज में से, सारा संसार और हर चीज, केवल एक ही चीज अनंत है और वो परमेश्वर है। इसके पहले कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन था, या इसके पहले यहाँ तक कि अंतरिक्ष किरण होती, इलेक्ट्रॉन या कोई चीज, वो परमेश्वर था, वो सृष्टि करता है। और केवल एक ही मार्ग है कि आप अनंत हो सकते हैं, कि अनंत जीवन प्राप्त करें। ये वहाँ यूनानी शब्द है, मैं सोचता हूँ जोई, क्या ये सही नहीं है? जोई, जोई। और तब वो जीवन परमेश्वर आपको प्रदान करता है, जैसे पिता आपका पिता अपना जीवन आपको प्रदान करता है उस वैवाहिक वाचा से माता के साथ, और वो उसके द्वारा प्रदान करता है, प्रदान करने का आनंद। मुझे समझिए, पुत्र को जीवन प्रदान करने के लिए, और इसी प्रकार परमेश्वर करता है उसके जीवन को पुत्र को प्रदान करने का आनंद। समझे? और तब आप उसका भाग हो जाते हैं जो कि जोई है, परमेश्वर का अपना जीवन। मैं उनको अनंत जीवन देता हूँ, अंतिम दिन उन्हें उठा खड़ा करूँगा। केवल यही एक चीज है कि आपको अनंत जीवन मिला, और वो अनंत जीवन अपनी देह को जानता है, और इसे सामने आना ही है ताकि ये सके। इसके लिए वहाँ पड़े रहना असंभव है, जैसे कि मसीह का आत्मा देह पर मंडराता है, परमेश्वर का आत्मा मसीह पर उस महान दिन में। इसे मालूम था कि ये फिर से उठ खड़ा होगा, ऐसे ही संत लोग अपनी देहों में। अब स्मरण रखें, जब यीशु मरा वो नरक में गया, क्योंकि उसे वहाँ जाना ही था, वो पापों को उठाने वाला था, और उसने उन प्राणों को प्रचार किया जो वहाँ नरक में थे, जिन्होंने नूह के धैर्य के दिनों में प्रायश्चित नहीं किया। ठीक बात है, वो नरक में गया और प्राणों को प्रचार किया, परमेश्वर से अलग हुए प्राण, मृत्यु का अर्थ अलग होना, और वे परमेश्वर से अलग हो गए थे, फिर कभी भी वापस ना जा सके। और यीशु गवाही के लिए गया कि वो वही था जिसके विषय में बोला गया था, वो स्त्री का वंश है। सर्प का वंश। देखिए सर्प वंश ने क्या किया, मसीह विरोधी मृत्यु के अलगाव में समेट लिया गया। वो लाल घोड़ा स्त्री के वंश का जीवन सफेद घुड़सवार पर समापन होता है। यीशु मसीह, समझे ये क्या है, एक दूसरे के विरोध में, सर्प का वंश स्त्री वंश के विरोध में। अब आप समझ गए। ओ हम इस पर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, क्या ये अच्छा नहीं होगा, परंतु हम इसी के साथ बने रहें। भाई ब्रनम, क्या ये पहला घुड़सवार पहली मोहर दूसरे थिस्सलुनीकियों को पूरा करता है, पाप के पुरुष का प्रगटीकरण? जी हाँ, ये ठीक बात है, ये करता है, ये सरल है, ये करता है। ये पाप का पुरुष है, वही पुरुष स्थितियों में बना रहता है, तब तक घुड़सवारी करता है जब तक कि पीले घोड़े पर ना आ जाए, जो कि मृत्यु कहलाता है। मसीह न्यायोचित पवित्रीकरण से होता हुआ सफेद घोड़े पर आता है, और यही वो जीवन है आप देखते हैं। वे नया जन्म पाए हुए विश्वासियों का क्या होता है जो विभिन्न नामधारियों में है परंतु मसीह की दुल्हन में नहीं है, उनका क्या हुआ? अच्छा, मैं सोचता हूँ हमने इसकी व्याख्या कर दी है थोड़ी देर पहले, समझे। वे विपत्तियों में जाते हैं, कष्ट में ये शहीद हुए हैं, सरस शताब्दी के बाद अंत में अपने न्याय के लिए आते हैं, समझे, क्योंकि बाइबल ने कहा बाकी जीवित, बाकी मरे हुए जब तक हजार वर्ष न बीते तब तक न जिए। तब वहाँ पुनरुत्थान था, और तब दोनों धर्मी और अधर्मी आते हैं, और उनका मसीह और दुल्हन के द्वारा न्याय किया गया। वो पृथ्वी पर अपने हजारों हजारों संतों के साथ आया, क्या ये ठीक बात है? उसकी दुल्हन न्याय किया गया था, पुस्तकें खोली गई थी, और दूसरी पुस्तक खोली गई जो कि जीवन की पुस्तक थी, वो वहाँ से अलग किया गया, बकरियों को भेड़ों से, क्या ठीक बात है? इसका दुल्हन से कुछ भी मतलब नहीं था, वो ठीक वहाँ न्याय पर खड़ी थी अपनी रानी के साथ, रानी और राजा एक साथ। वो अपने संतों के साथ आया, हजारों हजार लोगों ने उसकी सेवा की, उसकी पत्नी, तब न्याय किया गया, और फिर भेड़ बकरियों से अलग की गई। इसमें रहे, उस रात्रि मैं छोटा सा मनन करने लाया ताकि आप इसे समझ सकें, वो चरवाहे का ध्यान करना, समझे, आप वही हैं। नहीं, वे, ये वे, वो कलीसिया, वो लोग जो नामधारियों में हैं, ये वास्तव में मसीही हैं, जिन्होंने संदेश ग्रहण किया, और वे इसे कभी नहीं देखेंगे, ये उन्हें कभी भी प्रचार नहीं किया जाएगा, और वे मिलीजुली भीड़ में हैं, जिन्हें ये प्रचार किया गया, ये ठीक उनके सिरों के ऊपर से निकल गया, जब तक कि उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं थे। जी हाँ, परंतु वे अच्छे लोग होंगे, और वे फिर से जिलाए जाएंगे, और मुकदमा होगा, उस झुंड के द्वारा न्याय किया जाएगा जिन्होंने ये उन्हें प्रचार किया। क्या आप नहीं जानते कि संत लोग पृथ्वी का न्याय करेंगे? उन लोगों को प्रचार किया जाएगा, इन्हें प्रचार किया जाएगा, इन्हीं लोगों के द्वारा उन पर संदेश की गवाही दी जाएगी कि इसमें से निकलकर बाहर आओ, समझे। मैं आशा करता हूँ ये इसकी व्याख्या करता है। यहाँ मेरे पास बहुत सारे हैं जो भाई ब्रनम, क्या सातवां दूत एलिया की आत्मा के साथ, वही मनुष्य जैसे एलिया 144,000 यहूदियों के पास भेजा गया रैप्चर के बाद 3.5 वर्षों के समय में, हम में से कुछ इसमें गड़बड़ा गए? नहीं, वो नहीं है। देखिए, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एलिशा जो एलिया के रूप में आया, एलिया नहीं था, और एलिया का आत्मा जो उस मनुष्य के ऊपर आया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहलाया, एलिया नहीं था। और सातवां संदेशवाहक दूत वो मनुष्य लुदेकिया काल के अंत में, वो स्वाभाविक वही एलिया नहीं होगा, वो अपने लोगों के लिए अन्य जाति होगा, एलिया होगा, या तब एलिया का आत्मा होगा भीतर आ रहा है वहाँ लोगों को, वो एक यहूदी होगा। देखिए, क्योंकि वे अपने लोगों के पास भेजे गए, ये मेरा प्रकाशन है, कारण कि मैं टॉमी ऑसबर्न का, जब हमने इस पर बातें की उस समय, टॉमी और मैं, मुझे कभी नहीं मालूम था, मैं बस बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं वहाँ पर आया, और वहाँ एक महिला फोर्ट वेन गॉस्पल चर्च से आई थी, विदेश के क्षेत्र में एक मिशनरी, उसकी छाती इतनी बड़ी थी, कैंसर के द्वारा खाई हुई थी, और वो ठीक वहाँ छोटे से घर में थी जहाँ हम रहा करते थे, वहाँ गली में, और मैंने प्रिय बहन के लिए प्रार्थना की, और वो चंगी हो गई थी और वापस कार्य क्षेत्र को लौट गई। और जब वो अफ्रीका से आई तो वो एक छोटी सी पुस्तक उन मिशनों पर छोड़ गई। मैंने सोचा मिशनरी अच्छे लोग होते हैं और मैंने मिशनरियों के विषय में ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा था, और इसलिए मैंने सोचा भाई वे बस परमेश्वर के एक कार्यस्थल हैं वहाँ बाहर, इसलिए ये मेरा स्थान ठीक यहाँ पर है इस 8वें पेन स्ट्रीट पर। इसलिए मैं अपने सबसे अच्छे से आगे बढ़ रहा था जितना कर सकता था। परंतु एक दिन अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए मैंने उस पुस्तक को उठाया और उसमें एक नीग्रो जाति के पुरुष का चित्र था, एक बूढ़ा पिता, और उसके चारों ओर सफेद बालों की लाइन थी, और नीचे इस प्रकार से लिखा हुआ था, श्वेत मनुष्य तुम्हारा पिता कहाँ था। देखिए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बुद्धि से मंद, और मैं अब अच्छी तरह से नहीं समझता। यदि जब मैं युवा था तब यीशु को जानता तो मैं उसे अपने लोगों के पास ले जाता। भाई मैंने इसे पढ़ा और कोई चीज मुझसे निरंतर कह रही थी, इसे फिर से पढ़ो। मैं पढ़ता रहा। ओ, आपके पास समय आता है कि बार बार इसे पढ़ें। वहाँ इसमें कुछ है। जैसा कि उस दिन ग्रीन मिल पर जब मैं गुफा से बाहर निकल कर आया, मैं उसे नहीं समझ सका कि कैसे लोग अन्य भाषा में बोलते चिल्लाते और सच्चे पवित्र आत्मा के साथ और फिर भी मसीह विरोधी हैं। अन्य भाषा बोलते सच्चा पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोल रहा है और फिर भी एक शैतान। ये ठीक बात है, मैं ये आपको सिद्ध कर सकता हूँ। जी हाँ, सही में। और तब ध्यान दें, जब वे वहाँ खड़े थे, इसलिए भाषाएं पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं है, ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है, समझे। और शैतान हर चीज की नकल कर सकता है जो उसके पास है, दिव्य चंगाई और सारी चीजें। उसने कहा, उस दिन बहुत मेरे पास आएंगे और कहते हैं, प्रभु क्या मैंने शैतान को नहीं निकाला, क्या मैंने नहीं ये सुसमाचार को प्रचार करना है, क्या मैंने आपके नाम से सामर्थ के कार्य नहीं किए। और वहाँ वे सारी बातें, मैं कहूँगा मुझसे दूर हो जाओ, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तो तुम्हें कभी जाना भी नहीं। बाइबल ने कहा कि वर्षा धर्मी और अधर्मी पर एक सी ही पड़ती है, और वो छोटा धतूरा वहाँ गेहूं के खेत में खड़ा है, वो उसी जल से जो उस पर गिरता है आनंदित और चिल्ला सकता है, जैसे कि दोनों पर वर्षा भेजी गई, परंतु उनके फलों से तुम उन्हें जान जाओगे। वो छोटा पुराना धतूरा वहाँ खड़ा हो सकता है और ऐसे ही आनंदित और चिल्ला सकता है जितना कि वो सकता है, जैसे कि उस वर्षा की भरपूरी गेहूं के लिए है। आप वहीं पर हैं, इसलिए वे चिल्ला भाषाओं में बोलते हैं और हर चीज की नकल जो वे चाहते हैं कर सकते हैं। उस दिन में कुकर्म के करने वाले कहलाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सुनिए जो मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनिए, पीछे मुड़कर देखिए और अपने आप को वचन से जांचें और देखें कि आप कहाँ पर हैं। आप स्त्रियों जिनके बाल कटे हुए हैं, उसके बाल बढ़ने दो। आप छोटे कपड़े पहन रही हैं, उन्हें उतार दो और एक महिला के समान व्यवहार करें। आप पुरुषों, अब आप भी धूम्रपान कर रहे हो, स्नान गाहों में तालाबों पर भागते फिर रहे हो, इसे बंद कर दो। मैं चिंता नहीं करता कि आप कितना दावा करते हैं। यदि आप अब भी उन संस्थाओं को थामे हुए हैं और ये कह रहे हैं ये है और ये है, अच्छा है कि आप रुक जाएं, वापस मुड़कर देखें, इसे वचन से जांचें। हम साहूल से बाहर निकल रहे हैं, हमें छोटे बालों और सबसे ऊपर रहना चाहिए था। अब ये वो युग है, अब हम वापस किसी चीज के पीछे हैं जो परमेश्वर प्रकट कर रहा है, वे छिपे हुए भेद जो पुस्तक में जगत की उत्पत्ति से पहले लिख दिए गए थे, और वे जो इन छोटी छोटी बातों का पालन करते हैं, वे इसे उन दूसरी बातों में समझ जाएंगे। यदि उनके पास नहीं है तो ये उनके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है। ये बस जैसे गिदोन अपने लोगों को अलग कर रहा था, वहाँ हजारों हजार थे, परमेश्वर ने कहा ये तो बहुत हैं, इन्हें फिर से अलग कर। उसने उन्हें दूसरी परीक्षा दी और उन्हें फिर से अलग किया, और बढ़ते हुए जब तक थोड़े मुट्ठी भर, उसने कहा ये झुंड है, मैं चाहता हूँ कि ये कार्य को करें। ठीक यही जो हुआ। पेंतिकॉस्टल स्त्रियाँ आ जा रही हैं, वहाँ बैठी हुई सुन और जान रही हैं वचन के द्वारा। ये गलत है, आप सोचते हैं वे इसका सामना करेंगी, नहीं श्रीमान। हर वर्ष जब मैं यहाँ से होते हुए निकलता हूँ तो जब मैंने आरंभ किया था उससे अधिक कटे हुए बालों के साथ होती हैं। कहा इससे क्या करना है, आपको चाहिए। किसी ने कहा क्यों भाई ब्रणम, लोग आपका भविष्यद्वक्ता के समान आदर करते हैं। अब मैं नहीं कहता कि मैं एक भविष्यद्वक्ता था, किसी ने मुझे ये कहते हुए नहीं सुना, परंतु मैं ये कहूँगा यदि आप ये करते हैं, यदि आप ये समझते हैं। कहा आप क्यों नहीं लोगों को सिखाते कि पवित्र आत्मा कैसे पाएं और इसे कैसे प्राप्त करें और कैसे बड़े आत्मिक वरदान पाएं और कलीसिया की सहायता करें। मैं उनको कैसे बीजगणित सिखा सकता हूँ जब वे अपना कह कह गए भी नहीं सुनते। ये ठीक बात है, आप ये छोटी चीजें करते हैं, वहाँ नीचे तलहटी में जाकर इसे साफ करें और सही आरंभ करें। आमीन। ठीक है, जो भी है, मैं किस विषय में बातें कर रहा था, आइए देखिए मेरा क्या अर्थ है, विषय से हटने का नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए ठीक है, कुछ हम में से कुछ गड़बड़ा गए। क्या एलिया वैसे है जैसे? जी हाँ, ओ ये ठीक बात है। नहीं, ये एलिया अन्य जातियों के पास आएगा, एक अन्य जाति होगा जो उस आत्मा से अभिषिक्त होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसी आत्मा का उपयोग किया कि अपने लोगों को हर बार उस अव्यवस्था से बाहर ले आए, और इसने उसके उद्देश्य को पूरा किया, इसलिए वो फिर वहाँ वापस आता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि अब यदि वो ऊंचे चमकदार शिक्षक का उपयोग करता है, उसी प्रकार के इसे समझेंगे। वो एक मनुष्य को लाता है जो कठिनता से अपना कहे गए जानता है और उसके वचनों का उच्चारण ठीक से नहीं कर सकता, और हर चीज इस प्रकार से कोई बूढ़ा जंगल में से कुछ वहाँ सामने से कहीं इसे भीतर लाता है और ढकेलते हुए सादे विचार वाले लोगों के पास लाता है, और वे इसे इस प्रकार से समझ जाते हैं, वे इसे समझ लेते हैं। देखिए, यदि ये आता है और कॉलर, जैसे पौलुस ने कहा, मैं तुम्हारे पास चमक धमक वाली शिक्षा के साथ नहीं आया, परंतु तुम्हारे पास पुनरुत्थान के सामर्थ्य में आया। परमेश्वर ने इसके लिए 3.5 वर्ष के लिए वहाँ अरब में कि उसकी शिक्षा को उसमें से बाहर कर दे, मूसा में से निकालने के लिए 40 वर्ष लिए, समझे? इसलिए आप वहीं पर हैं। ये मैं नहीं कहता कि परमेश्वर नहीं, मैं अनपढ़ होने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षा को नहीं लेता है। नहीं, इस संसार की बुद्धि विपरीत है। शिक्षा सुसमाचार के लिए एक बड़ी रुकावट है जो कभी हुई। यदि हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हमारे पास ये सब बड़े धर्म विद्यालय नहीं होते, और बातें जो अब हमारे पास हैं, ये सादे विचार वाले लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, परंतु वे इतने समरे और गड़बड़ हैं और वहाँ से इतने जकड़े हुए हैं, यद्यपि वे संस्थाएं यहाँ तक कि उसी के साथ टिके हुए हैं, बस वे उसी आत्मा को लेते हैं। क्या आपने कभी किसी अच्छी स्त्री पर ध्यान दिया जिसने नीच पुरुष से विवाह किया? वो नीच पुरुष या तो अच्छा हो जाएगा जैसी स्त्री है, या वो स्त्री नीच हो जाएगी जैसा वो है, समझे? ये ठीक बात है। यही कारण है कि उसने कहा उनके बीच में से बाहर आ जाओ, जबकि मैं उस रैप्चर को लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आपके पास किसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए जो आपको यहाँ से बाहर ले जाएगा। डेनियल 9:27 की वाचा कब थी? एक सप्ताह के लिए पक्की थी, आधी तो पक्की हो चुकी। वो वाचा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर यहूदियों को प्रचार कर रहे थे, वो अन्य जातियों के पास कभी नहीं गया, बिल्कुल नहीं, और उसने अपने चेलों को बताया अन्य जातियों के पास नहीं जाना, ये केवल यहूदियों के लिए है, समझे? और उसने 3.5 वर्ष प्रचार किया, ये 17वें सप्ताह का आधा है। अब जैसे डैनियल ने कहा वो करेगा। अब स्मरण रखें, वो यहूदियों पर दृढ़ता के साथ प्रमाणित हुआ, परंतु उनकी आंखें अंधी की गई थी कि इस स्थान में अन्य जाति को लाए। क्या आप सारी योजना को नहीं देख सकते, समझे? और उसने अपने आप को एक भविष्यद्वक्ता सिद्ध किया, ठीक वही किया जो भविष्यद्वक्ता करेगा। उन्हें एक भविष्यद्वक्ता का चिन्ह दिखाया जो कि तुम्हारे ही वचन ने कहा, यदि एक मनुष्य कहता है कि वो आत्मिक है या एक भविष्यद्वक्ता, तो ध्यान दें वो क्या कहता है, और यदि वो घटित हो जाए और बस निरंतर घटित होता रहे जो उसने कहा होता रहे, जैसा कि आप बाइबल में देखते हैं, इसने कहा खटखटाओ ये तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो पाओ, मांगो दिया गया। अब यदि आप ध्यान देंगे, ये खटखटाता है, बस लगातार खटखटाता है, वही टिके रहे। जैसा अधर्मी न्याय स्त्री को उत्तर नहीं देगा, वह उसके दरवाजे पर खटखटाता रहता है, कहे मैं तेरे पीछे हूँ, खोजे नहीं, कहे प्रभु मैं इसको लेना चाहूँगा, आमीन, ये वो नहीं है, वहीं पर टिके रहे जब तक आप इसे नहीं ले लेते। आप जानते हैं ये आने वाला है, इसलिए उसने इसकी प्रतिज्ञा की है, इसलिए ठीक वहीं बने रहें जब तक आप इसे पकड़ ना लें, समझे? अब अंतिम भाग में, 70वें सप्ताह के अंतिम भाग में, ये विपत्तियों के काल में होगा, कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद, तब वहाँ वो 3.5 वर्ष होंगे, यहाँ इनकी पुष्टि फिर से उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा होगी। देखिए, मूसा और एलिया, प्रकाशित वाक्य 11। अब आइए देखते हैं ये क्या है। यदि आप उसके एक चुने हुए हैं, क्या आप ऊपर दुल्हन में जाएंगे? जी हाँ, ओ जी हाँ श्रीमान, ये सरल है। भाई बनम, क्या आपका कहने का अर्थ 7,000 था जिन्होंने अपने घुटने बाल के सामने नहीं झुकाए थे, या 700? मेरे कहने का अर्थ 7,000 था, इसके लिए मुझे क्षमा करें। देखिए, ये बस बोलने का एक प्रकार है। मैं जरा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, क्या आपने, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ध्यान दिया? मैंने कहा और उनके पास गवाही है, मेमना देख रहे हैं, समझे? समझे, मेमना पृथ्वी पर था, समझे? इसकी गवाही है परमेश्वर के आत्मा को मेमने के ऊपर उतरते हुए देखते हैं। अब वहाँ पर इसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। आप समझे, अब ये वास्तविक यूनानी के रूप में है। क्रिया को क्रिया विशेषण के पहले रखते हैं, परंतु आप यहाँ ध्यान दें, वास्तव में ये ऐसे है। अब जरा एक शब्द को लें, देखिए बाइबल कहती है, संत याकूब के अनुवाद में यहाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। परंतु वास्तव में यदि हम इसे इस प्रकार से कहेंगे, जैसे आज हम कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके अंदर रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ, आप इसे घुमा देंगे, देखिए, समझे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ, समझे। अब हम इसे आज कहेंगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अंदर रहने के लिए प्रसन्न हूँ, देखिए वही शब्द, इसे जरा सा घुमा दिया, समझे। अब हाँ, मेरा अर्थ, कृपा करके मुझे क्षमा कर दें, मैं और भाइयों, आप जो वहाँ टेप पर हैं, और मित्रों सुनिए, मेरा इस प्रकार से कहने का ये अर्थ नहीं था। मैं सुसमाचार का सेवक हूँ। बहुत सी बार जैसा कि मैंने ये प्रचार किया है, मैं जानता हूँ कि ये 7,000 था, बस ये हो गया कि 700 कहा, मेरा अर्थ 700 नहीं था, मेरा अर्थ आप, मैंने इसे वचन में से नहीं पढ़ा था, बातें करते हुए ये मेरे विचार में आया था, और बस मैंने 700 कहा बजाय 7,000 के। सारे समय मैं ये गलतियाँ करता हूँ, मैं निश्चय ही मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करें, समझे, मेरे करने का ये अर्थ नहीं था। क्या मसीह की दुल्हन और मसीह की देह एक ही है? जी हाँ श्रीमान, समझे। अब यहाँ, अब देखिए, मैं इस पर आरंभ नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास इस पर एक प्रचार करने के लिए उपदेश है, देखिए, परंतु मैं ये करना चाहता हूँ, परंतु मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने आदम को उसकी पत्नी उसके एक ओर से दी, उसने कहा, ये मेरे मांस में का मांस है और मेरी हड्डी में की हड्डी। क्या ठीक बात है? जब परमेश्वर ने मसीह को उसकी दुल्हन दी, आत्मा ने देह दी, दुल्हन, उसे घूंसे मारे, एक ओर से छेदा गया हृदय के नीचे से, और पानी, लहू और आत्मा बाहर आया, वो उसके मांस में का मांस हो गया और उसके हड्डी की हड्डी। हम मांस और हड्डी हैं, दुल्हन मसीह की देह और हड्डी होगी, बिल्कुल ठीक, वे लोग, ये उसकी दुल्हन है। क्या मसीह की दुल्हन होगी? क्या मसीह की दुल्हन की सेवकाई उठा लिए जाने से पहले होगी? निश्चय ही, यही जो अब चल रहा है, देखिए, मसीह की दुल्हन, निश्चय ही ये घड़ी का संदेश, देखिए, मसीह की दुल्हन, निश्चय ही ये प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, शिक्षकों, सुसमाचार फैलाने वालों और पास्टरों से बनी है। क्या ये ठीक बात है? यही मसीह की दुल्हन है, निश्चय ही उसकी एक सेवकाई है, महान सेवकाई, समय की सेवकाई, ये बहुत नम्र होगी। अब स्मरण रखें, कितने यहाँ पर थे पहले पहल, जब मैं बीते रविवार, देखिए, याद करें मैंने किस पर प्रचार किया, नम्रता। ओह, इसे ना भूलें, मैं एक मिनट के लिए रुकने जा रहा हूँ, फिर से चेतावनी दे दूँ। स्मरण रखें, जब परमेश्वर किसी महान चीज की घटित होने की भविष्यवाणी करता है, लोग अपनी बुद्धि से इतने दूर देखते हैं जब तक कि वे चूक ना जाएं कि क्या घटित हुआ। जब परमेश्वर किसी चीज को महान कहता है, संसार उस पर हंसता है, अज्ञानियों का झुंड, ये ठीक बात है। परंतु जब महान संसार और बड़ी ऊंची कलीसिया ने कहा, लड़के ये महिमामय है, परमेश्वर कहता है, एक अज्ञानियों का झुंड। इसलिए देखिए, आपको ध्यान देना होगा, मेरा ये अर्थ नहीं है कि ये इस प्रकार से हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से, परंतु ये ऐसे ही है। देखिए, यहाँ एक महान होली ऑर्थोडॉक्स कलीसिया थी, हम वचन को जानते हैं, हमारे पास विद्यालय है, हमारे पास धर्म विद्यालय है, हमारे पास हमारे बहुत शानदार पुरुष हैं। क्यों हम सैकड़ों वर्षों से हम यहोवा के प्रति निष्ठावान रहे हैं, हम कलीसिया हैं, हम सन्हेदरीन हैं, हमारे पास कलीसियाओं के महासभा है, फरीसी और सदूकी दोनों और सारे नामधारी एक साथ इकट्ठे हैं, जैसा कि हम हो रहे हैं, समझे, हम सब एक में हैं, कलीसिया की महासभा में, हम यहाँ बड़े लोग हैं, हम वो वचन जानते हैं जो कि कोई मामूली अज्ञानी व्यक्ति वहाँ नदी पर है, उसके चेहरे पर दाढ़ी लटक रही है और भेड़ की खाल का एक टुकड़ा हमें बता रहा है, निश्चय ही वे इसे नहीं सुनेंगे। परंतु बाइबल ने मलाकी 4 में कहा, या 3 अध्याय में, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे भेजता हूँ कि मेरे लिए मार्ग तैयार करे, यूहन्ना से 712 वर्ष पहले वो महान भविष्यद्वक्ता यशाया वहाँ खड़ा था और कहा, वहाँ जंगल में एक पुकारने वाला शब्द होगा, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ठीक बात है। और कहा, और ओ उनमें से बहुत से कहा ऊंचे स्थान नीचे किए जाएंगे, ओ उन्होंने कहा वहाँ एक होगा, जब ये व्यक्ति आता है तो वो अपनी उंगली से संकेत करेगा और वो पहाड़ों को हिला देगा, ओ और सारे नीचे स्थान गड्ढे ऊपर उठाए जाएंगे, तब सब वे ऊंचे नीचे स्थान बराबर कर दिए जाएंगे। भाई हम यहाँ चारों ओर हर खेत में बीज बोएंगे और ओ हम महान चीजों को करने जा रहे हैं जब ये मनुष्य आता है, समझे। वे आशा कर रहे हैं कि परमेश्वर उस महान चक्के को लेकर और इसे घुमाता है, गलियारे को नीचे लाकर कहता है, तुम महान मेरे मसीह के आगे आगे चलने वाले नीचे आ जाओ। और जैसे ही वो चला गया वे इसे ऊपर खींच लेते हैं और उसकी सेवकाई पूरी हो गई। वे इसे फिर नीचे झुकाते हैं और उसे ठीक धर्म विद्यालय के बगल में टिकाते हैं और कहते हैं, ठीक है मेरे प्रिय पुत्र, नीचे जाकर उन्हें बता दो, समझे। ओ प्रभु, देखिए जब वो आता है जो कुछ भी घटित हुआ। यहाँ वो मनुष्य आया जो उनके विद्यालय के विषय में कुछ नहीं जानता था, उसके पास संगति पत्र तक नहीं था, ओ कोई भी परिचय पत्र नहीं था, कोई भी नहीं जानता कि वो कब वो अपने जीवन में विद्यालय गया, यहाँ तक कि आप उसकी बातों से भी नहीं बता सकते। उसने यहाँ तक कि अपने पुरोहित की भाषा में भी बात नहीं की। उसने सांपों, कुल्हाड़ी और जंगल के विषय में बातें की और इस प्रकार की बातें। देखिए पेड़, उसने उस समय के पुरोहितवाद परिभाषित शब्दों में बातें नहीं की, या इस दिन के या किसी और दिन के, जैसा कि हम यहाँ इंडियाना में कहते हैं, वो सासाफरस आया, वो कहीं झाड़ियों में से आया, यहाँ तक कि दाढ़ी भी नहीं बनाई और उसके सिर पर बाल खड़े थे। मैं कल्पना नहीं करता कि वो नहाया भी होगा दो या तीन महीने में एक बार। ठीक है, उसने रात में कभी पजामा नहीं पहना, वो कभी मोटर गाड़ी में नहीं चढ़ा, उसने कभी दांत नहीं मांजे। ओ प्रभु, ये कैसा व्यक्ति था, निश्चय ही नहीं। यहाँ वो आता है जंगल में से निकलता हुआ इस प्रकार से, जिसने कहा, मैं वो आवाज हूँ जो जंगल में पुकार रही है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। कुछ शिक्षक वहाँ खड़े हुए बोले, ओ कहते हैं, साथियों क्या आपके पास आपका इस अभियान में हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम ये नहीं कर सकते। भाई आपका कहाँ है, आपका कार्ड कहाँ है, आपका प्रमाण पत्र कहाँ है। उसने बस उन पर ध्यान नहीं दिया, उसके पास एक संदेश था, इसलिए वो बस उनके साथ चलता गया। आप देखिए वैसे ही प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा, क्यों प्रतीक्षा करते हो, अच्छा यदि हम वहाँ नीचे जाते हैं हम आज बिशप को ले जाएंगे और देखें कि वो इस विषय में क्या कहता है। हम वहाँ जाएंगे यदि हम जानते हैं ये कलीसिया का अध्यक्ष है और हम जानते हैं कि उसे इसे मान्यता देनी होगी, यदि ये परमेश्वर का है वो हमारे बिशपों को मान्यता देगा। उन्हें एक पंक्ति में लगा दिया और वहाँ खड़ा हो गया वे पदाधिकारी। उसने कहा, तुम सांप के बच्चों, तुम घास में के सांपो, गोल कॉलर वाले, पवित्र पिताओं और आदि आदि, किसने तुम्हें चेताया कि आने वाले क्रोध से भागो, तुम जानते हो कि तुम्हारा समय आ गया। क्या तुम ये नहीं सोचते, तुम कहते हो भाई हम इससे उससे संबंधित हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ योग्य है कि अब्राहम के लिए पत्थरों से संतान उत्पन्न कर दे। ओ प्रभु, अब वो अपना दूसरी ओर से लेने जा रहा है पुरोहित वर्ग के उपदेशों से। मैं कहता हूँ कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, इसलिए हर पेड़ जो फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। ओ सही में मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ प्रायश्चित के लिए, परंतु वो मेरे पीछे आता है चांद लहू में बदल जाएगा। और ओ प्रभु, वो अपना खलियान भली प्रकार से साफ करेगा, वो भूसे को लेकर ना बुझने वाली आग में जला देगा और वो अनाज को खत्ते में ले जाएगा, वो खरपतवार और गेहूँ को अलग करेगा। ओ प्रभु, क्या ही संदेश है। उन्होंने कहा, ये व्यक्ति ओ वो क्या कहेगा, ये कौन सा समय था। ओ अज्ञानता, वहाँ हमारे पास एक पुरुष है भाई जोन्स, वही व्यक्ति है जो ये करेगा। यदि इस युग में कोई है बिशप अमुक ये करेगा, अमुक पवित्र पिता। ओ प्रभु, समझे, परमेश्वर साधारणता में, देखिए साधारणता में कार्य कर रहा है। तब पहली बात आप जानते हैं, वो वहाँ एक दिन खड़ा हुआ था और उसने कहा, हाँ वो तुम्हारे बीच में खड़ा है। वो इतना निश्चित था कि वो अग्रदूत है, वो जानता था कि वो कौन था, यही कारण था वो उनको बेपर्दा कर सका। कहा, अब भयभीत ना हो परंतु आगे बढ़ते रहो
तुम सिपाही हो, तुम अपने स्वामियों के आज्ञाकारी रहो, और यदि तुम कोई बुराई करते हो तुम वो लेते हो। हम क्या करेंगे? क्या हम ये करना छोड़ दें? क्या हमें ये करने से रुक जाना चाहिए? उसने कहा, जैसे तुम हो बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, निरंतर बढ़ते रहो, आगे बढ़ो। यदि तुम आलू उगा रहे हो उन्हें उगाओ, समझे? तुम सिपाही हो, कोई उपद्रव ना करो, और तुम ये करो, और जो भी तुम करते हो जैसे तुम, बस चलते रहो, अपने स्वामियों की आज्ञा पालन करो, और आदि आदि। रब्बी, हमें क्या करना चाहिए? बस जैसे तुम चलते रहो। देखिए, परंतु एक तुम्हारे मध्य में है जिसे तुम नहीं जानते। वो अपने समय के संदेश को जानता था। वो जानता था कि उसे उस व्यक्ति का परिचय कराना था। वो जानता था कि वो वहाँ पर था। एक तुम्हारे बीच में है, तुम उसे नहीं देखते। चीजें आगे बढ़ रही हैं, तुम इस विषय में कुछ नहीं जानते, और इसलिए तब वहाँ कुछ घटित होने जा रहा है। वो कहता है, आप देखिए, और वो यहाँ पर होगा, और मैं उसे जान जाऊंगा। और अंततः एक दिन उसने कहा, देखो वो यहाँ है, वहाँ परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा लिए जाता है। कहा, और मेरा समय अब समाप्त हो गया, मैंने उसका परिचय आपसे करा दिया है, अब मुझे घटना चाहिए, मुझे दृश्य से हट जाना चाहिए। वो यहाँ से अधिकार ले लेगा, सहस्र शताब्दी आरंभ हो जाएगी तुरंत ही, देखिए, और समय निकट ही है। तब जब वो आता है, जब यहाँ तक कि यूहन्ना ने कहा, वो करने जा रहा है, वो पर्दे को हटाने जा रहा है, वो करने वाला है, वो गेहूं को भूसे से अलग करने जा रहा है, और वो उसे जलाने जा रहा है, और वो अपना खलियान पूरी रीति से साफ करने जा रहा है, उसका सूप उसके हाथ में है। परंतु वो क्या था? मामूली छोटा सा। अब उन्होंने कल्पना कर ली थी, ओ पुरुष, उसके पास एक भाला होगा जो एक मील तक जाएगा। वो यहाँ पीछे फिलिस्तीन में खड़ा होगा, बस वहाँ खड़ा होता है, और बस किसी एक सफेद पर, और इस प्रकार से सारे रोमियों को उठाकर और एक नरक में डाल देगा। बस ऐसे ही करता चला जाएगा जब तक वो सबको खत्म नहीं कर देता। क्यों? उन्होंने ये सब तय कर लिया था। और जब ये छोटा मेमना निकल करके उनके बीच में आता है, नम्र और दीन, इधर उधर आसपास धकियाया गया। यहाँ तक कि यूहन्ना ने कहा, अब यूहन्ना को देखो, भविष्यद्वक्ता, उसने कहा, जाकर उससे पूछो, क्या वास्तव में तू ही है? इतना नम्र, यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता भी चूक गया। क्या यही है, या हम किसी और को ढूंढें? अब उसने अपने चेलों को कभी कोई पुस्तक नहीं दी। मत्ती 11 में आए और उससे पूछा, जब यूहन्ना के चेले, यूहन्ना जेल में था, इसलिए वो धर्म संकोच में था, जब तक वो, मैं विश्वास करता हूँ ये पैम्बर ने कहा था, उसकी उका वाली आँख पर झिल्ली चढ़ गई थी। आप देखिए, वो नीचे पृथ्वी पर आ गया था, वो वहाँ ऊपर हवा में था, परंतु जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई तो फिर जमीन पर आ गया था, क्योंकि जेल में डाल दिया गया। आप देखिए, अब उसके उन बड़े पंखों का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए वो वहाँ पड़ा था, परंतु वो और बाकियों से बहुत ऊंचा उड़ा था। मैं आपको कुछ दिखा दूं, परमेश्वर ने उसका उपयोग किया, और यीशु जानता था। आप देखिए, क्योंकि वो था, वो अवतरित परमेश्वर था, समझे? वो था, इसलिए उसने कहा। अब उसने उसे कभी इस पर कोई पुस्तक नहीं दी कि जेल में कैसा व्यवहार करे। वो कहता है, अब एक मिनट प्रतीक्षा करें, मैं एक छोटा निबंध लिखूंगा और तुम उसे वापस ले जाओ, और यूहन्ना को बताओ कि जब वो जेल में है तो कैसा व्यवहार करे मेरे कारण, समझे? नहीं, उसने ये कभी नहीं कहा। उसने नहीं कहा, जाओ यूहन्ना को बता दो, इसके पहले कि वो जेल से बाहर आए उसे पीएचडी की डिग्री ले लेनी चाहिए, समझे? यदि वो लेगा तो वो बाकियों के साथ होगा। वो तो ठुकराया हुआ था। यूहन्ना ईमानदार था और प्रश्न पूछ लिया, और उसने कहा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, जब तक सभा समाप्त होती है तब जाकर यूहन्ना को दिखाएं कि क्या घटित हुआ, तब वो जान जाएगा। यदि तुम बताओगे क्या हो रहा है तब वो जान जाएगा, समझे? समझे? बस जाकर उसे बता दो, ये है, वो कैद में है, यहाँ नहीं आ सकेगा, परंतु तुम सभा में बैठो और तुमने देखा है कि क्या घटित हुआ, तुम जाकर उसे बताओ। इसलिए तब चेलों ने कहा, बहुत अच्छा गुरु, और वे पहाड़ से होकर वे गए। यीशु इस चट्टान पर बैठा हुआ है और उन्हें उधर पार जाते देख रहा है, और पहाड़ी के पार चले गए। वो भक्त मंडली की ओर घूमा, कहा, तुम किसे किसे देखने गए थे यूहन्ना के समय में, समझे? कहा, तुम क्या देखने गए थे? क्या तुम एक मनुष्य को देखने गए थे जिसके गोल कॉलर है और मुलायम कपड़े और बहुत ही समरा हुआ है और शिक्षित? क्या तुम इस प्रकार के मनुष्य को देखने गए थे? कहा, नहीं, तुम जानते हो वे किस प्रकार के होते हैं, वे बालकों को चूमते, और तुम जानते हो राजाओं के महलों में कार्य करते हैं, वे जो यूहन्ना की तरह नहीं थे। अच्छा, कहा, तो फिर तुम क्यों गए थे? उस मनुष्य को देखने गए जिसे सेवकाई दी गई, संस्थाओं को फंसाएगा, या कुछ इस प्रकार की चीज, हर चीज से हिलाए गए? तब यदि एक वाद वाले उसे नहीं चाहते, वो त्रियेकता वालों के पास चला जाएगा, और त्रियेकता वाले उसे नहीं चाहते, वो चर्च ऑफ गॉड के पास चला जाएगा। कहीं भी, क्या तुम इस प्रकार के मनुष्य से मिलने गए, किसी भी सरकंडे से हिलाए जाए? ओ नहीं, यूहन्ना नहीं,
उसने कहा, तो फिर तुम क्या देखने गए, एक भविष्यद्वक्ता को? उसने कहा, और मैं कहता हूँ ये ठीक है, परंतु मैं तुम्हें कोई बात बताने जा रहा हूँ जो तुम नहीं जानते। वो एक भविष्यद्वक्ता से बड़ा था, वो अधिक था। यदि तुम ग्रहण कर सकते हो, ये वो है जिसके विषय में बाइबल में लिखा है। देखिए वहाँ पीछे वचन में, मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजूंगा, मलाकी 3। देखिए, और वो मेरे आगे आगे मार्ग को तैयार करेगा। समझे? और वे नहीं समझे, यहाँ तक कि चेले भी ये नहीं समझे। ये ठीक बात है। ओ प्रभु, सादगी, नम्र हो जाओ। देखिए, सीधे नीचे हो जाओ। जब परमेश्वर किसी महान चीज की प्रतिज्ञा करता है, देखिए वो उसकी दृष्टि में महान है। अब यदि आप इसे सदा अपने मस्तिष्क में रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने विचार में रखें, और जब ये घटित हो तब आप इसे बदल सकते हैं। आप जाकर और एक छोटा उगता हुआ फूल लें जो इस वर्ष आ रहा है, या एक साधारण घास की पत्ती को लेकर और अपने हाथ में पकड़ें और कहें, मैं इसे अब पकड़ने जा रहा हूँ, और उस साधारण सी चीज को देखें, बहुत साधारण ये बना है। और मैं उस बुद्धि को देखना चाहता हूँ जिसने रॉकेट को चांद पर भेजा है, इस घास की पत्ती को बनाए। आप इसे सदा लेंगे, आप इस पर निर्भर कर सकते हैं, आप इसे सदा लेंगे। समझे? घास की पत्ती में जीवन है। देखिए, ये बहुत सादी और नम्र है। आप देखिए, यदि एक मनुष्य महान है, ठीक है, परंतु यदि वो बहुत बड़ा है कि वो साधारण हो सकता है, देखिए वो परमेश्वर पा लेगा, परंतु यदि वो साधारण नहीं होता है, वो उसे कभी नहीं देखेगा। इसलिए आपको साधारण होना ही है। अब पद प्रकाशित वाक्य पद 5:9, ये कौन है जो गाते हुए पाए जाते हैं? गाते हुए, जब मेमना पुस्तक लेता है, क्या ये उठाए गए संत हैं? नहीं, प्रकाशित वाक्य 6 बल्कि 5:9। नहीं, यदि आप ध्यान दें, ये लोग संत नहीं हैं। उनके पास, उसने कभी भी अपनी संपत्ति का दावा नहीं किया अब तक। समझे? ये संत नहीं है। यदि आप ध्यान दें, वे प्राचीन और पशु हैं, और वे गाते हैं। आइए इसे पढ़ें। इसलिए वो व्यक्ति, और तब मैं यत्न करने जा रहा हूँ, यहाँ मेरे पास आधा दर्जन से अधिक हैं, और मैं सोचता हूँ मैं इन्हें कुछ मिनटों में ले सकता हूँ। आइए प्रकाशित वाक्य 5:9 में देखें। अब आइए पहले इसे थोड़ा सा पढ़ें, ताकि व्यक्ति अब इस बारे में ईमानदार है और वे जानना चाहते हैं। ध्यान दें, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और वे ये नया गीत गाने लगे। देखिए, कह रहे हैं, तू इस पुस्तक को लेने और इसे खोलने, देखिए तूने हमें मोल लिया है, और हमें याजक और राजाओं, ये स्वर्गीय झुंड है, अभी तक छुड़ाए नहीं गए। ठीक है, अब भाई ब्रैनम, यदि सारे, अब जरा एक क्षण, मैं समझता हूँ, क्या मुझे क्षमा करें,
ब्रदर ब्रैनम, इफ ऑल द गॉडली, या
भाई ब्रणम, यदि सारे धर्मी रैप्चर में उठा लिए जाते हैं, तो एलिया और मूसा कहाँ से आते हैं? कुछ गड़बड़ है। इसका कुल मिलाकर यही है, वहाँ कुछ घटित हुआ। समझे? कहीं कुछ गलत हुआ। हर कोई ठीक अनुभव कर रहा है? कोई नहीं? कोई बीमार नहीं है या कुछ नहीं? आइए प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, ये कहाँ था? 5? ओ प्रश्न जिसका मैंने अभी उत्तर दिया है। अब आइए देखें, तू ये ठीक स्थान है। और जब उसने पुस्तक, तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, और ये यहाँ पर है, मैं इस गलती पर था। समझे? अपने लहू से हरे कुल और भाषा, ये ठीक बात है। अब आप इस विषय में क्या सोचते हैं? ओ यदि पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, क्या है? वो ये नहीं करने देगा। देखिए, मैंने पद का केवल पहला भाग पढ़ा। देखिए, ये बस एक या यहाँ कुछ लिखा हुआ है। मैं घड़ी देखते हुए इसमें होकर निकलना चाह रहा था, परंतु आप देखिए, उसने मुझे इस पर रोक दिया। मैंने इसका दूसरा भाग बिल्कुल नहीं पढ़ा। देखिए, मुझे यहाँ मिल गया और इधर देखिए, और वे एक नया गीत गाने लगे और मैं रुक गया। देखिए, परंतु इधर देखिए, वो गीत जो उन्होंने गाया कह रहे हैं, तूने हमें हर जाति, भाषा और राष्ट्र से मोल लिया है। निश्चय वे यही हैं, ओ प्रभु, इसे देखें। और वैसे तो यहाँ दूसरे प्रश्न भी हैं। क्या आप नियंत्रित उन दिए हुओं को नियंत्रित, अच्छा, प्रकाशित वाक्य 6:11 के वे श्वेत वस्त्र जो दिए गए, नियंत्रित उनके साथ जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए हैं। अब आइए प्रकाशित वाक्य 6 को देखते हैं। मैं इस पर जल्दी नहीं कर सकता लोगों, यहाँ इस प्रकार से देखिए, क्योंकि ये होने जा रहा है, मैं कुछ गलत उत्तर देने वाला हूँ। अब ये वो नहीं चाहता कि मैं ये करूँ, ये सत्य है, इसलिए मेरी सहायता करें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जानता है कि ये सत्य है, समझे? मैं बस ये कुछ मैंने इसे देखा, मैं घड़ी देख रहा था 11:30, और मैंने सोचा यदि मैं अब जल्दी जल्दी ना करूं, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, और मैं इसे लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं और मेरा मस्तिष्क ऐसा है, मैं नहीं सकता। आपको स्मरण है, अब आपको इसे समझना है, मैं एक मनुष्य हूँ, देखिए, और मैं वहाँ 7 दिनों से था, और मेरा और मुझ में अब भी है। इस दोपहर बाद मुझे परमेश्वर से मालूम करना है, परंतु वो इतना पक्का था कि मैं कोई गलती ना करूँ। उन्होंने मुझे फिर पढ़ने के लिए कहा कि बाकी पद भी पढ़ूं। मैं बस ये कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे ऊपर से कुछ गया और कहा वापस जाओ। मैंने सोचा वापस जाओ क्या, अब यहाँ रुक जाओ और बीमार के लिए प्रार्थना आरंभ करो, परंतु क्या ये क्या है, मैंने क्या किया है? और बस मैंने उधर की ओर चलना आरंभ कर दिया। किसी ने कहा पद को फिर से पढ़ो, और मैंने इसे पढ़ा, और वहाँ प्रश्न के नीचे की ओर, ये वहाँ पर था, देखिए प्रकाशित वाक्य 6। देखिए, मैंने पहले वाला पढ़ा, ये पहले वाले के समान लगता है, देखिए, और उन्होंने नया गीत गाया, परंतु यहाँ नीचे ये क्या था, अगला नीचे आते हुए उसने हमें छुड़ा लिया। निश्चय ही ये दुल्हन थी, उठाए हुए संत लोग, क्या आप? और यहाँ निश्चय ही वो मेमना, उसके हाथ में पुस्तक थी, वो बिछवाई के सिंहासन को छोड़ चुका था, समझे? आप देखिए कैसे पवित्र आत्मा इस पर ध्यान देता है, क्योंकि ठीक ये वही चीज है मैंने उस रात्रि कहा जब उसने मुझसे कमरे में बात की थी, और मैंने यहाँ आकर आप सबको प्रचार किया जब मेमने ने स्थान छोड़ा। ओ प्रभु, अब मैं विश्वास करता हूँ कि हम इसका मूल पाठ लेंगे। देखिए, मेमना सिंहासन छोड़कर सामने आ गया था। देखिए, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, जब वो उस ज्योति में उपस्थित था जो कि मसीह है, जब वो वहाँ उपस्थित था, ये बताया, जब मेमने ने वो सिंहासन एक बिछवाई करने वाले के समान छोड़ दिया, वो यहाँ हो जाता है, और कलीसिया के छुटकारे का दिन समाप्त हो गया। अगला छुटकारा यहूदी 144,000 के लिए खुला हुआ है, क्या ये ठीक बात है? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो पेड़ को काट डालेगा, आप जानते हैं। अब यहाँ वो मेमना बाहर आता है, और फिर छुटकारे के दिन समाप्त हो गए, और वे सारे जो छुड़ाए जाने वाले हैं पहले ही छुड़ाए जा चुके हैं और पुस्तक में हैं, और वो यहाँ पुस्तक खोलने के लिए है। ठीक है, ओ धन्यवाद प्रभु, समझे? अपने अधीर दास को क्षमा करें किसी चीज के ऊपर से निकल जाने के लिए। अब क्या आप उन दिए गए श्वेत वस्त्रों को सहन कर सके? प्रकाशित वाक्य 6:11 के, अब आइए देखते हैं 6:11। ठीक है, इस पर अब हम कहाँ पर हैं? श्वेत वस्त्र, जी हाँ, जो वेदी के नीचे क्रूस पर चढ़े, वे यहूदी लोग समय के बीच में उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए, उनके जिनके वस्त्र मेमने के लहू में धोए गए। प्रकाशित वाक्य 7:14 के, नहीं, ये भिन्न है, पूरी रीति से निश्चित हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ हम पाते हैं कि इन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए, यहाँ इस समय में उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए उन्हीं को अनुग्रह के द्वारा, और ये यहाँ अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोए थे, और यहाँ प्रकाशित वाक्य में ये हैं बड़ी भीड़ जो परमेश्वर के सामने आई, सारी जातियाँ, भाषाएं और देश, और ये सीधे सीधे ठीक बलिदान यहूदी। आप देखिए अब ये सही है। अब भाई बरनम, यदि सारे धर्मी रैप्चर में उठा लिए गए थे, तो एलिया और मूसा कहाँ से आएंगे? क्या वे यहूदी होंगे, या हमारा एलिया होगा जो हमें दिया गया है उनके साथ होगा? नहीं, वो अन्य जाति जो इस आत्मा से अभिषिक्त होगा कि अन्य जातियों को बुला लिया जाएगा, क्योंकि आप देखिए सारी कलीसिया सारे उठा लिए गए और ये दो भविष्यद्वक्ता अध्याय 11 के नीचे लाए गए और अन्य जाति के साथ अनुग्रह का दिन समाप्त हो गया और यहूदियों को भेज दिया। नहीं, ये वही पुरुष नहीं होगा। मैं इस विषय में पूरी रीति से निश्चित हूँ। अब स्मरण रखें, ये मेरी सबसे अच्छी समझ से है। आइए देखें ये क्या है। यहाँ कहता है प्रश्न, क्या गेहूं और दाखरस, ओ क्या WHEAT, नहीं मैं समझता हूँ इसका अर्थ क्या करता, इसके पास नहीं है। क्या वहाँ बस कहते हैं क्या, क्या और दाखरस या गेहूं और दाखरस क्या करता है, प्रकाशित वाक्य 6:6 का। आइए देखते हैं ये क्या है। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ, ये यहाँ, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। मैं समझता हूँ इसका अर्थ गेहूं और दाखरस है, ये एक से दूसरा था, बल्कि एक प्रतीक है। दाखरस प्रभु भोज की मेज पर लिया गया, प्रकाशित पहला कुरंथियों 11:24 का। क्या दाखरस नहीं, इसमें से एक आत्मिक प्रतीक है, देखिए, और दूसरा वाला वास्तविक वचन का प्रकाशन। क्या ये हो सकता है कि कारण कि बहुत से बीमार क्योंकि हमने प्रभु की देह को नहीं पहचाना, ठीक, परंतु अब 6वीं मोहर के खुलने के द्वारा प्रकट हो गया है। अब आइए देखते हैं, मुझे जरा देखने दीजिए, यदि मैं अब इसे ले सकता हूँ। ये आप नहीं हैं, ये मैं हूँ। आपने ठीक लिखा है, ये बस मैं हूँ। क्या ये कारण हो सकता है कि बहुत से बीमार हैं क्योंकि हम प्रभु की देह को नहीं पहचानते, इसके अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा है। भाई वचन कहता है कि तुम्हारे बीच में बहुत से बीमार और निर्बल हैं प्रभु की देह की पहचान के कारण। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए प्रभु की देह दुल्हन है और उनमें से बहुत से चले गए और वे इसके साथ नहीं जाते, ये सच है। देखिए वे नहीं जानते कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे भी जीवन बिताते हैं और प्रभु भोज आदि लेते हैं, ये ठीक नहीं है, समझे। जब लोग प्रभु भोज लेते हैं जो झूठ और चोरी और पीते हैं और ये भयानक बातें, आपको ये नहीं करना चाहिए, समझे। परंतु अब 6वीं मोहर के द्वारा प्रकट किया गया है, 6वीं मोहर का खुलना। आइए अब देखें, नहीं अब आप पाते हैं कि 6वीं मोहर यहाँ खुल रही है, यहूदियों के लिए थी। देखिए कलीसिया जा चुकी है, ये विपत्तियों का काल है, इसलिए ये एक समान नहीं होगा। नहीं नहीं, ये नहीं है, इसमें एक आत्मिक दाखरस है, ये वचन का प्रकाशन है। तब वो विश्वासी वचन के प्रकाशन के द्वारा उत्तेजित हो जाता है और दूसरा वाला यीशु के लहू का प्रतीक है जो प्रभु की मेज पर लिया गया। अब ये मेरी समझ सबसे अच्छी समझ में है। क्या कोई जो पहले से चुना नहीं है प्रभु को स्वीकार करता है? यदि वे करते हैं क्या वे गिर जाएंगे? नहीं, यदि वे पहले से चुने हुए हैं, नहीं, देखिए वे नहीं सकेंगे। ये वचन कहाँ है जो ये दर्शाता है कि कैथोलिकवाद यहूदियों को धोखा देगा और उनका धन ले लेगा? अब कहाँ ये कहता है कि पशु धन के लिए धोखा देगा? ये नहीं कहता, परंतु हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये था। अब उस रात्रि आपको स्मरण है कि आप टेप पर अच्छी तरह ध्यान दें, मैंने कभी नहीं कहा कि वे ये करेंगे। मैंने कहा देखिए कैथोलिक संसार का सबसे धनी झुंड है, उनके समान कोई नहीं है, और जो उनके पास नहीं है वो बाकी यहूदियों के पास है। यही जहां उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है। अब हम ठीक इस समय टैक्स के पैसे पर जीवन बिता रहे हैं, लाइफ लाइन के अनुसार। ये टैक्सों से अलग है, ये सीधा वाशिंगटन डीसी से आता है, ये अब से 40 वर्षों में इसका भुगतान होगा। यही जो हम आज खर्च कर रहे हैं, यही हम कितने पीछे हैं। जिन टैक्सों का भुगतान करेंगे उनके लिए हम लिखित दे रहे हैं, आज से 40 वर्षों में भुगतान होगा। राष्ट्र टूट गया है, ये समाप्त हो गया। अब कास्त्रो केवल एक ही समझदारी की बात जो उसने कभी की थी, जब उसने नकली मुद्रा बनाकर लिखित उधार और बॉन्डों का भुगतान कर दिया और उन्हें जला दिया और मुद्रा बदल दी, केवल यही चीज थी जो वो कर सका। और संयुक्त राज्य के लिए केवल एक ही चीज करने को बची है। अब स्मरण रखें, ये विलियम ब्रैनहम है जो बोल रहा है, ये मेरा विचार है। ये केवल अनुमान है जिसे स्वाभाविक दृष्टि से देख रहा हूँ, जो कि वास्तविकता से लाखों मील दूर हो सकता है। इस पैसे में, पैसे का प्रेम सब बुराइयों की जड़ है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें कार्य होना आरंभ हो गया है। अब वहाँ पीछे कैथोलिक कलीसिया आराधना के भुगतान से आरंभ करके और आदि संसार का धन पकड़े हुए है। आपको स्मरण है बाइबल ने कहा वो धनी थी और वो कैसे थी। और स्मरण रखें, केवल एक ही राष्ट्र नहीं, वो हर राष्ट्र पर जो स्वर्ग के नीचे है उससे धनी है। उसकी पहुंच बाहर भी है, उसके पास धन है। अब उसके पास क्या नहीं जो वॉल स्ट्रीट के पास है, जिसका नियंत्रण यहूदियों के पास है। अब और आपको याद है जब याकूब लौटा उसके पास पैसा था, पिछली रात्रि हमने देखा, और इसराइल बन गया। वास्तव में उसके पास पैसा था, परंतु उसका पैसा उसके लिए कुछ नहीं खरीदेगा। देखिए एसाव को, एसाव के पास भी था, दोनों विरोधी हैं। और एक देखिए ऐसा जैसे सिद्ध है। अब इधर ध्यान दें, मैंने कहा अब मिलकर पैसों पर संगठित हो जाना चाहते हैं, और वो रोमी शक्ति यहूदियों की शक्ति को लेती है और धन की वाचा को तोड़ रही है। हो सकता है ऐसा ना हो, देखिए मैं जानता हूँ वे इसे तोड़ेंगे, परंतु मैं नहीं जानता कि किस कारण से ये क्या है, क्योंकि ये मुझ पर इस विषय पर प्रकट नहीं किया गया कि वे क्या करेंगे। परंतु देखिए अब यदि क्या हो आज, एक ही चीज जो हम कर सकते हैं, जो करने के लिए होगी, यदि हम टैक्स ले रहे हैं, यदि ये वक्तव्य ठीक है, मुद्रा से अलग, टैक्स की मुद्रा से अलग जो अब से 40 वर्ष की है, आप देखिए हमारा सोना, हम इसे खर्च कर चुके हैं, हम टूट गए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हम केवल अपनी पुरानी प्रतिष्ठा पर जी रहे हैं। आज कलीसिया यही कर रही है, कलीसिया ना कि दुल्हन, कलीसिया पुरानी प्रतिष्ठा पे जी रही है जो उसने अपनी सिंह की सेवकाई के समय में पाई थी। हम कलीसिया हैं, हम माता कलीसिया हैं, हमने आरंभ किया, ये ठीक बात है, समझे, ये प्रतिष्ठा पे जी रहे हैं। मेथोडिस्ट अपनी प्रतिष्ठा पे जी रहा है, बैप्टिस्ट अपनी प्रतिष्ठा पे जी रहे हैं, पेंटिकॉस्टल अपनी प्रतिष्ठा पे जी रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो, एक लंबे समय पहले जब संत लोग आत्मा में नाचा करते थे और कैसे वे प्रभु ने ये किया, ये कुछ जो बीत चुका भाई, अब हम सब बड़े हो गए हैं। ओह प्रभु, समझे, ये पिछली प्रतिष्ठा, ये राष्ट्र जीवित है, पिछली प्रतिष्ठा पे जीवित है जो पूर्वज थे। देखिए यही कारण है हम सोचते हैं हम बच जाएंगे। परमेश्वर ने इसराइल का कभी आदर नहीं किया कि वे क्या थे, वे क्या रहे थे, तब वे क्या थे। ध्यान दें, परंतु अब यहाँ जो मैं सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ घटित होगा। अब हो सकता है ये ऐसा ना हो, मैं विश्वास करता हूँ कि समय आएगा जब हम बाध्य हों कि निर्णय लें, और जब ये होगा कि बजाय मुद्रा को बदलें, ये फिलिप्स मॉरिस से क्या करेगा, ये शराब की कंपनियों के साथ क्या करेगा, ये इस्पात के उद्योग के साथ क्या करेगा, ये सारी अर्थव्यवस्था के साथ क्या करेगा, ये क्या होगा, ये इन्हें तोड़ देगा, वे टूट जाएंगे। परंतु यदि हम उस पैसे को उधार ले सकें, आप देखिए वो कितना चतुर है, तब राष्ट्र को इस कलीसिया को बेचना पड़ेगा, और तब कलीसिया और राज्य फिर से मिलते हैं, और वो आती है, समझे, यही है। ध्यान दें, ठीक है, अब इसमें यदि कोई संघ संस्था में है जो हमारी सरकार के द्वारा हो, और वो अपने हृदय से चल और बोल सके, या अंत दिन की सच्चाई में हो, तो क्या वो वेश्या कहलाया जाएगा? आइए देखते हैं, यदि एक संघ संस्था में है, ठीक है, देखिए संघ संस्था, ये संस्था सरकार द्वारा बोलने का दिया हुआ अधिकार है, देखिए इसका उसके हृदय से कुछ भी लेना देना नहीं है, समझे। अब यदि वो वास्तविक विश्वासी है और किसी समय परमेश्वर के आत्मा से जन्मा हुआ है, वो जांचे जाने वाला है, समझे, ये इतना स्पष्ट नहीं हो सकता और फिर इसे ना देखें। अब मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, आप इसे याद रखना चाहते हैं कि मित्र, कि परमेश्वर ये कभी नहीं करता या किसी भी समय हुआ है जैसा कि मैं याद कर सकता हूँ। देखिए, परंतु क्या, देखिए यीशु इस सब का मूल सिद्धांत है, क्योंकि वो परमेश्वर था, इमैनुएल, देहधारी हुआ। अब इस पर देखिए, ये व्यक्ति यीशु, जब क्या आप जानते हैं कि जब वो पृथ्वी पर आता है, मैं समझता हूँ वहाँ संसार के 1/10 भी नहीं थे जो जानते थे कि वो यहाँ पर था। क्या आप जानते हैं जब उसके आगे चलने वाला आता है, जब सारे पहाड़ और चीजें घटित होंगी? मैं समझता हूँ वहाँ इसराइल की जनसंख्या का 1/100 भी कभी जान पाया हो। क्या ये विचित्र नहीं है? क्यों? वहाँ यहूदी और आदि आदि थे और सारे संसार के लोग। अब याद रखें, यीशु गवाह होने के लिए आया एक संसार का बचाने वाले के समान। क्या ये ठीक बात है? क्यों? वहाँ बस लोग पर लोग, जातियों पर जातियाँ, लोग जो कभी इस विषय में कभी भी कुछ भी नहीं जान पाए चलता रहा, जैसे कि संसार इस विषय में कुछ भी नहीं जान पाया, परंतु सारे समय ये संसार में हो रहा था। समझे? क्यों? उसने उन्हें जानने नहीं दिया। वो आया और वे जो अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे वही थे जिन्होंने उसे स्वीकार किया। बाकी बचे हुए लोगों के लिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उन्हें छुड़ा नहीं सका, क्योंकि वे छुड़ाए जाने के योग्य ही नहीं थे। वो क्यों था? जब वे याजक वहाँ खड़े हुए, जब उसे उस स्थान पर आना था, क्योंकि पहले से ठहराया हुआ नक्शे में था, चारों ओर से उन्हें वहाँ पर एक झुंड के समान प्रचार करना था। और महान ज्ञानी लोग जिन्हें उसे जानना चाहिए था, कहा ये मनुष्य बालजबूब है, हम इस मनुष्य को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देंगे, और आदि आदि। देखिए, हम ये नहीं करेंगे। परंतु वो छोटी साधारण वेश्या उस जीवन के साथ अनंत जीवन के लिए ठहराई हुई थी, और उसका नाम अमरणहार वाले परमेश्वर के वचन के अंदर वहाँ आई, और पहली बार वो उजियाला उस छोटे बीच से टकराया और वो तुरंत ही जान गई। उस बूढ़े मछियारे को वहाँ पर आते हुए देखें, वहाँ वो खड़ा हुआ चिन्ह और आश्चर्य कर्म कर रहा है और भिन्न भिन्न लोगों को उनके हृदय के गुप्त विचारों को बता रहा है और अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। और वो वहाँ पर फरीसी खड़ा हुआ है और कहा ये मनुष्य बालजबूब है। उन्हें अपनी मंडली को उत्तर देना था। वे सारे वहाँ आसपास खड़े थे। डॉक्टर जोन्स, क्या आप वहाँ जाएंगे और पुरुष की सुनेंगे? वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो जानता है कि वो किस विषय में बात कर रहा है। वो साधारण मनुष्य के समान बात नहीं करता है। मैं उसे सुनूंगा, वहाँ जाता है। देखिए, जी हाँ, परमेश्वर उसे कभी नहीं मिल सका। और वहाँ वो खड़ा हुआ और उसने कहा, उन्होंने कहा, अब उधर देखिए, उधर देखें, वहाँ एक मनुष्य आता है, वहाँ उसके चेलों में से एक है। अब वहाँ एक मनुष्य आता है, अब उस व्यक्ति का नाम ये इंद्रियास है, आपको याद है? ओह, आपको याद है वो बूढ़ा मछुआरा यहाँ पर? ये वे, जी हाँ, वहाँ शमौन उसका भाई, समझे? और ये उस बूढ़े योना के बालक हैं। अब वहाँ वे देखिए, वो किसी को उसके पास ला रहा है। ये कौन है? जी हाँ, देखिए अब वो क्या करेगा। वो अगला वाला वहाँ वो जाता है और उसने कहा तेरा नाम शिमौन है, तू योना का पुत्र है। ये मनुष्य बालजबूब है, देखिए उसके ऊपर किसी प्रकार का आत्मा है। ये विचित्र व्यक्ति है, समझे? सीधा सीधा आप सब इस प्रकार का कुछ मत सुनो। देखिए, यहाँ से दूर रहें, मैं इन सभाओं में और नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, बस जैसे ही ये चीज पूरी हो जाएगी हम यहाँ से निकल कर चले जाएंगे, हम यहाँ आसपास फिर कभी नहीं आएंगे, समझे? क्यों? अब यही जो उसने सोचा और फिर भी उसे एक होना चाहिए। देखिए, वही वाला जो उसके पास आया था, वही जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया, समझे? परंतु वहाँ एक छोटी वेश्या थी जिसे हर किसी ने निकाल दिया था। मैं वेश्यावृत्ति का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, परंतु मैं बस आपको दिखा रहा हूँ पहले से ठहराया हुआ बीज। यहाँ इस व्यक्ति को देखिए, ये बूढ़ा मछुआरा, वो नहीं सका। बाइबल ने कहा वो अनपढ़ था। क्या ये ठीक बात है? केवल यही नहीं, परंतु वो एक अनजान था। अब क्या ये ठीक या गलत है? ओ, यदि हम किसी को लें जो इन चीजों में अज्ञानी हो, जो हम सोचते हैं हम जानते हैं, समझे? ठीक है, देखिए, वो अनजान और अज्ञानी दोनों था, और फिर वो चलता हुआ प्रभु यीशु की उपस्थिति में गया और उसने उसे बताया कि वो कौन था। ठीक वहीं ये तय हो गया। अब दूसरे लोगों के तर्क इसके विरोध में क्या है? अच्छा, देखिए, उसने ये विश्वास किया। देखिए, ये कौन है? आप जानते हैं वो कौन है? अच्छा, वो पुरुष कभी नहीं। क्यों? क्यों वो एक मछुआरा है? क्यों वो अपना कैखेगे भी नहीं जानता? मैंने उससे मछली खरीदी है, वो तो मुझे रसीद पर हस्ताक्षर भी नहीं दे पाया। ये देखिए, ये इस प्रकार की चीज है, इस प्रकार के लोग जो कुछ इस प्रकार की चीज सुनते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। समझे? क्यों? क्यों? वो नहीं, उसके पिता को देखिए, वो अनपढ़ था, यहाँ तक कि उसने उन्हें विद्यालय भी नहीं भेजा। जैसा उसने चाहा उन्हें सिखाया। मैं विद्यालय ना जाने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आशा करता हूँ आप समझते हैं, परंतु ये एक प्रतीक है। देखिए, आपको इसमें क्या मिलता है? ये इस प्रकार और इस कारण ये उनके ऊपर से निकल जाता है। और आप जानते हैं क्या? एक नहीं, मैं कहूँगा राष्ट्र में सारे यहूदिया का 1/3 भी उसके आगमन के विषय में कभी जान पाया और एक तिहाई के एक बटे पांच ने उसे सुना, एक बटे पांच के सौवे भाग ने इसे स्वीकार किया। क्या आप जानते हैं उसके पास कितने थे? सारे झुंड में से 12 उस क्रूस के पास खड़े थे, उनमें से बाकी कहाँ थे? समझे, 70 चले गए। अब जबकि वो बीमारों को चंगा कर रहा था, बस चल रहा था, अपनी शिक्षा के विषय में वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस बीमारों को चंगा करते हुए आगे बढ़ रहा था और आदि आदि। ओ प्रभु, ये परमेश्वर का आत्मा उस पर था। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? जब वो बीमारों को चंगा कर रहा था तो बहुत ही शानदार था। वो एक महान रब्बी है। कहें आप सारे भाइयों को, आप सबको उसे अपनी कलीसिया में बुलाना चाहिए। लड़के, तुम सामर्थ के विषय में बात करते हो, वो व्यक्ति वास्तव में बीमार को चंगा कर सकता है। तुम्हें देखना चाहिए, उसके पास चंगाई का वरदान है। ठीक है, निसंदेह उनके पास इसकी कुछ नकल होने जा रही है। यहाँ वे आते हैं क्योंकि हर झुंड में से उनके पास उनका अपना एक व्यक्ति है। यहाँ वो आता है और फिर पहली चीज आप जानते हैं, एक दिन वो बैठ गया और निश्चय ही रब्बी हम तेरे साथ जाएंगे। ठीक है, बैठ जाओ, चलो चलते हैं। ठीक है, 70 आदि को भेजा। तब एक दिन उसके बाद जब बड़ा आश्चर्यक्रम हो गया, वो बैठ गया और उसने उन्हें वचन सुनाना आरंभ किया। देखिए, शब्द देने के आरंभ में, ठीक है, उसने उन्हें वचन सुनाना आरंभ किया, वो सत्य। उन्होंने कहा, अब जरा एक मिनट रुको, मैं इस विषय में नहीं जानता, ये उनकी शिक्षा के विरोध में है। कहें, भाई मैं जानता हूँ हमने आराधनालय और सारी चीजें इस प्रकार से छोड़ दी, परंतु भाई हो सकता है हम गलत थे, अच्छा हो कि हम वापस चले जाएं, क्योंकि वो पुरुष दृष्टांतों में बातें करता है, वो एक प्रकार से विचित्र व्यक्ति है, मैं इसे नहीं समझ सकता। समझे, ये क्या था? वो बीज आरंभ से चुना हुआ नहीं था। तब पहली बात आप जानते हैं, उसके पास सेवकाई का एक छोटा सा झुंड था और सेवकों से बातें की। उन्होंने कहा, अच्छा हो कि हम भी वापस चले जाएं और वापस जाकर संस्था में हो जाएं और फिर से अपने कागज ले लें, क्योंकि ये व्यक्ति क्यों इस प्रकार के मनुष्य को कौन समझ सकता है? ये यहाँ पे ये कहता है और यहाँ वो ये कहता है, और वे दूसरे इस प्रकार से नहीं समझ सके। उनमें से कुछ को पहेलियां दिख रहा है परंतु दूसरों को नहीं, इसलिए वे चले गए। तब वो घूमा और वहाँ उन बाराओं को देखा, वहाँ खड़े हुए हैं। कहा, तुम भी जाना चाहते हो? समझे, अब ध्यान दें। पतरस ने कहा, आप जानते हैं क्या, मैं उस पुरानी जगह पर सारे समय उपस्थित होता रहा हूँ। संसार में अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जा सकूँगा? ये काम कर चुका हूँ और मैं उस कूड़े में फिर वापस नहीं जा सकता जहाँ पर संसार की सारी गंदगी पड़ी है। समझे, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बस ये नहीं कर सकता। उसने कहा, तो फिर ठीक है, आओ साथ साथ चलते हैं। अब आप वहीं पर हैं, समझे। तब ये कैसे था, 12 लगभग 25 लाख में से और संसार का बचाने वाला करोड़ों में से, और फिर भी नम्र, देखिए नम्र बने रहें। ध्यान दें, अब उन सब फरीसियों के साथ और वो छोटी सी वेश्या वहाँ पर आती है। उसने कहा, कहती है, तुझे भविष्यद्वक्ता होना चाहिए, अब हम ये जानते हैं कि मसीह आ रहा है और जब वो आता है वो ये करेगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। उसने कहा, यही है, और वो चली गई। आप उसे एक बार रोकने का यत्न करें, आप ये नहीं कर सकेंगे। भाई ब्रणम, प्रभु यीशु के नाम में शुभकामनाएं। कृपया स्पष्ट करें, मत्ती 22:11 में कौन पुरुष है? वो मनुष्य जिसके पास विवाह का वस्त्र नहीं है, विवाह का वस्त्र पहने हुए, मैं जानता हूँ ये मनुष्य स्वर्ग में बिना विवाह के वस्त्र पहने नहीं जा सकता। ये एक अतिथि था, मैं जानता हूँ, दुल्हन नहीं। जी हाँ, ये सही है, वो एक होगा। जी हाँ, वो बस अंदर आ गया। समझे, अब देखिए, अब मैं ये एक पूरा उपदेश ले सकता है इस पर। अब मेरे पास 10 मिनट हैं कि बीमारों के लिए प्रार्थना करूं और इसे समाप्त करूं, और मैंने आधे खत्म कर लिए हैं, मुझे लगता है। ध्यान दें, परंतु मैं जल्दी जल्दी करने जा रहा हूं, सही में इसके बाद। समझे, यहां क्या घटित हुआ, यदि आप पुराने रीति रिवाज जानते हैं, समझे, जब दूल्हे ने अपने विवाह के निमंत्रण दिए, उसने बहुत सारे निमंत्रण दिए, और निमंत्रण के लिए जो उसने भेजे, उसने एक दरबान को दरवाजे पर खड़ा कर रखा था कि उसको कपड़े पहनाए, चाहे वो एक निर्धन था या वो जो भी था उसके पास था, यदि वो एक धनी था या दरिद्र, जो भी था, सबको ये विवाह का वस्त्र पहनना था। जब वो द्वार पर खड़े हुए, उन्होंने उस पर डाल दिया, ये उसके जो बाहरी था उसे ढांप दिया। वो आमंत्रित था, चाहे वो करोड़पति या चाहे कंगाल है, चाहे किसान या गड्ढा खोदने वाला, या वो चाहे जो है, या एक धनाढ्य। अब वो यहाँ एक वस्त्र में है, क्योंकि द्वार पर उस पर वस्त्र डाला गया, अब उसने द्वार में प्रवेश किया। अब संत यूहन्ना 10 को लेते हैं, मैं विश्वास करता हूँ यही है। उसने कहा द्वार मैं हूँ, समझे, मैं द्वार हूँ जो जिसके द्वारा तुम प्रवेश करते हो। अब वो वहाँ द्वार में खड़ा होता है और यहाँ वो पुरुष है जो उस पर वस्त्र को डालता है। पवित्र आत्मा उसे धार्मिकता का वस्त्र देता है जब वो भीतर आता है। अब ये मनुष्य किसी संस्था के द्वारा आता है, यहाँ पीछे खिड़की से किसी खुली जगह से अंदर, और वो अंदर मेज पर और बैठ जाता है। और तब जब दूल्हा अंदर आता है और चारों ओर देखता है, वो एक था, वो ये विचित्र बत्तख सामने, ये विचित्र बत्तख, समझे, तू यहाँ क्या कर रहा है इस प्रकार से बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, और ये सारी चीजें, तू यहाँ अंदर कैसे आ गया भाई? वो द्वार के बिना कहीं से अंदर आया और वो बिना उचित निमंत्रण के आया, समझे, वो किसी शिक्षा तंत्र के द्वारा आया, देखिए, या कुछ इस प्रकार का, वो अंदर आ गया और उसने उनसे कहा उसके हाथ और पैर बांध दो और उसे बाहर अंधकार में डाल दो, जहां रोना और चिल्लाना और दांतों का पीसना होगा, समझे, वो कष्ट के काल में चला गया, समझे, वो द्वार से होते हुए अंदर नहीं आया। इसलिए ठीक है, प्रश्न, क्या मलाकी 4 का एलिया वही एलिया होगा जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 11:3 में है? और क्या वो दूसरा गवाह है? क्या दूसरे दो गवाह अलग व्यक्ति हैं? अलग, जी हाँ, मलाकी 4 का एलिया मलाकी 3 का एलिया नहीं होगा। पिछली रात्रि हमने इसे लिया था। और क्या दूसरे गवाह अलग हैं? वे दो, जी हाँ श्रीमान, मूसा और एलिया हमारे प्रकाशन से। अब मैं आपको बहुत देर तक रोके नहीं रखना चाहता हूँ। पहला राजा 19, भाई ब्रैनम, मैं विश्वास करता हूँ कि ये गिनती जिन्होंने अपने घुटने नहीं झुकाए थे, जी हाँ, ये ठीक बात है, 700 बजाय, धन्यवाद, ये ठीक है, ये 7000 के बजाय 700 था, भाई ब्रैनम, 7000 बजाय 700 के। अब ये देखिए, आप जानते हैं वास्तव में जब एक व्यक्ति इस प्रकार से प्रचार करने को, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। जब एलिया जंगल में से आता है, उसके पास एक संदेश था, वो जंगल से कदम मारता हुआ आता है और सीधा आकर राजा को बताया, यहां तक कि स्वर्ग से ओस भी नहीं गिरेगी जब तक कि मैं ना कहूं, ये वचन उसके पास थे, और कदम मारता हुआ वापस चला गया और किसी से कुछ नहीं कहा, समझे। जब उसके पास दूसरा संदेश था, वो सीधा आया और ये संदेश बोला और पलट कर वापिस चला गया, वापिस जंगल में चला गया, समझे। अब यदि आप ध्यान देंगे, जब मैंने कोने का पत्थर आराधनालय के नीचे रखा, उसने कहा सुसमाचार प्रचार का कार्य कर, और अब समय आ रहा है जब यह कार्य अलग हो रहा है और वहाँ कुछ घटित हो रहा है। तब मैं इस प्रकार से, देखिए, मैं यहाँ आया समाचार प्रचार का यत्न करता हूँ और कुछ और देखता हूँ कि आप कहाँ हैं आप लोग। ओह, मैं आशा करता हूँ कि कलीसिया समझने के लिए काफी आत्मिक है। भाई ब्रैनम, मैं समझता हूँ कि एलिया को 3 बार होना चाहिए। आपने हमें बताया कि 2 बार वो पहले ही हो चुका और फिर आएगा। अब क्या वो व्यक्ति होगा जिस पर एलिया का आत्मा होगा, उन गवाहों में से भी एक मूसा और एलिया वहाँ हैं? नहीं नहीं, वो एक अन्य जाति होगा। देखिए, अन्य जाति कलीसिया को परमेश्वर सदा अपने लोगों में भेजता है। देखिए, वो अपनों में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, वो सदा अपने को भेजता है। समय का संदेश, जब परमेश्वर यहूदियों से व्यवहार कर रहा था तो वहाँ कोई अन्य जाति के भविष्यद्वक्ता नहीं आए। जब परमेश्वर अन्य जाति से व्यवहार कर रहा है, वहाँ कोई यहूदी भविष्यद्वक्ता नहीं है। जब परमेश्वर यहूदियों की ओर फिरता है तो वहाँ कोई अन्य जाति के भविष्यद्वक्ता नहीं है, समझे। देखिए, मेरा क्या अर्थ है, ठीक है, रैप्चर के घटित हो जाने के बाद अब निसंदेह वहाँ एक आगे बढ़ना वाला समय होगा, एक संदेश दूसरे वाले को ले जा रहा है, इसे इसी प्रकार से अंदर आना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने व्याख्या दी है, देखिए, जैसे पौलुस अन्य जातियों के लिए और आदि आदि, ठीक है, रैप्चर या उठा लिए जाने के बाद क्या कोई कलीसिया अंत में बचेगी जो रैप्चर में नहीं उठाए गए थे? नहीं, ओ, क्योंकि लहू हट चुका है। आप देखिए, वहाँ कोई पिछवाई नहीं है, अन्य जाति का युग समाप्त हो गया है। रैप्चर के बाद कोई नहीं बचाया जाएगा, या कोई कलीसिया, ओ कलीसिया, वो जो मलिन है मलिन बना रहे, वो जो पवित्र है पवित्र बना रहे, समझे। देखिए, कलीसिया के चले जाने के बाद ये नहीं होगा। भाई ब्रणम, मैंने ध्यान दिया कि आप पहली मोहर के संदेश में डेनियल के 70 सप्ताहों का उल्लेख कर रहे हैं। मैं डेनियल के टेप पर डेनियल को समझता हूँ। जब सुसमाचार यहूदियों की ओर पलटता है, 70 सप्ताह आरंभ हो जाएंगे। क्या वहाँ 70 एक सप्ताह 7 वर्ष यहूदियों के लिए बचे हैं, या अभी वहाँ केवल आधा सप्ताह है उनके लिए? 3.5 वर्ष बचे हैं, केवल आधा सप्ताह। यीशु ने पहले आधे सप्ताह में भविष्यवाणी की है, जैसे कि भविष्यवाणी थी, उनके लिए केवल आधा सप्ताह बाकी है। भाई ब्रणम, आपने इस सप्ताह के चलते बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं की है, क्या आप करेंगे? ये बस एक निवेदन है इसके लिए। भाई ब्रणम, क्या आप सभा के बाद मुझसे मिलेंगे? ये एक निवेदन है, देखिए वहाँ। क्या कृपा करके आप स्पष्ट करेंगे, जब शैतान 1000 वर्षों के लिए बांधा जाएगा और फिर प्रकाशित वाक्य 20:8 के युद्ध के लिए खोला जा रहा है, इसका आर्मगेदोन के युद्ध से क्या संबंध है? जैसा कि 4th मोहर में उल्लेख है, क्या गोग और मागोग के लिए लोग नई दुनिया से एकत्र होंगे? भाई ये लंबा वाला है और मैं केवल इसके विशेष बिंदु को लूंगा। अब पहली बात क्या, अब हो सकता है मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, मैं पूरा यत्न करूंगा। कृपा करके क्या आप स्पष्ट करेंगे कैसे शैतान 1000 वर्षों के लिए बांधा जाएगा, फिर से प्रकाशित वाक्य 20:8 के युद्ध के लिए खोला जा रहा है? ये आर्मगेदोन का युद्ध नहीं है, आर्मगेदोन का युद्ध इस ओर होता है, ठीक है, जब पीड़ाओं का काल समाप्त हो गया। अब इसका गोग और मागोग के युद्ध के साथ क्या संबंध है? कोई नहीं। एक ये वाले 1000 वर्ष और दूसरा वाला अंत में 1000 वर्ष के अंत में, जैसा कि 4th मोहर में उल्लेख किया गया, क्या गोग और मागोग के लिए लोग नई पृथ्वी से एकत्र होंगे? शैतान अपनी कैद से छोड़ दिया गया था और सारे लोगों को इकट्ठा करने चला गया, दुष्टों को, कि उन्हें इस स्थान में लाए, और परमेश्वर ने आग और गंधक की वर्षा स्वर्ग से की और वे नष्ट हो गए। देखिए, कुल मिलाकर 2 युद्ध हैं। प्रश्न, रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा 6,80,00,000 घात किए जाने के विषय में इतिहास में ये किस समय घटित हुआ और लंबी समय अवधि में क्या ये घटित हुआ? शुमकर की ग्लोरियस रिफॉर्मेशन लें। मैं समझता हूँ कि इन कुछ विद्वानों के पास ये है और ये कलीसिया का इतिहास है, और अब मैं भूल गया कि ये कौन से पृष्ठ पर है, परंतु ये समय से घटित हुआ, ये बातें हुई, यह कलीसिया को अफ्रीका के हिप्पो के संत अगस्तीन के द्वारा दी गई। ये 354 में था और ये 1850 तक चला, आयरलैंड का नरसंहार। देखिए, इसलिए वो समय 33वीं ईस्वी पश्चात से या 30वीं ईस्वी पश्चात, 354 में, इसे सही से लूं। अब देखिए, 354 ईस्वी पश्चात से 1850 ईस्वी पश्चात 1850, इतिहास के अनुसार वहाँ 6,80,00,000 प्रोटेस्टेंट मार डाले गए। रोमन के शहीद नामे में इसका अभिलेख है, रोम के पोप से असहमति के कारण। ये इतिहास है, यदि आप इसे गलत कहना चाहते हैं, ठीक है, तब हो सकता है जॉर्ज वॉशिंगटन या लिंकन यहाँ नहीं थे, आप जानते हैं, इसे देखने के लिए हम में से वहाँ कोई जीवित नहीं था, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि वे यहाँ थे। जो भी हो, मैं चिन्हों को देखता हूँ कि वे यहाँ पर थे। भाई ब्रणम, 19वां अध्याय और 18वां पद, मैंने अभी तक अपने लिए इसराइल के 7,000 बचा रखे हैं, इसराइल में 7,000 जिन्होंने अपने नहीं झुकाए, बालाम के सामने नहीं झुके और हर मुंह या बालाम के सामने झुका और हर जिसने इसे नहीं चूमा, मुंह से जिसने इसे नहीं चूमा, कृपया इसे मुझे स्पष्ट कर दें इन 700 के विषय में। ये 7,000 थे, समझे, और ये बालाम को चूमना, क्या आप ये नहीं जानते यहाँ कितने हैं जो पहले कैथोलिक थे? निश्चय ही, समझे, आप मूर्तों को चूमते हैं, समझे। अब स्मरण रखें, बाबुल और नबूकदनज़र के समय में, जब अन्य जाति का राज्य था, देखिए, जब अन्य जाति का राज्य था, ये मनुष्य की पूजा के द्वारा आया, नबूकदनज़र ने एक मनुष्य की मूर्त बनाई, और यदि आपके पास आत्मिक बुद्धि है तो इस प्रकाशन को सुनिए। वो आत्मा, ये मनुष्य जिसने ये प्रकाशन बनाया या उसने एक मूरत बनाई अपने प्रकाशन के द्वारा, डेनियल की थी। एक धर्मी मनुष्य की आराधना हुई, इसे देखिए, क्योंकि उसने इसका नाम बेलशेजर रखा था, क्या नहीं था? या बेलशेजर, जो कि उसके देवता का नाम था, और उसने उस देवता की मूरत बनाई जो कि डेनियल की मूरत थी, और डेनियल अपनी मूरत के सामने झुकने को मना कर दिया। समझे? और ये यहाँ फिर से है, देखिए। अब ध्यान दें, बाबुल के दिनों में नबूकदनज़र के द्वारा अन्य जाति का राज्य आया, और एक अन्य जाति का राजा कलीसिया और राज्य को एक साथ मिला रहा है एक पवित्र मनुष्य की पवित्र मूरत के द्वारा, और इसकी आराधना के लिए बाध्य करता है। अन्य जाति का राज्य पैरों में समाप्त होता है दीवार पर उस हस्तलेख के द्वारा, एक राजनीतिक सामर्थ्य जिसने कलीसिया और राज्य को एक साथ मिलाया कि मूरत को चूमने की बाध्यता के द्वारा। आप देखिए, वही चीज, पवित्र मनुष्य की मूरत। निश्चय ही भाई ब्रणम, जब ये रैप्चर हो जाता है, जब रैप्चर होता है, क्या ये छोटे बालक जो सही और गलत नहीं जानते रैप्चर में जाएंगे, यदि उनके नाम पुस्तक में है? जी हाँ, ये ठीक बात है, समझे? ठीक है भाई ब्रणम, आपने पिछली रात्रि कहा कि वहाँ 700 लोग बचाए जाएंगे एलिया के प्रचार में, आपका अर्थ 7,000? जी हाँ, ये ठीक बात है, कृपया इसके लिए मुझे क्षमा करें। देखिए, ये ठीक है, देखिए मैंने ये किया। भाई ब्रणम, क्या आप अनुवाद देंगे आपके खोलने के बाद? भाई ब्रणम, क्या वो DESPE विधान, मुझे क्षमा करें, क्या विधान? अब ये आप नहीं है, ये मैं हूँ। देखिए, क्या अनुग्रह का विधान समाप्त हो जाएगा आपकी सातवीं मोहर के खोलने के बाद? मैं आशा करता हूँ कि नहीं। नहीं नहीं मित्रों, अब अपने विचार में ये मत लाओ। देखिए, आप बस बढ़ते जाएं, आलू खोदें और कलीसिया में जाएं और चलते रहें। यदि ये सुबह में होता है, आप ठीक वही करते हुए पाए जाएं जो आपको करना चाहिए। मत आरंभ करें। देखिए, जब आप करते हैं तो आप उद्देश्य से अलग भटक जाते हैं। जिस अभिप्राय के लिए ये है, आपको थोड़े से विचित्र विचार मिलते हैं और आप इस विषय में अपने विचार लेते हैं। अपने विचार ना लें, ठीक? जब आप बैठकर और इस प्रकार की चीजें सुनते हैं, कहें, प्रभु आपका धन्यवाद, मैं आपके और समीप चलने जा रहा हूँ। समझे? मैं चलने जा रहा हूँ। काम छोड़कर ये ना कहें, मैं सारी चीजें बेच दूंगा। उस दिन यहाँ एक मनुष्य भागता हुआ आया नॉर्थ कैरोलिना से, थोड़ा सा पहले कि हम निकलें, और उसने कहा, परमेश्वर की महिमा हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ वो महान कौन व्यक्ति था? और मैंने कहा, नहीं। और हाँ श्रीमान, कहा, इस व्यक्ति के पास, कहा, ये व्यक्ति सुनने वाली मिशन का अध्यक्ष है। मैंने कहा, किसका? बोला, सुनाने वाली मिशन। मैंने कहा, मैंने ही समझा। और वो बोला, ओ, कहा कि ये व्यक्ति अध्यक्ष है। मैंने कहा, आपने क्या कहा कि वो, उसका क्या नाम था? उसने कहा, ब्रणम, मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा सा ही, ब्राउन या ब्रणम। मैंने कहा, अच्छा, मेरा नाम ब्रणम है। उसने कहा, क्या आप सुनने वाली मिशन के अध्यक्ष हैं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। उसने कहा, भाई सहस्र शताब्दी कहाँ पर है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा, क्यों, आप एक, आपका आपका अर्थ है ये ठीक यहाँ चल रहा है और आप इसे नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं नहीं जानता। उसने कहा, भाई परमेश्वर की महिमा हो, कहा, मेरे कोई मित्र हैं जिन्होंने आकर मुझे बताया और कहा, मैंने काम छोड़ दिया है, अब भी वो काम करने वाले कपड़े पहने हुए है। कहा, भाई मैं श्रेष्ठ शताब्दी चाहता हूँ। और मैंने कहा, भाई मैं विश्वास करता हूँ कि आप थोड़े से असमंजस्य में हैं। भाई उसी समय के लगभग एक टैक्सी अंदर आई और उसने कहा, इसे रोको। एक छोटी सी स्त्री यहाँ आई, बोली, आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमती जी, किस विषय में? उसने कहा, भाई मैं समझता हूँ आपको साक्षात्कार के लिए एक महीने की प्रतीक्षा करनी पड़ी, देखिए कि प्रार्थना करवाएं। और मैंने कहा, क्या? और उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, कहा, परंतु मैं निराश हूँ, आपको मेरे पति के लिए प्रार्थना करनी है। मैंने कहा, निश्चय ही, वो कहाँ है? उसे यहाँ ले आओ। ये व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ और दूर देख रहा था। कहा, क्या आप बीमारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। बोला, आपने अपना क्या नाम बताया था? मैंने कहा, ब्रणम। आप श्रेष्ठ शताब्दी के विषय में कुछ नहीं जानते? मैंने कहा, भाई मैं नहीं जानता। मैंने कहा, मैं इसे नहीं समझता, बस इस बाइबल में। उसने कहा, नहीं, ये इसी समय है, लोग ये सब जगह से आए हुए हैं। मैंने कहा, ये कहाँ पर है? उसने कहा, जेफरसनविल इंडियाना पुल के नीचे। श्रीमान, आपने मुझे बहुत अच्छा दिया। और मैंने कहा, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। मैंने कहा, आइए अंदर चलकर बैठते हैं, हो सकता है हम इस पर बातें करें। हमने किया, देखिए, क्या आप नहीं देखते? मित्रों, क्या आपने इस सेवा की कभी इच्छा नहीं की? आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है, समझे? आप जहाँ होंगे आप सबसे अधिक आनंदित होंगे, समझे? बस आप बढ़ते रहें। दुल्हन के उठा लिए जाने के बाद तो कलीसिया को कब कष्टों की अवधि में से निकलना होगा? न्याय में खड़ा होना। ये न्याय में नहीं खड़ी होती है। क्या ये श्रेष्ठ शताब्दी से पहले या उसके बाद है कलीसिया के लिए? ओ, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, जिस किसी ने ये लिखा है। ये कलीसिया कब दुल्हन के उठा लिए जाने के बाद, कब वो कलीसिया जिसे कष्टों की अवधि में से निकलना है, न्याय में खड़ा होना है, ये क्या बाद में या पहले? बाद में, बाकी मरे हुए हजार वर्षों तक नहीं जिए, ये दुल्हन के साथ नहीं गए। आइए देखें, आपने बहुत बार कहा है कि साम्यवाद परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया गया है कि उसके उद्देश्य को पूरा करें, जैसे नबूकदनज़र। अब साम्यवाद इस चित्र में कहाँ ठीक बैठता है कि ये होगा, ये अंततः ये करेगा, ये कैसे समाप्त होता है? बहुत से विद्वान ये विश्वास करते हैं कि उत्तर के राज्य में गोग और मागोग का पवित्र वचन में उल्लेख किया गया है, वो इज़राइल के विरोध में आता है। मैं समझ नहीं पाया ये क्या है। हाँ हाँ, मैं इसका विश्वास करता हूँ। कुछ टेप लिए गए हैं, कहा आपने कहा है अंततः ये आएगा कि साम्यवाद कैथोलिक वाद को अंत में नष्ट कर देगा, या वेटिकन को एक धमाके से। क्या ये ठीक बात है? जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 16 में आप इसे पाएंगे, और प्रकाशित वाक्य 18, 8 और 12। यदि व्यक्ति यहाँ पर है और इस कागज के टुकड़े को लेना चाहता है, इस पर आप इस पर सीधे सीधे देख सकते हैं। जी हाँ, देखिए, हाय हाय, वो महान नगर एक ही घड़ी में उसका अंत हो गया। आप देखिए, व्यापारी लोग और हर चीज जिसने इससे व्यापार किया, ये होगा, ये ठीक बात है। और नहीं करता, बस छोड़ दीजिए, साम्यवाद के विषय में भूल जाएं, समझे? ये संसार में कुछ नहीं है सिवाय लोगों के झुंड के, ये कुछ नहीं सिवाय क्रूरता के, ये अधार्मिकता, ये एक व्यवस्था है। मैं आपको कुछ दिखाऊं, ये कितना साधारण है। क्यों? केवल 1% हैं जो साम्यवादी हैं पूरे रूस में। उन्हें एक संदेशवाहक की आवश्यकता है, समझे? 1%, फिर 99% अब भी मसीहत की ओर हैं। 1%, और कैसे 1% 99% को नियंत्रित करते हैं, ये आपको इसे स्पष्ट करना चाहिए। ठीक वहाँ पर, यदि परमेश्वर ने ही इसकी अनुमति नहीं दी। क्यों? ठीक है, वे तो बहुत पहले ही निकाल दिए जाते, समझे? निश्चय ही। भाई ब्रैनम, आपने कहा कि रोम यहूदियों की सरकार पर अंतिम 3.5 सालों में अधिकार कर लेगा। ये विपत्तियों के पहले 3.5 वर्ष होने जा रहे हैं, या अंतिम वाले 3.5 वर्ष? क्या ये सही है? ये अंतिम वाले 3.5 वर्ष होंगे, ये ठीक बात है, ना कि पहले वाले, क्योंकि ये पहले ही बीत चुका है। इसके बाद एक और है, मेरे प्रिय भाई, क्या मलाकी 4:5 का एलिया जंगल में जाता है, जैसे पहला राजा 17 हमें बताता है दूसरे एलिया ने किया? भाई, मैं बिल्कुल निश्चित नहीं कहूंगा कि वो होगा, कि वो जंगल में जाएगा, परंतु वो ये होगा। आप देखिए, वो था एलिया और एलिशा। क्या आपने ध्यान दिया? अधिकांश इस प्रकार के मनुष्य, वे मनुष्य जो अलग हैं, वे लोगों से अलग रहते हैं, वे बहुत ही विचित्र होते हैं, वे लोगों से बहुत अधिक नहीं मिलते। आप ध्यान दें, एलिशा कैसा था, और एलिया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उस आत्मा का वो स्वभाव। आप देखिए, वे नहीं, वो मैं विश्वास करता हूँ कि मनुष्य जंगल प्रेमी होगा, हो सकता है जंगल में रहे, परंतु अब ये कहना कि वो एक साधु होने जा रहा है और जंगल में रह रहा है, इस विषय में मैं नहीं जानता। कभी कभी उन्होंने किया, एलिशा ने नहीं किया, परंतु एलिया ने किया, और फिर यूहन्ना वो जंगल में रहा, और कठोरता से बोलने वाला ये दूसरे भविष्यद्वक्ता, जब वे यहूदिया से निकलकर आए, मुझे नहीं मालूम कि वे कहाँ ठहरेंगे। उन्होंने कहा पहाड़ पर तंबू लगाए, या वे अपनी भविष्यवाणी के दिनों में क्या करेंगे, मैं नहीं जानता वे क्या करेंगे। परंतु आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, वे पूछना चाह रहे हैं, क्या वे जंगल में रहने वाले होंगे? भाई, उन्हें उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया में जाना होगा कि अब रहने के लिए पर्याप्त जंगल मिले कहीं पर। आप देखिए, इसलिए ये कोई होगा, जंगल काट दिए गए हैं, समझे? अब बहुत जंगल नहीं बचे हैं, समझे? इसलिए केवल एक चीज है, वे जंगल प्रेमी हो सकते हैं, देखिए, और हो सकता है जंगल में अधिक रहें, वे होंगे। आप उनके स्वभाव पर ध्यान दे सकते हैं कि समझौता ना करने वाले, देखिए, और आप ये जान जाएंगे जब ये आता है, समझे? आप ये देखेंगे, आप चौकन्ने रहें। अब यहाँ एक है, मैं नहीं जानता कि कैसे लूँ, इससे पहले मेरे पास दूसरा वाला है, और फिर मैं उनसे कहने जा रहा हूँ, एक मिनट के लिए टेप को कट कर दें। यदि परमेश्वर एक व्यक्तित्व है तो क्यों और कैसे वो रूपांतरण वाले पर्वत पर स्वयं से बातें कर सकता था? अच्छा, मैंने अभी ये स्पष्ट किया है, आप देखिए, समझे? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं करने जा रहा हूँ, जब यीशु ने पिता से प्रार्थना की, आप देखिए, मैं विश्वास करता हूँ आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, क्या नहीं भाई? क्या आप एक मिनट के लिए खड़े होंगे? आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का दावा करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो फिर ये क्या है? तब मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मेरे पास है, मेरे पास मुझ में सामर्थ है कि इन भेदों को मैं खोलूं। मेरे पास सामर्थ नहीं है मैं बीमारों को चंगा करूं, ये परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक सेवक हैं, यदि मैं गलती ना करूं, आप अरकनसास से हैं, ठीक है? अब और आप में सुसमाचार प्रचार करने का है। साधारणता में आपका पालन पोषण फार्म पर हुआ है और आसपास इस प्रकार से, आप इस विषय में कुछ नहीं जानते, परंतु आप में कुछ आया कि आप सुसमाचार प्रचार करें। आप अपने से उसका दावा नहीं करते, बिल्कुल नहीं, ये दूसरे व्यक्ति ने, पवित्र आत्मा ने कहा, क्या ये ठीक बात है? ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो पवित्र आत्मा आप में वास करता है? क्या ये ठीक बात है? क्या आप उससे बात करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं? ठीक है, यही जो मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, समझे? अब आप समझे? मैं आपसे एक पूछूंगा, ये कैसे आया कि जब यीशु संत यूहन्ना 3 में उसने कहा, जब मनुष्य का पुत्र होगा जो कि अब स्वर्ग में है, समझे? अब स्वर्ग में है, पृथ्वी पर होगा, समझे? मनुष्य का पुत्र जो अब स्वर्ग में है, और वो ठीक यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ एक व्यक्ति से बात कर रहा है। अब आप मुझे इसका उत्तर दें। यीशु और पिता अपने में एक ही व्यक्ति थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा मुझ में है, आप मुझे प्रचार करते हुए देखते हैं, परंतु मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ जो वचन एक बोल सकता है, ये मैं नहीं जो वचन बोल सकता है कि हो सके, जैसा कि आप जानते हैं, एक पशु वहाँ बैठता है और इसे देखता है और पशु को मारता है और इसे खाता है, ये सृष्टि की सामर्थ है, ये मनुष्य जाति में नहीं है, ये मैं नहीं जो यहाँ इस छोटे लड़के को ले सके, पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने उसे पीठ के बल हृदय रोग के साथ लेटा रखा है आज रात्रि, और कहते हैं विलियम ब्रनम यूं कहता है, नहीं, यहोवा यूं कहता है, ये पूरा हो गया, और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं अगले दिन, और ये सब चला गया। एक बालक ल्यूकेमिया के साथ, जब तक उसकी आंखें बाहर नहीं आ जाती और सारे में पीला पीला पेट, जब तक कि वे उसे अस्पताल नहीं ले जाते कि उसे खून दें और आदि आदि, यहाँ तक कि उसे यहाँ ले आए और 5 मिनट के समय में हैमबर्गर के लिए रोता है और उसे वापस डॉक्टर के पास ले जाते हैं अगले दिन, और उसमें जरा सा अंश भी नहीं पाते, ये विलियम ब्रनम यूं कहता है, ये यहोवा यूं कहता है। फिर भी ये एक व्यक्तित्व जो मुझसे भिन्न है, परंतु केवल एक मार्ग है, वो मेरे द्वारा प्रकट हुआ, समझे? ये यीशु और पिता इस प्रकार थे। यीशु ने कहा, ये मैं नहीं हूँ जो कार्यों को करता है, ये मेरा पिता जो मुझ में रहता है। अब मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग से उठेगा, जो अब स्वर्ग में है, समझे? ये क्या था? वो सर्वव्यापी था, क्योंकि वो परमेश्वर था। अब ये दूसरा वाला, मैं इन शब्दों को कहना चाहता हूँ, स्पष्ट करें आप किस विषय में बातें कर रहे थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, और पिता हमें बताया गया, एक बार जब शत्रु भीतर आ रहा था और आत्मा एक मनुष्य पर उतरा और उससे भविष्यवाणी करी और उसे बताया, इसने चीजों को व्यवस्थित किया जहां वे जान गए कि कैसे जाना है और शत्रु को हराना है और शत्रु को कहां पाए। और पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप अब भी वैसे ही परमेश्वर हैं जैसे कभी आप थे, आप अब भी वैसे ही हैं, हम बदलते हैं, युग बदलते हैं और समय बदलता है, और लोग, परंतु आप कभी नहीं बदलते। आपका तंत्र एक सा है, आपका अनुग्रह एक सा है, आपके काम एक से हैं, क्योंकि वे शानदार हैं। और बीते समय में मनुष्य का कोई भी ज्ञान इसे कभी समझ पाया। इसलिए हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपके भेद आपके दासों के हृदय में छिपे हैं, और इसके लिए हम बहुत ही आनंदित हैं प्रभु। और होने पाए हम चमकते उजियाले के समान आगे बढ़ें, एक जगह से दूसरी जगहों में, और प्रेम के साथ यत्न करें कि दूसरों को भीतर लाएं, कि हम हर छोटे से कोने में जाल बिछा दें और उसमें जाल डालें, निश्चित होने के लिए कि हम उस हर मछली को ले लें जो आपकी है। और तब मेमना अपनी दुल्हन ले लेगा कि सदा उसके साथ हो। हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में होते हुए, आमीन। यहाँ कितने बीमार हैं? आइए आपके हाथों को देखें। अच्छा, ये तो लग रहा है। अपने हाथों को फिर से उठाएं। लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 47, लगभग 47, ठीक है। ये 11:30, हम अभी बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको आज रात्रि में डालें। क्या आप इसे करना चाहेंगे? मैं विश्वास करता हूँ ठीक अब करने के लिए ये एक अच्छा समय है। आपको बताता हूँ क्यों। पवित्र आत्मा ठीक यहाँ पर खड़ा है, अभिषेक है। अब जहाँ तक अब हम आत्मा में आ गए हैं, देखिए, आप देखिए कुछ, आप जानते हैं कि कुछ यहाँ उपस्थित है। और यदि आप कभी विश्वास कर सकें तो आपको अभी विश्वास करना चाहिए, समझे। यदि आप कभी विश्वास करने जा रहे हैं तो वो अब है। अब हम चाहते हैं कि आप वास्तविक शांति के साथ यहाँ पर आए, और उन्हें जो यहाँ गलियारे में हैं, जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, इस गलियारे में आगे आएं और इधर से नीचे चले जाएं, और तब हम उन्हें लेते हैं गलियारे से, और बस 45-45, उनमें से 47, ये बहुत नहीं लेगा। मैं भाई नेविल से पूछने जा रहा हूँ, यदि वे यहाँ आएं, यहाँ मेरे साथ आ जाएं, और हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहले वे जो इस गलियारे में आए हैं, बस खड़े रहें, अब बस एक मिनट के लिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और हर एक पर हाथ रख सकें। अब ये ठीक बात है, हर एक जो प्रार्थना पंक्ति में आता है, वे जो प्रार्थना पंक्ति में आने वाले हैं, समझे। अब देखिए, समय को बचाएं ताकि हम निश्चित रहें इसे लेने के लिए। अब हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यीशु मसीह ने ये कहा है, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। अब ध्यान दें, उसने कभी नहीं कहा यदि वे उनके लिए प्रार्थना करेंगे, यदि वे अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। और यदि परमेश्वर ल्यूकेमिया के ना चूकने वाले मामले को ले सकता है, और एक छोटी लड़की जो अपने लिए विश्वास नहीं कर सकती और उस चीज को पूर्ण सिद्ध करता है, यदि वो अगला मामला ले सकता है, एक छोटा बेचारा लड़का, और उसे इतना चंगा कर दे कि डॉक्टर उसके लहू में कोई गठिया बुखार नहीं पा सका या कोई भी चीज, तो वो आपके लिए क्या कर सकता है। अब वे छोटे लोग, वे नहीं समझते कि प्रार्थना क्या होगी सिवाय उन पर हाथ रखने का, और उसने ये किया और हम इसे समझ सकते हैं। अब जबकि आप खड़े हैं कि अब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपकी महान उपस्थिति यहाँ पर है, वो महान पवित्र आत्मा, वो जिसका चित्र हमारे पास है, वो जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो ठीक इस समय यहाँ उपस्थित है। वो अपने आप को मनुष्य की देह से होकर प्रकट कर रहा है। कैसे हमने उसे एक बार भी असफल होते हुए नहीं देखा इन वर्षों में, कि योग्य है कि मनुष्य के हृदय के विचारों को प्रकट करे, कि पाप जो उन्होंने किए प्रकट करे, और उन्हें ठीक ठीक बताए कि क्या हुआ क्या होगा, बिना एक बार असफल हुए। तब हम जानते हैं अब्राहम, इजहाक और इज़राइल का परमेश्वर अब भी व्यक्ति यीशु मसीह में परमेश्वर है। और अब स्वर्ग से उतरे हुए उसके आत्मा के द्वारा लहू के नीचे, जो कैलवरी पर बहाया गया, नीचे लोगों के मध्य में आया कि अपने आप को मनुष्य की देह में प्रकट करे, संसार के जलने के थोड़ा सा पहले वो महान पवित्र आत्मा ने मनुष्य की देह के द्वारा प्रतिनिधित्व किया। वे मूल्यवान लोग जिन्होंने छुटकारे के लहू को स्वीकार किया और पवित्र आत्मा उनके जीवन को लेता है, परमेश्वर ने मनुष्य देह में प्रतिनिधित्व किया। इसलिए ये मनुष्य की देह होगी केवल कार्य को करने के लिए, जैसे बपतिस्मे या आदि आदि, उस अधिकार के साथ कि जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। बीमारों पर हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा को देखना होगा कि वे चंगे हो जाएं, यदि वे विश्वास करेंगे। अब पिता, हम जानते हैं कि ये बातें सच हैं। ये लोग जो यहाँ खड़े हैं सेवकों के हाथों के नीचे से निकलने वाले हैं, जिन्होंने ये पवित्र आत्मा पाया है और प्रभु वे तैयार हैं कि बीमारों पर हाथों को रखें। और पिता, हम जानते हैं कि यदि हम लोग केवल विश्वास करेंगे, बस जैसा कि हर वचन जिसकी आपने प्रतिज्ञा की है इसे घटित होना ही है, ऐसा करता है। और ये बिना विश्वास के घटित नहीं हो सकता, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। केवल हम इसे नहीं कर सकते, और अब भरोसे के साथ विश्वास कर रहे हैं इस प्रतिज्ञा के साथ जो हमारे सामने रखी है, बाइबल की मोहरों के साथ जो हमारे लिए खुल रही है, कि परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखता है। होने पाए ये मूल्यवान लोग जो बीमार हैं प्रभु, और उनके लिए मेरी भावना मरणहार देह में जैसी उनकी है मनुष्य होने के नाते, और जब उनके वही पवित्र आत्मा जो हम में रहता है प्रभु उनमें रहता है, और हम एक दूसरे के लिए खेद का अनुभव करते हैं, और ये जानते हुए कि नई वाचा नए लहू में, यदि पुरानी वाली ने चंगाई दी है तो ये कितना देगी, नई और अच्छी करती है। पिता, ये ऐसा ही होने पाए कि ये लोग असफल नहीं होंगे, परंतु अपनी चंगाई को प्राप्त करें, जैसे कि ये तेरे दासों के हाथों के नीचे से निकलते हैं, यीशु मसीह के नाम के द्वारा, आमीन। अब हम करेंगे, इस ओर वाले लोग बैठे रहेंगे जब इस ओर के लोग आते हैं, और तब इस ओर वाले लोग वापस चले जाएंगे और दूसरी तरफ के। अब आप में से कुछ भाई यहाँ पर हैं जो खड़े होंगे, मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर आप लोग सेवक गण हैं, आप सब वहाँ पर हैं। डॉक्टर भाई नेड कहाँ पर हैं? क्या आप प्रार्थना पंक्ति में आ रहे हैं भाई नेड? ठीक है भाई नेट, ठीक है, जैसे ही आपके लिए प्रार्थना हो जाती है तो पंक्ति में आ जाएं। अब इन्हें इस ओर होने दें, एक क्षण के लिए बस बैठे रहें, और मैं इस ओर से लूंगा, तब हम आएंगे और बीच वाले गलियारे को लेंगे और इस ओर से भेज देंगे, तब इधर से लेते हैं और इन्हें इधर से होते हुए भेजते हैं, और हम हरेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं भाई टेडी से कहने जा रहा हूँ, वो कहाँ है? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप बजाएं, वो महान वैद्य अब समीप है, और पियानो बजाने वाले जहाँ भी हैं, यदि आप चाहें तो उनके साथ रहें। सुनिए, आपको वो समय याद है जहाँ ये बजाया जा रहा था, एक छोटे लड़के को प्रचार मंच पर लाया गया था, वो छोटी एमिश लड़की बजा रही थी, वो महान वैद्य अब समीप है। उसके लंबे काले बाल थे या हल्के भूरे बाल, बल्कि एक मेनोनाइट या एक एमिश लड़की अपना सिर पीछे किए हुए, और पवित्र आत्मा ने छोटे लड़के पर प्रभाव डाला बस हाथों के रखने के द्वारा, अपने पैरों से अपाहिज और मेरी बाहों में से कूद गया और प्रचार मंच पर दौड़ गया। उसकी माँ उठ खड़ी हुई और पीछे की ओर गिर गई। मैं समझता हूँ वो मेनोनाइट थी, और आत्मा ने इस मेनोनाइट लड़की को प्रभावित किया या एमिश को, वो भी थी। उसके पिता और वे वहाँ बैठे थे, अपने मेनोनाइट कपड़े पहने, मेनोनाइटों के समान था, ये जो भी था, वो पियानो से कूद कर खड़ी हो गई और अपने हाथों को ऊपर हवा में किए, और उसके सुंदर बाल फैल गए और वो स्वर्गदूत सी दिखी, आत्मा में गाना आरंभ कर दिया, और उसने ये किया और पियानो लगातार बजता रहा, वो महान वैद्य अब समीप है, वो हमदर्द यीशु। यहाँ हर कोई खड़ा था, हजारों उन स्वर कुंजियों को ऊपर नीचे होते हुए देख रहे थे, वो महान वैद्य अब समीप है, सहानुभूति वाला यीशु। लोग पहिए वाली कुर्सियों से, खाटों से, स्टेचरों से खड़े होकर चलने लगे। वही प्रभु यीशु ठीक यहाँ पर है इस प्रातः, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस समय था। बस अब विश्वास करें, उस गाने को बजाएं, यदि आप चाहें वो महान वैद्य। अब हर कोई प्रार्थना करे, उन्हें कमरे में से निकलने दें, इधर नीचे की ओर आएं और ठीक अपने बैठने के स्थान पर, या आप जहां भी जाना चाहें, जैसा भी रास्ता बने। क्या आप पीछे इसे स्पष्ट सुन पा रहे हैं? ठीक है, इसलिए पीछे सीधे अपने स्थान पर जाएं, तब हम खड़े होंगे। अब सुनिए, जबकि इन लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है, आप इनके लिए प्रार्थना करें, तब जब आपके लिए प्रार्थना हो वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब आप सेवकगण जो यहाँ हैं, खड़े हो जाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को इन पर रखें जैसे जैसे वे आते हैं। अब हर कोई जो सिरों को झुकाए हुए हैं, अपने सिरों को झुकाए रखें, प्रार्थना करते रहें, और जब आप पास से होकर निकलते हैं तब रखें, आपके ऊपर हाथों को रखें। स्मरण रहे कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो उसकी पुस्तक के भेदों को प्रकट करता है, मनुष्य के हृदय के भेदों को, वो परमेश्वर है जो उसकी पुष्टि करेगा, यदि आप इसका विश्वास करेंगे, समझे। अब हर कोई प्रार्थना में रहे। अब आप सेवक भाइयों यहाँ खड़े हो जाएं, यदि आप चाहें। ठीक है, हम अपने सिरों को झुकाएं। अब प्रभु यीशु, जैसा कि ये लोग आते हैं, उन्हें पाए सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य इनके विश्वासों को तुरंत जागृत कर दे, जैसे कि ये यहाँ से निकलने को हैं, सब यीशु के नाम में। अब ठीक है, अब पंक्ति इस ओर से आरंभ हो, हरेक से पूछें, उन पर हाथ रखें, आप सेवक लोग, जैसे कि वे निकलते हैं। In the name of the Lord Jesus. In the name
Jesus, Would you folks move on to the back, please? Would you folks stand in that aisle, move out of the aisle and go to the back? Keep going to the back, please. Thank you. You folks in the middle aisle, go around too.
Receive your healing, brother. Anybody else want the prayer line? Would you get in, please?
Receive your healing, my brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother, from Jesus Christ. Receive your healing, sister, Lord, from the hands of Jesus Christ. Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive healing, sister, by the hand of Jesus. Receive healing, my brother, by the hand of Jesus.
What sister does receive healing, sister, by the hand of Jesus? Brother, in the name of Jesus Christ,
in the name of Jesus Christ,
in Jesus' name,
healing in the name of
Jesus Christ.
Receive your healing, sister, from Jesus Christ. Receive your healing, brother,
in Jesus' name, Jesus
Christ. Brother Works, receive your healing, brother, from Jesus Christ. Sister, receive your healing, brother, from the Lord. Brother, by the Lord,
in Jesus Christ, in Jesus' name, receive your healing, sister. Receive the faith in Him.
Is that all the one to be prayed for now?
उन्हें पाए प्रभु यीशु का हाथ आपको प्रदान करे। भाई वाइल, ये निवेदन आपके प्रिय जन के लिए यीशु नाम में। बिली पॉल, जितने प्रार्थना पत्र आपने दिए हैं, अब अपनी चंगाई यीशु मसीह के नाम में प्राप्त करें। महान वैद अब समीप है। सहानुभूति वाला यीशु, वो उदास हृदय से बात कर आनंदित करता है। ओ यीशु की आवाज सुने सब मिलकर। शराब के गीत में सबसे मीठा नाम, सबसे मीठा नाम मरणहार जुबान पर। सबसे मीठा गीत जो कभी गाया गया। परमेश्वर इस प्रिय छोटे जोड़े पर जो इस संसार में लाए गए हैं उनमें से एक होने पाए वे अपने निवेदन को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के होने पाए हमारी बहन का व्यक्ति जो ठीक इस समय उसके विचारों में है, होने पाए परमेश्वर की सामर्थ उस निवेदन के साथ जाए, होने पाए वो छूट जाए, प्रभु इसे प्रदान करें, आमीन। प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में इस मनुष्य के निवेदन को स्वीकार कर लें, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपनी प्रार्थना के साथ, आमीन। ओ क्या ये शानदार नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ यदि हर व्यक्ति जो यहाँ आया है इस प्रातः इस आश्चर्यजनक अभिषेक की अधीनता में, मैं विश्वास करता हूँ यदि आप जरा करेंगे अब ऊपर किसी महान किसी चीज के लिए न ताकें, बस स्मरण रखें विश्वास की साधारण बात, उसने क्या प्रतिज्ञा की है। अब आइए हम एक साथ मिलकर कहें, हम नहीं देखते किसी बड़ी चीज के लिए, परंतु यीशु के नाम में हम उसकी प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं, ये तय हो गया, इसने इसे कर दिया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।